ओम शांति। एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और ऐसे कई ऐसे भिन्न भिन्न तरीकों से, विधियों से हमेशा ही समाज के मन और शरीर को स्वस्थ रखने की सेवा की है। हमेशा ही अपने बारे में न सोचकर औरों की सेवा करने में लगे रहे हैं। न दिन देखा न रात, न परिवार के बारे में सोचा और कभी कभी तो ना तो अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचा। सेवा सेवा और सेवा, अथक होकर सेवा करते रहे हैं, हमेशा ही कर रहे थे, लेकिन इस समय तो हमेशा से कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। दूसरों को स्वास्थ्य देने में बाहर की परिस्थितियां कभी भी अनुकूल नहीं थी, क्योंकि आपके सामने जो भी आता वो मन से भी परेशान होता है और तन से भी बीमार तो है, इसीलिए आपके पास आया है। तो बहुत कम ऐसा होता है कि लोग बड़े खुश खुश आपके पास आते हैं। मन और शरीर से कोई ना कोई रोग लेकर ही आपके पास आते हैं और इसीलिए हमेशा ही आपके चारों तरफ की जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव ज्यादातर नहीं होती है, क्योंकि आपके चारों तरफ हर रोज दिन रात दर्द, दुख, बीमारी, ये वाइब्रेशंस हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जब आप उनकी सेवा करते हैं और उनका शरीर ठीक हो जाता है, उनका मन सुखी हो जाता है, तो फिर वो ऊर्जा बदल जाती है और आप उनको स्वस्थ करके मन को सुकून देकर फिर जब वो सेवा पूरी होती है तो वो कितना दिल से आपको दुआएं देते हैं। तो दर्द में आते हैं, ठीक होकर जाते हैं, दुखी आते हैं, सुखी होकर जाते हैं। ये कितनी बड़ी सेवा है जो आप कितने सालों से कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां हमेशा ही थोड़ी सी मुश्किल तो होती ही है और कभी कभी तो चैलेंजेस बड़े भी होते हैं, लेकिन इस समय जैसा तो शायद कभी भी नहीं हुआ था। अपने जीवन काल में तो नहीं देखा हमने कि सिर्फ एक शहर, प्रांत, देश में नहीं, लेकिन सारे विश्व में परिस्थिति, और वो परिस्थिति जो काफी समय से है और शायद कुछ समय और भी रहेगी। और इसमें आप सबकी भूमिका सबसे अहम चल रही है, सबसे अहम, क्योंकि आपको उनको भी संभालना है जो कोरोना वायरस या कोविड की बीमारी से आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आप सबको उनको भी संभालना है जो दूसरी बीमारियों से आ रहे हैं, लेकिन अब अपनी बीमारी की चिंता और डर के साथ साथ उनको वातावरण की बातों से भी डर और चिंता लग रहा है। तो इस समय आपका रोल, आपकी सेवा कई गुना ज्यादा, थोड़ी सी मुश्किल कहें या थोड़ी सी ज्यादा शक्ति जिसमें लगे, एनर्जी लगती है ना, हरेक के मन को समझाना, हरेक के मन को निश्चिंत करना, हरेक को ये विश्वास दिलाना कि आप आओ, आप ठीक हो, डोंट वरी, हम आपका ध्यान रखेंगे, ये सब करने में एक एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी आप उनको ठीक करने में भी लगा रहे हैं, उनके मन को सुकून देने में भी लगा रहे हैं। तो शक्ति की तो थोड़ी ज्यादा आवश्यकता है इस समय, लेकिन कभी कभी औरों का ध्यान रखते रखते अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं, और जब अपना ध्यान नहीं रखते और औरों को शक्ति देते रहते हैं तो आप सोचिए क्या होगा। इट्स लाइक एक बैटरी है जो अपने आप को चार्ज नहीं करती, लेकिन औरों को चार्ज करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, विदाउट चार्जिंग इट्सेल्फ। अपने आप को चार्ज करे बिना दूसरों को ऊर्जा देते रहना तो फिर वो कभी ना कभी अपनी बैटरी पर असर करना शुरू हो जाता है। और शायद ऐसा ही समय चल रहा है कि अपनी बैटरी पर थोड़ा सा असर आने लग गया है, अपना मन थोड़ा सा कभी कभी डर में, चिंता में थक भी जाते हैं ना, शारीरिक रूप से भी तो हम थक जाते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से भी ज्यादा मन से भी इस समय थके हुए हैं। बाकी आसपास की और बातें भी चल रही है, नियम कानून रोज बदल रहे हैं, क्योंकि इनसिक्योरिटी भी है और अनसर्टेनिटी भी है, पता ही नहीं है कि कौन सा मेथड वर्क करेगा, कौन सा नहीं वर्क करेगा। तो एक समय पर इतनी सारी बातें इकट्ठे आना और सब पर आना और इतने लंबे पीरियड पर आना, शायद पहली बार ही हो रहा है और इसलिए इस समय सबका ध्यान रखते हुए, सबकी सेवा करते हुए सर्वप्रथम अपना नाम ऊपर तो लिखना ही पड़ेगा। जब आप लिस्ट बनाते हैं कि आपको कितनों का ध्यान रखना है, कितनों की सेवा करनी है, उसमें सबसे पहले ऊपर अपना नाम तो अब आना ही पड़ेगा। अब ये बात सोचते ही ऐसा लगता है अपने लिए कहाँ टाइम है, अब तो अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन अब तो अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये बैटरी अपने आप को चार्ज नहीं करेगी, जब तक हम अपने शरीर को ठीक नहीं रखेंगे, तब हम अपनी वो सेवा संपूर्ण रीति सही स्थिति में और सही वाइब्रेशंस दूसरों को देते हुए कैसे कर पाएंगे। तो एक चीज तो आज पक्की करते हैं, कैसे करना है वो देखेंगे, लेकिन एक चीज तो आज पक्की करनी पड़ेगी कि सेवा की लिस्ट में, जिम्मेवारियों की लिस्ट में मुझे अपना नाम सबसे पहले लिखना ही होगा। सेल्फ केयर बिफोर वी स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ अदर्स, स्व की सेवा, ताकि हम औरों की सेवा बहुत अच्छी रीति कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्व की सेवा तो करनी पड़ेगी। अपना ध्यान रख के जब औरों का ध्यान रखने जाएंगे, तो जो हमारे से वाइब्रेशन उनको मिलती है, वो सिर्फ इलाज की नहीं मिलेगी, सुकून की मिलेगी, सुख की मिलेगी, निश्चिंतता की मिलेगी, और हमारे मन की स्थिति उनके मन की स्थिति को शांत कर देगी। और जब उनका मन शांत हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा, तब उनका शरीर जल्दी हील होगा। तो इसलिए पहले भी एक्चुअली ये जरूरी था कि हम अपना ध्यान जरूर रखें, लेकिन इस समय तो जरूरी नहीं है, इस समय तो आवश्यक, नेसेसरी हो गया है, इस समय तो कंपल्सरी होना चाहिए, इस समय तो मैंडेटरी होना चाहिए कि ये हमें करना ही है, ये हमें करना ही है। इसमें हम ऑप्शन नहीं दे सकते अपने आप को, इस समय हम ये नहीं कह सकते नहीं नहीं टाइम नहीं है हमारा साल, नहीं, सारा टाइम उनको देने के लिए ही अपना ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है, हमेशा था, अभी बहुत जरूरी है और आगे भी हमेशा ही रहेगा। टेकिंग केयर ऑफ आर ओन माइंड, हीलिंग द हीलर, हीलर मतलब जो दूसरों को सुख और सुकून और सेहत देता है। ट्रीटमेंट अलग बात होती है और हीलिंग अलग बात होती है। ट्रीटमेंट दवाइयां करते हैं, प्रोसीजर्स करते हैं, आप दवाई लिख लेते हैं, आप उनको प्रोसीजर बताते हैं, उनका प्रोसीजर कर देते हैं, और बीमारियां और वो प्रोसीजर और वो सर्जरी उनके शरीर को ठीक करना शुरू करते हैं, लेकिन आपकी वाइब्रेशन, जो उनका इलाज करने वाला है उसकी जो वाइब्रेशन है, उसका भी तो रोल है उनकी हीलिंग में। जब किसी की हीलिंग होनी है, विच मीन्स किसी के मन और शरीर को हेल्थ देनी है, तो उसमें किस किस का रोल प्ले करता है देखते हैं थोड़ा सा। अगर सपोज मेरा शरीर बीमार है, तो मेरे शरीर को ठीक करने में किस किस का रोल प्ले होगा? सबसे पहली चीज, मेरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप कहेंगे कि मेरा मन भी ठीक होना चाहिए। स्पेशली आयुर्वेदा, होम्योपैथी, एलोपैथी में भी डॉक्टर्स हमेशा हमें कहते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आप स्ट्रेस मत लीजिए, आप टेंशन लेंगे ना तो आपका शरीर ज्यादा टाइम लगाएगा ठीक होने के लिए। तो हरेक कहता है कि मन और शरीर का कनेक्शन है। हरेक ने हमें हमेशा बताया है कि मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि शरीर जल्दी ठीक हो, तो ये मन से जाने वाली ऊर्जा, क्योंकि हमारी हर सोच, हमारा हर संकल्प हमारे शरीर तक पहुंचता है। एक तरफ से हमें अच्छी दवाइयां मिल रही हैं, सही विधि मिल रही है शरीर के लिए, लेकिन यहां से अगर हम अच्छी एनर्जी नहीं दें, तो डॉक्टर्स कहते हैं आप 10 दिन में ठीक हो जाएंगे, लेकिन हमें 12 दिन हो गए, 13 दिन हो गए, हम ठीक नहीं हो रहे हैं। तो फिर हम डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब आपने तो कहा था ना कि 10 दिन में ठीक हो जाएगा, तो हम क्यों नहीं ठीक हो रहे? तो डॉक्टर साहब कहते हैं आप अपने मन को थोड़ा शांत करो, फिर आप जल्दी ठीक हो जाओगे। तो जब हमें आप डॉक्टर्स एक समय बताते हैं कि आप इतने दिन में ठीक हो जाएंगे, तो आपका बताया हुआ समय वो बिल्कुल सही होता है, लेकिन वो समय किस आधार से निश्चित होता है कि मेजोरिटी लोग उतने दिन में ठीक होते हैं, तो वो एक कैलकुलेशन है बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ द मेजोरिटी। तो सेम बीमारी सेम दवाई मेजोरिटी लोगों को उतने दिन में ठीक करती है। तो सपोज मेजोरिटी का फिगर 10 दिन का है, तो आप पेशेंट को कहते हैं आप 10 दिन में ठीक हो जाएंगे इस दवा से। लेकिन अगर वो पेशेंट बहुत ज्यादा चिंता करता है, सारा दिन सोचता रहता है हाय मैं बीमार हूँ, हाय मैं बीमार हूँ, हाय मैं कब ठीक होगा, मैं कब काम पे जाऊंगा, ये कभी ठीक भी होगा कि नहीं होगा, मुझे क्या हो गया है अचानक, हम तो ठीक थे, इतनी बड़ी बड़ी बीमारी कहाँ से आ गई है, कंटिन्यूसली बीमारी बीमारी, बीमार हो दर्द में हो ये सोचते रहते हैं। तो आपकी जो दवा है वो तो शरीर को लगती है, क्योंकि आपने दवा ही शरीर के लिए ही दी है, तो वो दवा शरीर को ठीक करने के लिए होती है। लेकिन एक और चीज का असर जो शरीर पर पड़ रहा है वो हमारे मन की स्थिति है। तो वो पेशेंट की मन की स्थिति अगर ठीक नहीं होती, तो आपने कहा था 10 दिन, लेकिन उसको 12 दिन 14 दिन कभी कभी तो उससे भी ज्यादा लग जाता है। और कभी कभी तो ऐसे लोग भी मिलते हैं जो इनको आपने कहा था 10 दिन, लेकिन वो 6-7 दिन में ही ठीक होने लग जाते हैं, क्योंकि वो यहां से बहुत पीसफुल और पावरफुल वाइब्रेशंस अपने शरीर को दे रहे हैं। उनको संपूर्ण विश्वास है परमात्मा में, आप में, खुद में। ये संपूर्ण विश्वास, ये संपूर्ण निश्चय उनके शरीर को बहुत अच्छी ऊर्जा देता है। तो यहां से आपकी विधि, आपकी दवाई और यहां से उनके मन की स्थिति, जब सब चीज इस शरीर को सही मिलती है, तो ये शरीर बहुत जल्दी ठीक होने लग जाता है। तो इसलिए पेशेंट की हेल्थ में उसके मन की स्थिति का तो बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहली चीज पेशेंट के मन की स्थिति, दूसरा जो उसके परिवार वाले हैं उनके भी मन की स्थिति, क्योंकि परिवार शरीर का ध्यान तो बहुत अच्छा रखता है पेशेंट के, उनको समय पे दवाई खाना पीना आराम सब कुछ बहुत अच्छे से कराते हैं। लेकिन अगर परिवार चिंता में रहे, बार बार बीमारी के बारे में ही सोचे और बोले, तो उसके वाइब्रेशंस भी उस जो बीमार है उसको पहुंचते हैं। तो परिवार के मन की स्थिति का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब पेशेंट के मन, परिवार का मन। तीसरा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है आपका मन, मतलब वो है डॉक्टर्स नर्सेस और सारा जो हीलिंग करने वाला स्टाफ है, मतलब सारे लोग जो उस पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, उन सबके मन की स्थिति का असर भी पेशेंट के मन की स्थिति पर पड़ता है और पेशेंट के शरीर पर भी वो वाइब्रेशन का असर पड़ता है। तो इसलिए हीलिंग मतलब हमारे मन की स्थिति का रोल दूसरों को ठीक करने में। तो सिर्फ पेशेंट का मन नहीं, जो डॉक्टर का मन है उसका रोल भी पेशेंट को ठीक करने में बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए मन की स्थिति आपकी हमेशा हाई वाइब्रेशनल होनी चाहिए, हमेशा शक्तिशाली शांत। आपके अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई बात चल रही हो, कोई आपके परिवार में कोई बात आई हो, घर में कोई परिस्थिति है, अगर उस बात को लेकर आप अपने हॉस्पिटल पहुंचते हैं, अपने पेशेंट्स को देखना शुरू करते हैं, तो आप इलाज तो परफेक्ट ही करेंगे, क्योंकि वो तो आपके अंदर फिक्स्ड हो गया है, वो तो आप कभी गलती कर ही नहीं सकते, इलाज परफेक्ट होगा। लेकिन अगर आप यहां से परेशान हैं, तो उस दिन हीलिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, इलाज सही होगा, क्योंकि आपसे जो वाइब्रेशन उनको जाएगी वो चिंता की होगी, दुख की, डर की, दर्द की होगी, जो आपके अपने कोई व्यक्तिगत कारण की वजह से हो सकता है। इसीलिए दूसरों का इलाज करने के लिए हमारे मन की स्थिति का रोल बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि मन में कुछ चल रहा है, यहां से हम मुस्कुरा रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं और उनकी नब्ज देख रहे हैं और उनको दवाई लिख कर दे रहे हैं, ये थोड़ी सी हीलिंग में कमी आ जाएगी अगर हम यहां से नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हीलिंग द हीलर अर्थात औरों की हीलिंग करने से पहले हमें अपने मन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और इस समय तो खैर बहुत 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 जरूरी कंपल्सरी ही है। तो कुछ चीजों का ध्यान रखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपने मन की स्थिति को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पर डालते हैं कि मुझे अपने मन की स्थिति का ध्यान रखना है। इमोशनल फिटनेस, एज हेल्थ केयर एम्बेसडर्स हम हमेशा फिजिकल फिटनेस की तो बहुत बात करते हैं, हम मेंटल फिटनेस की भी बात करते हैं क्योंकि मेंटल फिटनेस तो कितनी जरूरी है, लेकिन वो भी हमारे जो साइकाइट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोचिकित्सक हैं, हमें लगता है ये उनकी फील्ड है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में बात तो करते ही हैं। तो फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, लेकिन एक और चीज जो बहुत जरूरी है वो है इमोशनल फिटनेस। इसके बारे में हमें सोचना और बात करना शुरू करना पड़ेगा क्योंकि अब जो लोग आएंगे वो यहाँ के इलाज के लिए आएंगे, लेकिन यहां से उनकी मन की स्थिति, मेंटल हेल्थ इश्यू कोई नहीं होगा, उनको कोई डिप्रेशन एंजाइटी अटैक नहीं है, लेकिन उनको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, डर बहुत लगा हुआ है, चिंता बहुत है, पहले से बीमारी के चलते हॉस्पिटल आने का बहुत ज्यादा डर लगा हुआ है। तो इमोशनल फिटनेस इस समय थोड़ी सी डाउन है, और अगर इमोशनल फिटनेस डाउन होगी तो फिजिकल फिटनेस क्रिएट करने में टाइम लगेगा। इसलिए सबसे पहले अपनी इमोशनल फिटनेस को एक प्रायोरिटी बनाते हैं, और अपनी इमोशनल फिटनेस को जब प्रायोरिटी बना लिया और जब उसका परिणाम देखा और जब देखा कि ये करना तो बहुत ईजी है, तो फिर औरों के लिए करना बहुत ईजी हो जाएगा। ये आपकी तरफ से एक बहुत बड़ी गिफ्ट होगी समाज के लिए, बहुत बड़ी सौगात होगी ये कि आप समाज के शरीर और मन की सेवा दोनों इकट्ठे करना शुरू कर देंगे। शरीर की सेवा करने के लिए तो टाइम एनर्जी लगाना पड़ता है, इमोशनल फिटनेस उनको देने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए तो सिर्फ खुद की इमोशनल फिटनेस बढ़ानी है। तो इमोशनल फिटनेस को प्रायोरिटी रखते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इमोशनल फिटनेस है क्या चीज, किसको कहेंगे कि ये इमोशनली फिट है। तो अपने आप को रैंकिंग देते हैं, अभी थोड़े नंबर देते हैं, 1 to 10 पर अपने आप को नंबर दीजिएगा कि 1 मतलब इमोशनल फिटनेस लो और 10 मतलब इमोशनल फिटनेस हाई। अब लो और हाई के बीच में आप अपने आप को 1 से 10 पर कहीं भी नंबर दे दीजिएगा। इमोशनल फिटनेस लो मतलब परिस्थितियां और लोगों का व्यवहार हमारे मन की स्थिति पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, मतलब कुछ भी हमारे अनुसार अगर नहीं हो रहा है, कुछ बातें ठीक नहीं हो रही है, काम समय पर नहीं हो रहा है, लोग मेरे अनुसार व्यवहार नहीं कर रहे हैं, लोग मेरा कहना नहीं मान रहे हैं, तो हम हिल से जाते हैं, पहले मन में हिलते हैं, अच्छा नहीं लग रहा होता उनको देखकर, अच्छी फीलिंग नहीं आती, फिर रोक नहीं पाते अपने आप को तो शब्दों में भी कह देते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाती है, मतलब आसपास की ऊर्जा, आसपास की वाइब्रेशंस, सिचुएशंस, बिहेवियर्स, एनर्जीज जो हमारे आसपास हैं, उसका प्रभाव हमारे मन की स्थिति पर पड़ना शुरू हो गया। और ये हम सबने देखा है कि कुछ लोग बड़ी छोटी छोटी बातों में भी हिल से जाते हैं, अचल नहीं रह पाते, स्थिर नहीं रह पाते, स्टेबल एंड काम नहीं रह पाते, और फिर जब अंदर से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं तो उसकी जिम्मेवारी भी नहीं लेते, जिम्मेवारी भी परिस्थिति और लोगों पर डालते हैं। इनफैक्ट कभी कभी तो लोगों को कहते हैं मुझे इतनी टेंशन मत दिया करो, मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, तो मतलब यहाँ की जिम्मेवारी, यहाँ का रिमोट कंट्रोल भी उनको लगता है कि औरों के हाथ में है, और औरों से रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि मुझे चिंता मत दो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। दिस इज इमोशनल फिटनेस एक्सट्रीमली लो, विच मीन्स इम्यूनिटी सिस्टम यहाँ का एक्सट्रीमली लो है, आसपास कोई छोटी सी बात हुई और हमने उसकी इन्फेक्शन को कैच कर लिया तो इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम हमारा बहुत लो है, दैट इज लो इमोशनल फिटनेस। तो परिस्थिति और लोगों के व्यवहार का हमारे ऊपर कितना असर पड़ता है उसके हिसाब से अपने आप को रैंकिंग दीजिएगा। जिसका मन हमेशा ये चाहता है कि सब कुछ मेरे अनुसार हो, तो इमोशनल फिटनेस थोड़ा लो। जिसका मन ज्यादातर एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है सब कुछ तो मेरे अनुसार नहीं हो सकता, चाहे वो आज का मौसम है, चाहे वो सड़क पर ट्रैफिक है, चाहे मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, चाहे परिवार है, चाहे बच्चे, सारे मेरे अनुसार नहीं हो सकते हैं। एक्सेप्टेंस पावर हाई। तो जिसका एक्सेप्टेंस पावर हाई होगा, जो परिस्थिति अनुकूल नहीं होगी लेकिन फिर भी शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, एकाग्र रहेगा, उसका इमोशनल फिटनेस हाई, उसका इमोशनल फिटनेस हाई। और इसमें भी फिर हमारे को वैल्यूज के आधार से दिखाई देता है, जो इमोशनली जल्दी डिस्टर्ब होते हैं, विच मीन्स इमोशनल फिटनेस लो, तो वो जल्दी जल्दी टेंशन क्रिएट करते हैं, स्ट्रेस ज्यादातर रहता है उनके जीवन के अंदर, इरिटेट भी हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में, चिढ़ के खिंच के बात करते हैं, आराम से प्यार से सम्मान से बात नहीं कर पाते हैं, तो वो इरिटेट होकर बात करते हैं। लोगों के अंदर गलतियां ज्यादा दिखाई देती है उनको, क्रिटिसिज्म करने की आदत, निंदा करने की आदत, शिकायत करने की आदत, शुक्रिया कम करते हैं जीवन के लिए। शिकायत करने के लिए बहुत सारी बातें मिल जाती हैं, तो शिकायत करने की आदत, जल्दी जल्दी नाराज हो जाना, गुस्सा आ जाना, अपने ऊपर मन और शब्दों पर संयम खो देना, फिर कोई कुछ और कह दे तो फिर बुरा लग जाना, बहुत जल्दी जल्दी हर्ट हो जाते हैं और फिर बात जो हो गई उसको भूल भी नहीं पाते हैं, बहुत लंबा पकड़ के रखते हैं। अभी भी चेक करें तो कई सालों वाली बातें पकड़ के रखी हुई है। इंसल्टेड फील करना कि उन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी, उन्होंने मेरी डिसरिस्पेक्ट कर दी, ऐसा फील करना, क्योंकि चाहते हैं कि लोग बिल्कुल मेरे साथ वैसा व्यवहार करें जो हमें लगता है सही है। लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करना कि सब लोग मेरे अनुसार चलने चाहिए। ईर्ष्या करना, जेलेसी, कंपैरिजन, अपनी तुलना औरों से करना, हमेशा एक वेरी वेरी सटल कंपटीशन में जीवन जीना कि मुझे औरों से आगे होना है। ऐसे कैसे हो गया कि दूसरे को मुझसे ज्यादा मिल गया? दूसरे को जब ज्यादा मिले तो खुश ना होना, इनफैक्ट थोड़ा सा बुरा लगना कि उनको मुझसे ज्यादा कैसे मिल गया। ये बहुत सूक्ष्म, बहुत सटल 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 चेकिंग है। मोटे रूप से चेक करेंगे ना तो इमोशनल फिटनेस मोटे रूप से नहीं दिखाई देता, इसके लिए अपने मन की गहराई में जाकर बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी होती है। तो ऐसी वाली भावनाएं आना तो विच मीन्स इमोशनल फिटनेस इज अ लिटिल लो। अब इमोशनल फिटनेस हाई, सबसे पहले शुक्राना वाला जीवन जीते हैं, तो जीवन की हर सीन हर व्यक्ति के लिए शुक्रिया करते हैं, परमात्मा को शुक्रिया करते हैं, जीवन को शुक्रिया करते हैं। उनको एक निश्चय होता है कि जो भी मेरे साथ जीवन में हो रहा है इसमें एक कल्याण समाया हुआ है, इसमें मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा है ही। अगर बाहर कुछ भी अच्छा नहीं तो ये जरूर अच्छा है कि ये मेरी शक्तियों को इमर्ज कर रहा है। तो शुक्रिया का वाइब्रेशन एक बहुत हाई वाइब्रेशन है, ये इमोशनल फिटनेस है। हर परिस्थिति में अलग अलग लोगों के व्यवहार के साथ इमोशनली फिट व्यक्ति स्थिर रहता है, एकदम संयम में रहता है। उसकी सोच, उसके शब्द अपनी चॉइस के होते हैं। वो कभी ये नहीं कहता इनकी वजह से मुझे टेंशन हो गई, इनकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया। ये शब्द इमोशनल फिटनेस वाले व्यक्ति को नहीं आते हैं। वो कहेगा ये मैंने क्रिएट किया, ये मैं जल्दी से ठीक कर लूंगा। तो अगर वो अंदर थोड़ा सा डिस्टर्ब होते भी है तो इमिजिएटली अपने आप को ठीक कर लेते हैं और धीरे धीरे डिस्टर्ब होते ही नहीं ऐसी स्थिति पर पहुंच जाते हैं। तो एकरस, एकाग्र, स्थिर, लोगों की अप्रिसिएशन करते हैं, चाहे किसी ने कोई गलती भी की हो उसको शिक्षा देते हैं, लेकिन पहले उसको उसकी अच्छाई का वर्णन करते हैं, उसको उसकी विशेषताएं बताते हैं और फिर उसको प्यार से और सम्मान से शिक्षा भी दे देते हैं। डिसिप्लिन करते हैं लेकिन रिस्पेक्ट के साथ डिसिप्लिन करते हैं। वो किसी के साथ रेस में नहीं होते। ये एक बहुत बढ़िया बात है इमोशनल फिटनेस, क्योंकि यहां से जो भरपूर होगा, इमोशनल फिटनेस मतलब ये बैटरी चार्ज्ड, तो जो यहां से भरपूर होगा उसको दुनिया के साथ रेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अपनी खुशी के लिए बाहर किसी भी चीज पर निर्भर नहीं है। वो संतुष्ट है, खुश है, और अब रोज वो काम करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन इसके लिए वो किसी के साथ रेस में नहीं होते। सो इमोशनल फिटनेस का एक बहुत बड़ा साइन है कि कंपैरिजन, कंपटीशन, जेलेसी, अपनी तुलना दूसरों से करना, ये संस्कार नहीं होगा। स्वमान में जीते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, दुनिया उनके बारे में क्या बोलती है वो उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है, क्योंकि वो खुद को पहचानते हैं और खुद पर काम करने के लिए रेडी हैं। लेकिन हरेक के ओपिनियन से उनके मन की स्थिति कभी इधर कभी इधर ऐसे नहीं होती है। तो स्वमान में स्थित है, सेल्फ रिस्पेक्ट में स्थित है, नम्रता है, ह्यूमिलिटी है। ह्यूमिलिटी का ऑपोजिट ईगो। तो इमोशनल फिटनेस जितनी लो मतलब ईगो हाई, इमोशनल फिटनेस जितनी हाई उतनी ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी हाई। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 मेरी इमोशनल फिटनेस कहाँ है, क्योंकि वर्तमान समय हरेक को, पूरे समाज को ही अपना इम्यूनिटी सिस्टम तो बढ़ाना है, लेकिन सिर्फ फिजिकल इम्यूनिटी सिस्टम नहीं, अपना इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम भी हरेक को बढ़ाना ही है, और इसलिए यहाँ की फिटनेस का ध्यान हमें जरूर रखना है। तो ये सारे संस्कारों को चेक करिएगा और धीरे धीरे इस पर वर्क करना शुरू करते हैं। जो इमोशनली स्ट्रांग होंगे उनकी एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं, वो काम करते हैं, करवाते हैं, लेकिन लोगों के संस्कारों को एक्सेप्ट करते हुए काम करते और करवाते हैं। एक्सपेक्टेशंस और सोल पावर का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जितनी ये बैटरी ज्यादा चार्ज्ड होती है, चार्ज्ड है फुल्ली, उसकी एक्सपेक्टेशंस कम, लेकिन जितनी ये बैटरी डिस्चार्ज्ड है उतना ये एक्सपेक्ट करती है सब लोग मेरे अनुसार काम करें, मेरी तरह काम करें, जितनी जल्दी मुझे चाहिए उतनी जल्दी करें, और जो मुझे उनसे चाहिए वो पूरा करें। तो एक्सपेक्टेशंस और इमोशनल फिटनेस बड़ा डायरेक्ट कनेक्शन है। तो जैसे आपके पास बहुत सारे टेस्ट होते हैं, स्कैन होते हैं, आप चेक कर लेते हैं कि सबकी फिजिकल फिटनेस का क्या हालचाल है। थोड़ा सा कोई किसी चीज में हिलता है शरीर में तो आप उसका स्कैन करा के या उसका ब्लड टेस्ट करा के उसको तुरंत बता देते हैं एक दिन के अंदर कि ये आपको ठीक करना है। इसी तरह अपना स्कैन करना जरूरी है, अपना स्कैन रोज सुबह करना है कि मेरे संस्कार कैसे हैं, कैसे हैं मेरे संस्कार, और कौन सा संस्कार है इसमें से जो मुझे बदलना है। एंड डे बाय डे ये चेकिंग और गुहे होती जाएगी, क्योंकि ये फिजिकल चेकिंग नहीं है ना, तो कोई और तो करेगा नहीं, और एक्चुअली तो कोई और अगर हमारी चेकिंग करता है तो इमोशनल फिटनेस अगर लो हो तो वो भी बुरा लग जाता है। अगर कोई हमें कहे नहीं यहां से नहीं आपको ऐसा करना चाहिए या आपकी आदत अच्छी नहीं है, तो मेजोरिटी को ये बात अच्छी तो नहीं लगती। तो चेकिंग तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी। तो रोज सुबह अपने संस्कारों को चेक जरूर करना चाहिए, और इसलिए हीलर मतलब अपनी हीलिंग के लिए अपने संस्कारों की हीलिंग करनी है। हम हैं क्या यहाँ पर, हम संस्कार हैं। इस शक्ति को, ये शक्ति जो शरीर को चलाती है, इस शक्ति को स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा कहते हैं। बाकी लैंग्वेज तो कोई भी हो, उसको कोई आत्मा कहे, कोई सोल कहे, स्पिरिट कहे, कोई लाइट कहे, कोई एनर्जी कहे, कोई पावर कहे, शक्ति कहे, कॉन्शियसनेस कहे, ये तो सिर्फ शब्द है। इम्पोर्टेंट है रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि ये मेरा शरीर है, और यहाँ जो शक्ति है वो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है। इसीलिए जब किसी को हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए लेके जाते हैं तो डॉक्टर जब अंदर लेके जा रहे हैं तो कहते हैं मिस्टर सो एंड सो को, सिस्टर अंदर लेकर जाओ, तो वो डायरेक्शन देते हैं सिस्टर मिस्टर सो एंड सो को अंदर लेके जा। सपोज वो सर्जरी नहीं ठीक हुई और वो नहीं रहे, उसके बाद डॉक्टर कहते हैं सिस्टर बॉडी को बाहर लेके जा। अंदर तो मिस्टर सो एंड सो गए थे, लेकिन बाहर बॉडी को बोलते हैं बाहर नहीं बोलते कि मिस्टर सोएंसो को बाहर लेकर जाओ, अगर वो नहीं रहे तो वो क्यों? क्योंकि वो नहीं रहे। कौन नहीं रहे? वो जो ऊर्जा, वो जो एनर्जी, वो जो आय, वो अगर नहीं रहे इस शरीर में, इस शरीर में वो नहीं रहे तो वो शरीर छोड़ दिया उन्होंने, तो फिर डॉक्टर कहेंगे सिस्टर बॉडी को बाहर लेकर जाओ। तो ये हमारी वोकैबुलरी है, लेकिन इस वोकैबुलरी को हमने कभी गहराई से सोचा ही नहीं कि क्या चला गया जो हमने कहा बॉडी को लेकर जाओ। फिर बाहर आके हमने फैमिली को क्या कहा? आई एम सॉरी, आपके ये सदस्य नहीं रहे, मतलब वो चले गए, वो इस शरीर में अब नहीं है। तो वो जो शक्ति है उसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा या सोल कहते हैं। तो वो शक्ति तीन चीजें करती है। एक, वो सोचने का काम करती है तो हम उसको मन कहते हैं। फिर वो निर्णय लेने का काम करती है तो हम उसको इंटेलेक्ट कहते हैं। सो माइंड, इंटेलेक्ट, मन, बुद्धि। फिर जो निर्णय हम लेते हैं वो हम कर्म में लेकर आते हैं। तो हमने सोचा, फिर निर्णय लिया, फिर उसको कर्म में लाया। और कोई भी बात जब हम बार बार कर्म में लाते हैं तो वो हमारी आदत, हमारा संस्कार बन जाता है। तो ये जो शक्ति है आत्मा, ये तीन काम कर रही है, माइंड विच थिंक्स, इंटेलेक्ट विच डिसाइड्स, एंड संस्कार विच गेट्स क्रिएटेड बाय रिपीटेड कर्मा। तो ये कोई अलग अलग शक्तियां नहीं है, शक्ति तो एक ही है, बट रोल अलग अलग प्ले कर रहे हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। और इसीलिए इमोशनल फिटनेस मतलब मन हमेशा सही सोचे। परिस्थिति सही नहीं होगी हमेशा, लेकिन मन सही सोचे। लोगों का व्यवहार हमारे साथ सही नहीं होगा हमेशा, लेकिन मेरा मन सही सोचे, इमोशनल फिटनेस। दूसरा, निर्णय एक्यूरेट ले, औरों से ना पूछे, औरों पे डिपेंडेंट ना हो अपने डिसीजंस लेने के लिए। निर्णय एक्यूरेट ले, कम समय में ले, और अपने निर्णय की जिम्मेवारी उठाएं और किसी और को ब्लेम ना करें। सो निर्णय एक्यूरेट। सो मन फिट मतलब राइट थिंकिंग, इंटेलेक्ट फिट मतलब डिसीजन एक्यूरेट, एंड तीसरा संस्कार। संस्कार श्रेष्ठ होने चाहिए। तो हर आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार्स हैं वो है प्योरिटी, पीस, पावर, लव, नॉलेज, हैप्पीनेस एंड ब्लिस। इसीलिए उसको सतोगुणी आत्मा कहते हैं। सतोगुणी आत्मा मतलब ये सात गुण, ये सात संस्कार हर आत्मा के हैं। प्यार, शक्ति, शांति, पवित्रता, ज्ञान, सुख, आनंद, सतोगुणी आत्मा, ये सात संस्कार। बाकी जो आजकल हमारी आदतें बन गई हैं, टेंशन, चिंता, दर्द, ये आत्मा के ओरिजिनल संस्कार नहीं है, ये तो ऊपर से लगे हुए दाग है। तो इमोशनल फिटनेस हीलिंग मतलब वो दाग हटते जाएंगे और आत्मा के ओरिजिनल संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। तो सुबह का कुछ समय निकालकर हमें अपने संस्कारों की चेकिंग और अपने संस्कारों को चेंज करने की विधि के लिए रखना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम यहाँ हैं वो हमारी एनर्जी फील्ड बनेगी, वो हमारी ऑरा बनेगी, और हमारी एनर्जी फील्ड हीलिंग करती है। एज अ डॉक्टर हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन में भी सिर्फ जो हम बोलते हैं, जो हम व्यवहार करते हैं, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, सिर्फ वो नहीं, कम्युनिकेशन मतलब हमारी वाइब्रेशन। जब आप अपने पेशेंट से मिलते हैं, आपके बोल सेकेंड होता है, आपका व्यवहार थर्ड होता है, आपकी फर्स्ट लेयर ऑफ कम्युनिकेशन होती है आपका वो ऑरा, वो एनर्जी फील्ड। और वो ऑरा किस आधार से बनता है? संस्कार, सोच, मेमोरीज, भाव, भावनाएं, सब कुछ जो यहाँ है वो आपका ऑरा बनाती है। और इसीलिए जब हम देवी देवताओं के चित्र देखते हैं, जब हम धर्म स्थापकों के चित्र देखते हैं, तो देखिएगा चित्र आज जरूर अपने घर पे, हर चित्र में उनके पीछे एक व्हाइट कलर का ऑरा दिखाते हैं। सफेद एनर्जी फील्ड, तो वो व्हाइट मतलब इमोशनल फिटनेस 10 ऑलवेज, स्पिरिचुअल फिटनेस 10 ऑलवेज, मतलब ये जो बैटरी है ये बिल्कुल चार्ज्ड। और इसीलिए उनको देवी देवता कहते हैं। देवी देवता मतलब जो देने वाले हैं, तो वो सिर्फ धन नहीं दे रहे, विद्या नहीं दे रहे, वो वाइब्रेशन दे रहे हैं, वो दुआएं दे रहे हैं, उसको दाता कहते हैं, देवी देवता कहते हैं। और जो देवी देवता दे रहे हैं तो जिनको वो मिल रहा है उनकी हीलिंग होती है। तो हीलर भी, आप सब भी, डॉक्टर्स भी, नर्सेस भी सारा दिन सबको दे रहे हैं, तो आपका ऑरा कैसा होना चाहिए, आपकी इमोशनल फिटनेस कैसी होनी चाहिए, ताकि हर एक जो आपसे मिले वो एक मिनट, दो मिनट या कहीं पांच मिनट के लिए आपके कैबिन में, आपकी ओपीडी में आता है, बैठता है। कितना टाइम मिलता है आजकल हर एक को मिलने के लिए भी, तो वो पांच मिनट में भी उसको आपसे ऐसी ऊर्जा मिले कि उसकी वाइब्रेशन चेंज हो जाए, तो वो दाता। इसके लिए आपका ऑरा भी व्हाइट की तरफ होना चाहिए। और व्हाइट की तरफ ऑरा करने के लिए हमें ये बाकी सारे दाग तो मिटाने ही पड़ेंगे, और अपने ओरिजिनल संस्कार, प्योरिटी, पीस, पावर, नॉलेज, लव, विजडम, हैप्पीनेस एंड ब्लिस, इन ओरिजिनल संस्कारों को इमर्ज करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहली चीज, सारा दिन एक छोटा सा अभ्यास करना कि कुछ भी यहाँ हो, मतलब कोई दाग आ भी जाए, फॉर एग्जाम्पल किसी बात से आप इरिटेट हो भी जाए, आपको गुस्सा आ भी जाए, आपको कोई बात बुरी लग भी जाए, हो जाए भी, लेकिन फर्स्ट स्टेप दाग मिटाने का, मतलब संस्कार परिवर्तन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है जिम्मेवारी लेना, ये मैंने किया। ये नहीं कहना उन्होंने गुस्सा दिलाया, उन्होंने टेंशन दी, उन्होंने मुझे हर्ट किया, उन्होंने, वो इरिटेटिंग है। कई डॉक्टर्स कहते हैं वो पेशेंट बड़ा इरिटेटिंग है, वो इरिटेटिंग नहीं है, वो तो उसका स्वभाव संस्कार है, लेकिन उसके स्वभाव संस्कार से हम इरिटेशन क्रिएट करते हैं, ये थोड़ी सी भाषा को बदल लेते हैं। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आज से शुरू करते हैं, ये बहुत जरूरी है, और आजकल के समय में तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके पास तो सुबह से रात तक बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपके अनुसार नहीं है। सिर्फ अपनी एनर्जी को कंजर्व करना है, अपनी ऊर्जा को ऐसे वेस्ट नहीं कर देना है, वो एनर्जी यहाँ हमें कंजर्व करनी है और एनर्जी फिर हमें बढ़ानी है। इसलिए छोटा सा अभ्यास, एक तो ध्यान रखना है, उलझना नहीं, रिएक्ट नहीं करना, चिढ़ के नहीं बोलना, जोर से नहीं बोलना, इरिटेट होकर नहीं बात करना, गुस्सा नहीं करना। अब ये अगर हम पहले भी कर रहे थे तो अभी नहीं करना, जीवन बदला हुआ है ना। अभी सब लोग कह रहे हैं व्हाट इज द न्यू नॉर्मल, द न्यू नॉर्मल इज इमोशनल फिटनेस, द न्यू नॉर्मल इज कंजर्विंग एनर्जी। हमें अपनी एनर्जी को बचाना है, क्योंकि हमारी एनर्जी अपने लिए और हमारी एनर्जी औरों की सेवा के लिए। तो सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना, तो आधी चीजें तो वहीं पहले दिन से ही खत्म हो जाएंगी, कि मुझे जोर से नहीं बोलना, गुस्से से नहीं बोलना, नाराज होकर नहीं बोलना, इरिटेट होकर नहीं बोलना, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, प्रेशर नहीं डालना, करो लेकिन प्रेशर डाल के नहीं करवाना, क्योंकि ये सारी बातें मेरी भी ऊर्जा को घटा रही है और जो मेरे साथ सेवा कर रहे हैं उनकी भी ऊर्जा को घटा रही है। और इस समय मुझे अपना और उनका, सबकी एनर्जी का ध्यान रखना है, ताकि हम सब मिलकर फिर आने वाले सबकी एनर्जी का ध्यान रख सकेंगे। तो आधी चीजें तो सिर्फ एक डिसीजन लेने से खत्म हो जाती हैं। जैसे पहले कुछ लोग स्मोक किया करते थे, लेकिन फिर हर जगह लग गया नो स्मोकिंग जोन, तो वैसे तो उनको इतनी आदत थी करने की कि वो इधर उधर मार्केट गए, एयरपोर्ट खड़े हुए, स्टेशन पे कर ही लेते थे, लेकिन फिर हर जगह लग गया कि नो स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। तो अब वही लोग है ना, लोग थोड़ी बदल गए हैं, लोग नहीं बदले, उनकी आदतें भी वही हैं, लेकिन अब वो हर जगह नहीं कर सकते हैं, तो वो बड़ा ध्यान रखते हैं कि यहाँ करना अलाउड नहीं है। ये माइंड आज्ञाकारी है, ये हमारी हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। तो जैसे ही उन्होंने सब अपने मन को बता दिया कि अब यहाँ करना अलाउड नहीं है, ऑफिस में अलाउड नहीं है, एयरपोर्ट पे अलाउड नहीं है, मार्केट में अलाउड नहीं है, जब इस मन को पता चला वही लोग हैं, वही उनकी आदत है, लेकिन वो कहीं भी पब्लिक प्लेस में नहीं करते हैं, एक डिसीशन अंडरस्टूड एंड फिटेड हियर फॉरएवर, आदत बदल गई। इसी तरह हमें भी अपने आप को कहना है कि अब कुछ महीनों के लिए अपनी शक्ति को कंजर्व करना है, तो गुस्सा करना अलाउड नहीं है, इरिटेट होके बात करना अलाउड नहीं है, प्रेशर क्रिएट करना औरों को जल्दी करो ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया ऐसे बात करना अलाउड नहीं है। जैसे आपने अपने मन को एक दो दिन ये समझा दिया, ये मन हमारा है, हमारा हर कहना मानता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सही और गलत बहुत अच्छे तरह से अपना समझता है, और अपना ध्यान रखना तो इसको पता है, सिर्फ हमें इंस्ट्रक्शन इसको सही देनी है। पहले हमने इसको इंस्ट्रक्शन क्या दी थी, उन्होंने किया ऐसे तो गुस्सा तो आएगा, तो मन ने मान लिया, और जब जब किसी ने कुछ ऐसा किया मन ने बड़ा प्यार से गुस्सा किया, मतलब वो वाला संस्कार एक्टिवेट हो गया, क्योंकि मन ने सोचा कि गुस्सा तो करना ही पड़ेगा, बात ऐसी है, निर्णय लिया, कर्म में आ गए, संस्कार बन गया। अब हम मन को कहेंगे नहीं, अब हमें अपने इम्यूनिटी सिस्टम का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने भी और अपने लोगों के भी। तो इसलिए आज से गुस्सा नहीं अलाउड, इरिटेट नहीं अलाउड, किसी के साथ आर्ग्यू करना, कोई आर्ग्यू ही करता जा रहा है, जिद कर रहा है, अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ उलझना नहीं, अपनी बात कह दो एक बार और फिर वहां से थोड़ा सा अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इतनी एनर्जी अब हम वेस्ट करेंगे नहीं। समय बदला हुआ है, समय के साथ बदलना होगा, अगर समय से पहले नहीं बदले थे कम से कम समय के साथ तो बदलना पड़ेगा ना, अगर समय के साथ भी नहीं बदले तो फिर हम अपने मन का ध्यान कैसे रखेंगे। सो ईदर वी शुड हैव चेंज्ड बिफोर टाइम और वी नीड टू चेंज विद टाइम, बट इफ समवन डजंट अग्री टू चेंज विद टाइम देन द माइंड एंड द बॉडी विल हैव एन इम्पैक्ट ऑफ इट। तो इसलिए कुछ बातें अपने आप को अब समझा दीजिएगा कि मेरा काम करने का और मेरा काम करवाने का तरीका थोड़ा सा बदला हुआ होगा, एनर्जी कंजर्व, सेव एनर्जी, माई एनर्जी एंड एवरीवन्स एनर्जी, संस्कारों को बदलना है। तो कुछ संस्कार देखते हैं, पेशेंस, धैर्यता का संस्कार, सम्मान से बात करने का संस्कार, वो कोई सिक्योरिटी गार्ड सेवा कर रहा है, कोई रिसेप्शन पे सेवा कर रहा है, कोई नर्स आपकी साथ सेवा कर रही है, कोई आपका असिस्टेंट जूनियर इंटर्न आपके साथ सेवा कर रहा है, कोई भी सेवा कर रहा है, रोल अलग अलग है, हम रोल के हिसाब से अब बात नहीं करेंगे, सबके साथ प्यार और सम्मान से बात करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई बहुत सीनियर है तो उसके साथ तो प्यार से रिस्पेक्ट से बात, एंड कोई अपने से जूनियर है तो उसके साथ कैसे भी बात। एनर्जी कंजर्व, हर एक का मन ध्यान रखते हुए सबके साथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी से बात करेंगे, तो सारा दिन में फ्लक्चुएट नहीं होंगे, मन की स्थिति ऊपर नीचे नहीं जाएगी, स्थिर रहेगी और संयम में रहेगी। गुस्सा ये तो हमें अपने हॉस्पिटल से हटा देना होगा, अपने हॉस्पिटल को लिखिएगा नो एंगर जोन, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नो एंगर जोन। आज हम वायरस हमें ना हो दूसरे का, उसके लिए कितना ध्यान रखते हैं, इसी तरह वाइब्रेशंस दूसरों के हम पर हावी ना हो जाए, इसके लिए हमें हॉस्पिटल के वाइब्रेशन का, ऊर्जा का कितना ध्यान रखना चाहिए। इसलिए नो एंगर जोन ये हॉस्पिटल में लिख देते हैं हर जगह, इससे और एक सेफ्टी भी होगी, पेशेंट्स को भी गुस्सा करना नहीं अलाउड होगा क्योंकि दे आर एंटरिंग अ नो एंगर जोन, तो आप प्यार से उनको उस तरफ इशारा कर देना बोर्ड के कि यहाँ पे गुस्सा करना अलाउड नहीं है, आपको जो बोलना है जरा आराम से बोलिए, क्योंकि आपके गुस्से का असर हॉस्पिटल पर, स्टाफ पर और जो यहाँ जिनका इलाज हो रहा है उन पर भी असर होता है। हमें हॉस्पिटल की, अपने क्लिनिक की, जहां भी हम बैठते हैं उस स्थान की ऊर्जा को बहुत ऊपर उठाना है, जैसे मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च, आश्रम, ऐसे स्थानों पर जब लोग जाते हैं तो उनको एंटर करते ही एक सुकून मिलता है। कई बार हम देखते हैं कि जब माउंट आबू जो हेडक्वार्टर्स है वहां पर लोग आते हैं जब आए हैं तो छोटी बड़ी कोई बीमारी होती है, किसी को घुटने का दर्द है, किसी को पीठ में दर्द है, किसी को कभी सर दर्द है, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें तो होती है। और फिर आते हैं 3 दिन की रिट्रीट के लिए, कुछ को तो नींद अच्छी नहीं आ रही होती अपने घर पे, और जब वहां आते हैं आश्रम में तो अगले दिन कहते हैं अरे यहाँ आकर तो मुझे मेरा सर दर्द चला गया, कल रात को तो मैंने बहुत अच्छी नींद आई मुझे। तो वो क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए क्योंकि स्थान की वाइब्रेशन आने वाले लोगों के मन की वाइब्रेशन को चेंज कर देती है। इम्पैक्ट ऑफ वाइब्रेशंस ऑन द अदर पीपल्स माइंड्स। तो सुख मिला और सुकून मिला ना दूसरे को, एक दिन के अंदर ही आते ही बेटर फील होना शुरू हो जाना। और ये हम सब ने अनुभव किया है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाओ, अंदर जाते ही लगता है सुकून मिल रहा है, शरीर अच्छा फील होने लग गया है। तो हॉस्पिटल, हमारा क्लिनिक, वो भी तो एक हीलिंग सेंटर है ना, तो उसके वाइब्रेशन भी ऐसे होने चाहिए जो अंदर आते ही लोगों को सुकून मिले। तो इसलिए उसको नो एंगर जोन बनाना तो बहुत 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 जरूरी है। इसलिए हर जगह सुंदर से बोर्ड बनाकर अपने हॉस्पिटल और क्लिनिक को नो एंगर जोन लिख दीजिए वहां पर। तो गुस्सा आउट, इम्पेशेंस इरिटेशन ये आउट, आर्ग्यूमेंट उलझना किसी से आउट। और एक और चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लोगों के बारे में नेगेटिव सोचना या उनके लिए नेगेटिव बोलना, मतलब किसी और की कमजोरी, किसी और की कोई प्रॉब्लम, उसके बारे में डिस्कशन करना यहाँ पर या यहाँ पर, वो नहीं है और उनके बारे में बात करना। कोई प्रॉब्लम है, इशू है, तो हमें उनके साथ रिजॉल्व करना चाहिए या उनको साथ में बिठा कर किसी बड़ों के साथ रिजॉल्व करना चाहिए। लेकिन सिर्फ पीठ पीछे बातें करना ये सबसे बड़ा एनर्जी का डिप्लीटर होता है। स्पिरिचुअलिटी हमें बहुत अच्छी एक चीज सिखाती है, जिसका आप यहाँ चिंतन करोगे, विच मीन्स अगर हमने यहाँ पर किसी की कमजोरी का चिंतन किया तो अब वो कमजोरी सिर्फ उनकी नहीं, हमारे चित्त का हिस्सा बन जाती है। सो कीपिंग पीपल्स नेगेटिविटी एंड वीकनेस ऑन आवर माइंड, टॉकिंग अबाउट इट टू अदर पीपल, तो वो कमजोरी हमारे चित्त का भी हिस्सा बन जाती है। इसलिए बहुत बहुत ध्यान रखना है कि ऐसे ही खड़े खड़े इसके बारे में बात, उसके बारे में बात, सरकार के बारे में बात, हॉस्पिटल के हेड के बारे में बात, नहीं नहीं करना। कुछ चीजें अगर हमारे कंट्रोल में है उसके लिए बात करना, उनसे जाकर बात करना, या जो पोजिशन में अथॉरिटी में उनसे बात करना। कुछ चीजों के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, अगर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे तो फिर कम से कम उसके बारे में सोचकर और बार बार बात करके हम अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को डिप्लीट क्यों कर रहे हैं, अपने हॉस्पिटल की एनर्जी को क्यों डिप्लीट कर रहे हैं। एक्सेप्ट कर लीजिए कि इस समय ये बात मेरे कंट्रोल में नहीं है, एटलीस्ट सब कुछ जो मेरे कंट्रोल में है मैं उस पर फोकस करके अपना बेस्ट करूं। क्योंकि कब ऐसी परिस्थितियां होती है ना, तो जो भी मिलते हैं एक दूसरे को सेम बात सेम बात सेम बात, आपको पता है ऐसा हुआ, आपको पता है उसने ऐसा किया, देखो क्या कर रहे हैं। दिस इज ऑल गोइंग टू बी अ ह्यूज डिप्लीटर हियर। और जब से हमारे पास फोन पर ये सारी फैसिलिटीज आ गए तो फिर हम बातें सिर्फ एक दूसरे से नहीं करते, वो मैसेंजर्स, वो ग्रुप्स, वो सोशल मीडिया हैंडल्स, हर एक के बारे में ओपिनियन, हर एक के बारे में कमेंट, ये बहुत बड़ा एनर्जी डिप्लीटर है। सोल्यूशन पर फोकस करें, यस, सोल्यूशन के लिए जिनको बता सकते हैं यस, अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन राय देने की भाषा भी सही होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ बार 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 हर एक से वो बात करना, ये तो बहुत बड़ा एनर्जी डिप्लीटर होता है। तो अपनी एनर्जी को कंजर्व करना है। सो एंगर, इम्पेशेंस, प्रेशर, हरिड होने का, जल्दी जल्दी दूसरों को करने का, दूसरों की नेगेटिव बातें करने का, या सिचुएशंस के बारे में शिकायत करने का। शिकायत मतलब जस्ट ग्रम्बल कंप्लेन, जस्ट ग्रम्बलिंग, ऐसा है देखो ना, ऐसा है देखो ना, ये करने से हमारी एनर्जी वेस्ट होगी, वो चीज अभी ठीक नहीं होगी। वो चीज को ठीक करने के लिए भी हमें अच्छे वाइब्रेशंस देने पड़ते हैं, लेकिन बार बार सोचने और बोलने से हमारी एनर्जी वेस्ट होती है और हमारी इमोशनल फिटनेस डाउन। तो इनमें से एक एक संस्कार को चूज करते जाइए। सिर्फ अटेंशन रखिए कि इस समय ये अलाउड नहीं है, 6 महीने के बाद देखेंगे, अगर मन किया तो संस्कार को वापस इमर्ज कर लेंगे, वो यहां से कहीं जाने नहीं वाला, यही है, बस उसको मर्ज कर करके कर करके बिल्कुल पीछे दे देना है। लेकिन 6 महीने के बाद आपको रियलाइज होगा कि हम कितनी एनर्जी वेस्ट कर रहे थे इन बातों के अंदर, और आप बहुत सुंदर एक डिफरेंट लाइफस्टाइल, डिफरेंट जीवन जीने का तरीका, अपने ओरिजिनल संस्कार के साथ जीना शुरू कर देंगे। तो इन संस्कारों के ऊपर हमें अब थोड़े दिन काम करना है, और उसके लिए हमें इस बैटरी को रोज सुबह चार्ज करना बहुत 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 जरूरी है। सुबह का आप 1 घंटा नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, सुबह का आधा घंटा एटलीस्ट अपने लिए रखना शुरू कीजिए। और जो लोग रोज हॉस्पिटल आजकल नहीं जा रहे, क्योंकि हर एक का शिफ्ट और ड्यूटी और अलग अलग हुआ हुआ है ना आजकल, तो सभी लोग तो रोज नहीं जा रहे, तो फिर वो तो रोज 1 घंटा जरूर अपने लिए रखें। सबसे पहले सुबह के दिन की शुरुआत परमात्मा का याद, मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। सुबह सुबह हम दुनिया से कनेक्शन जोड़ने से पहले परमात्मा से कनेक्शन जोड़े। अगर हम सुबह ही सबसे पहले उठते ही दुनिया से कनेक्शन जोड़ लेते हैं, मतलब टीवी पर क्या आ रहा है, न्यूज में क्या आ रहा है, न्यूज़पेपर में क्या आया है, फोन पे किसके मैसेजेस आए हैं, हाँ हॉस्पिटल से कुछ अर्जेंट है वो एक अलग बात है, लेकिन बाकी सब मैसेजेस जो आते रहते हैं ये सब दुनिया की बातें हैं। सुबह सुबह अगर दुनिया की बातें हमने कंज्यूम की, तो फिर वहां यहाँ पर जो दुनिया की स्थिति वो हमारे मन की स्थिति, एंड एज अ हीलर हमारे मन की स्थिति इधर होनी चाहिए। तो सुबह का 1 घंटा दुनिया की बातें अपने मन पर न डाले, सुबह का 1 घंटा परमात्मा की स्थिति को अपने मन पर डाले, क्योंकि अपनी ऑरा को वाइट बनाना है ना, तो दाता की तरह बनना है, तो फिर दाता की स्थिति डालनी पड़ेगी। अगर दुनिया की स्थिति मन पर डाली तो दुनिया जैसी स्थिति बन जाएगी, अगर दाता की स्थिति मन पर डाली तो दाता जैसी स्थिति बन जाएगी। तो किसकी शक्ति पहले यहाँ डालनी है? तो सुबह का समय मेडिटेशन हमेशा जरूरी था, लेकिन अब तो कंपल्सरी होना चाहिए हमारे लिए, कि ये बैटरी को चार्ज करके ही हमें घर से निकलता है अपनी सेवा के लिए। तो सुबह का सबसे पहली चीज परमात्मा के साथ कनेक्शन, राजयोग मेडिटेशन, मतलब जो सर्वश्रेष्ठ है उसके साथ कनेक्शन जोड़ना, स्वयं पर राजा बनना, राजयोग स्वयं पर राजा बनना, कि मतलब मेरा मन, मेरे शब्द, मेरा व्यवहार, ये सब मेरे अनुसार चलते हैं, स्वयं पर राजा बनना, और संस्कार परिवर्तन। राजयोग मेडिटेशन का सबसे बड़ा जो लक्ष्य इम्पोर्टेंट है वो है संस्कार परिवर्तन, अपनी इमोशनल फिटनेस को हाई करना। तो अब इस सेशन के बाद आपको राजयोग मेडिटेशन कोर्स के बारे में भी बताया जाएगा। वैसे तो आप जहां जहां रहते हैं आपके नजदीक ब्रह्मा कुमारीज का राजयोग मेडिटेशन सेंटर है, और जब सेंटर पर सेवाएं शुरू हो जाएंगी तो आप जरूर जाइएगा, जरूर जाइएगा, अब तो बहुत जरूरी है जाना। और जाकर वहां बहनों से अपना टाइम फिक्स करके 1 घंटा हफ्ते के लिए, 5-6 days 1 hour, 1 hour नहीं हो तो 1/2 hour, 5-6 दिन के लिए 1/2 hour सही, आप सेंटर पे जाकर जो दिन जो टाइम आपको सूट करे ये मेडिटेशन जरूर सीखेगा। लेकिन क्योंकि अभी तो नहीं जा सकते, तो तब तक हम ये मेडिटेशन कोर्स ऑनलाइन शुरू करेंगे, और आप सबके लिए एक विशेष मेडिटेशन कोर्स ऑनलाइन रखा जाएगा, जिसकी डिटेल्स आपको इस सेशन के एंड में मिलेंगे। तो सुबह का समय वो मेडिटेशन सीखना, और फिर सुबह हर रोज वो मेडिटेशन करना, फिर कुछ क्षणों के लिए 15-20 मिनट, और अगर आपको लगे आपको सुबह टाइम नहीं मिल रहा है, आप बहुत जल्दी हॉस्पिटल जाते हैं, तो आप सुबह ट्रैवल टाइम में यूज कर लीजिए। लेकिन सुबह का समय स्पिरिचुअल स्टडी का होना चाहिए, मतलब अंदर जो खुराक जाएगी सुबह, जो हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, वो हमारी इमोशनल डाइट है। इसीलिए दुनिया की बातें सुननी, पढ़नी, देखनी नहीं सुबह सुबह, तो इमोशनल डाइट को वो सारी बातों से बचा लिया, लेकिन खुराक सुबह अच्छी देनी है। तो इसलिए स्पिरिचुअल स्टडी का समय सुबह का बहुत इम्पोर्टेंट है, कि 15-20 मिनट, आधा घंटा परमात्मा के महावाक्य, डिविनिटी, प्योरिटी, फेथ, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सारी बातें जब अंदर चली जाएंगी, परमात्मा की शक्तियां और परमात्मा का ज्ञान, ये दो चीजें जब आत्मा को मिलती हैं, तो आत्मा की एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, ये आत्मा की बैटरी चार्ज होने लग जाती है। तो सुबह का आधा एक घंटा अपने लिए जरूर रखना है, और बाकी आप फिजिकल फिटनेस के लिए तो करते ही है। फिर सारा दिन में भी अपना ध्यान रखना है कि जो बातें सुबह स्टडी की उसमें से कुछ एक दो पॉइंट्स अपने लिए रख लीजिए, और वो एक दो पॉइंट्स सारा दिन में हर एक घंटे के बाद रुक कर अपने आप को याद जरूर दिलानी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि वो सुबह की बात यहाँ हमारी सोच बार बार रिपीट होती जाए और हमारी ऑरा हमेशा साफ रहे, क्लीन रहे। कोई आए, कोई मिले, कुछ कहे, कुछ करे, वो एनर्जी हमारे में यहाँ पे ट्रैप नहीं होनी चाहिए। हम फटाफट से रुककर उसको साफ कर ले कि हाँ अच्छी बात यहाँ पर डाल दे, तो वो बात जो थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही थी वो साफ हो जाएगी। जैसे आप चाय पी रहे हैं और पीते पीते सोफे पे गिर जाए तो आप उसको छोड़ थोड़ी देते हैं, आप तुरंत उसी समय उसको साफ कर देते हैं। तो दाग को तुरंत मिटाना है। ऐसे ही ये सफेद ड्रेस है, अब इस पे अगर कुछ गिर जाए तो हम छोड़ थोड़ी देंगे, इमीडिएटली साफ करते हैं। और जितना व्हाइट रखना है उतना तो साफ इमीडिएटली करना पड़ता है। इसी तरह ऑरा को व्हाइट रखना है तो कोई कुछ कह गया, कुछ हो गया, कुछ बात हो गई, कम से कम हर एक दो घंटे के बाद एक मिनट के लिए रुक के उसको साफ करना होता है यहाँ से सोच को, ताकि वो ऑरा सारा दिन वाइट रहे, वो हीलिंग एनर्जी सारा दिन हाई रहे। सो हर एक दो घंटे के बाद रुककर आधा मिनट, एक मिनट रेस्ट लेकर अपनी सोच को चेक करके, और वो जो सुबह सुना या पढ़ा था उसमें से कोई संकल्प क्रिएट करके सारा दिन अपनी स्थिति को स्टेबल और हाई वाइब्रेशन पे रहेंगे तो हमेशा देते रहेंगे, सबको देते रहेंगे। फिर रात को सोने से पहले भी कम से कम 5-10 मिनट सोने से पहले फिर स्पिरिचुअल स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारा दिन में इतना कुछ हो जाता है तो वो सारी बातें हमारे मन पर होती हैं। अगर हम उन बातों के साथ ही सो जाएंगे तो शरीर तो इतना थका हुआ होता है कि आपको बेड पे जाते ही नींद आ जाती होगी, लेकिन वो तो शरीर सोएगा, मन कैसे सोएगा, क्योंकि मन पे तो इतना कुछ चल रहा है। तो सोने से पहले कम से कम 10 मिनट कुछ बहुत अच्छा शक्तिशाली स्पिरिचुअल कंटेंट सुने, पढ़े या देखे, लेट इट गो इन, ताकि वो सारी बातें जो पहले की थी उसके ऊपर ये लास्ट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाए, सारा दिन की कई बातों के आंसर्स मिल जाएंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मन को सुकून मिलेगा, मन की स्पीड स्लो डाउन होगी, शांत होगा। और फिर आप जब सोएंगे तो सिर्फ शरीर नहीं सोएगा, साथ में मन भी सोएगा। द माइंड नीड्स डीप स्लीप फॉर अ गुड इम्यूनिटी सिस्टम, आप ही हम सबको सिखाते हैं। तो आपको अपनी स्लीप भी चेक करनी होगी कि सिर्फ शरीर सोता है या मन भी अच्छे तरह से सोता है। तो ये दो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है इमोशनल फिटनेस के लिए, सुबह का समय और रात को सोने से पहले का समय। एंड आई एम श्योर आजकल आप सारे वेजिटेरियन डाइट खा रहे हैं, आपके कहने अनुसार समाज ने भी सबने वेजिटेरियन ही खाना शुरू किया है। वेजिटेरियन डाइट हमारे मन की स्थिति के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इट्स टाइम कि ये समय है कि आपको सबको भी ये बात बतानी होगी, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन से हमने सिर्फ एक बिलीव सिस्टम क्रिएट कर लिया कि वो हेल्थ है, वो तो सिर्फ प्रोटीन्स था ना, लेकिन उसकी वाइब्रेशन क्या थी, जैसा अन्न वैसा मन। एंड होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, ये हमें बार बार ये बताते हैं बात कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो वो अन्न और पानी के वाइब्रेशन कैसे होने चाहिए, तो एलोपैथी भी इसको अपने साथ ले ले कि खाना और पानी सिर्फ शरीर के लिए नहीं, ये मन के लिए भी है, तो उसके वाइब्रेशंस कैसे होने चाहिए। तो वो भोजन भी, वो खाना भी बहुत शांत स्थिति में, स्थिर स्थिति में, स्टेबिलिटी के साथ अगर वो खाना बनेगा, देन इट इज नॉट जस्ट हाई न्यूट्रिशनल डाइट, इट हैज टू बी अ हाई वाइब्रेशनल डाइट। सिर्फ हाई न्यूट्रिशन नहीं, हाई वाइब्रेशन एंड हाई न्यूट्रिशन, क्या हुआ पिछले कुछ सालों से, हम सिर्फ यही चेक कर रहे हैं। डाइटिशियन भी हमें सिर्फ इतना ही पूछती है, आप प्रोटीन्स कितने ले रहे हैं, आप कार्बोहाइड्रेट्स कितने ले रहे हैं, आपकी सुबह में कितने मिनरल, सिर्फ न्यूट्रिशन पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन शरीर को चाहिए लेकिन मन को वाइब्रेशन चाहिए और मन की स्थिति का असर शरीर पर पड़ता है। तो बेस्ट ऑफ न्यूट्रिशन तो बॉडी को दे दिए, लेकिन अगर बेस्ट ऑफ वाइब्रेशन नहीं दिया तो हीलिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए हाई वाइब्रेशनल न्यूट्रिशनल डाइट, इसको थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो जो नॉन वेजिटेरियन फूड है उसकी वाइब्रेशन में तो बहुत दर्द है, दुख है, गुस्सा है, डर है, इस समय तो हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए सभी को इस समय सात्विक भोजन, ये एक्सपेरिमेंट जरूर करना है, सात्विक खाना, वेजिटेरियन डाइट, एंड वो भी बहुत अच्छे मन की स्थिति में। आप सब जिनके क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जहां पर खाना बनता है, थोड़ा सा विशेष वहां ध्यान दें कि खाना बनाने वालों के मन की स्थिति ठीक हो, वो खाना किस तरह से बना रहे हैं, ऐसे नहीं चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, इधर से बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, शोर भी मच रहा है और खाना भी बन रहा है। आफ्टर ऑल वो खाना हीलिंग करने जा रहा है, वो सारे जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में उनके लिए वो खाना बन रहा है, वो खाना तो बहुत सुकून में बनना होता है। हाँ, काम बहुत ज्यादा है क्योंकि इतने सारे लोगों का खाना बनाना है, लेकिन एक बार निश्चय कर लिया तो वो बहुत शांति से और स्थिरता से भी बन सकता है, सेवा भाव से बन सकता है, परमात्मा की याद में बन सकता है, लोगों की हीलिंग जल्दी होगी। तो ये बहुत ध्यान रखना है अपने हॉस्पिटल में भी और अपने घर में भी कि खाना बड़े शांत स्थिर मन से बने, क्योंकि उसका खाने वालों के मन पर असर पड़ता है। और खाना खाने के समय आप सारा दिन में बहुत व्यस्त रहते हैं, कभी कभी तो बस चलते फिरते में ही खा लेते हैं, इसे इतना सा खाते हैं और भागते हैं, हमें लगता है नहीं ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे उधर जाना है। कभी कभी ऐसा हुआ तो इट्स ठीक है, लेकिन अगर ये हमने अपना लाइफस्टाइल ही बना लिया कि हमने आराम से बैठकर खाना नहीं खाया, तो ये ना हमारे लिए अच्छा होगा और ना ये हमारे हीलिंग एनर्जी के लिए अच्छा होगा, और इसीलिए ना ये पेशेंट्स के लिए अच्छा होगा। 5-7 मिनट से ज्यादा खाना खाने में नहीं लगेगा, लेकिन वो 7-8 मिनट जरा बैठ कर, और हॉस्पिटल में अगर है तो अकेले बैठकर खाइए, क्योंकि कई बार जब आप सबके साथ बैठकर खाते हैं तो फिर वो ही वाली बातें कर रहे हैं, हॉस्पिटल की बातें, कोई पेशेंट के बारे में बातें, कोई केस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था उसके बारे में बातें, ये सारी बातें खाना खाने के समय नहीं करनी है। तो इसलिए हॉस्पिटल में सबसे मिलिए, सबके साथ बैठिए, लेकिन खाना खाने के समय नहीं, खाना आप अकेले बैठकर खाइए। और अगर आपको फिर भी सबके साथ खाना है तो फिर खाते समय ये ध्यान रखना होगा कि आप बातें कौन सी कर रहे हैं, किसी और के बारे में बात नहीं, किसी बीमारी के बारे में बात नहीं, किसी केस के बारे में बात नहीं, इनमें से कोई भी बातें नहीं कर सकते। खुशी खुशी वाली हैप्पी हैप्पी बातें अगर करनी है तो करिए, लेकिन वो क्या है ना, कभी कभी हमारी कॉन्वर्सेशन शुरू उससे होती है फिर थोड़ी देर में इधर ही चली जाती है कहीं। इसलिए 5-7 मिनट अपने आप के साथ बैठकर भोजन कीजिए, क्योंकि फूड अब्सॉर्ब्स वाइब्रेशंस एंड फूड इन्फ्लुएंसेस स्टेट ऑफ माइंड। और खाना खाने से पहले परमात्मा को याद करके और वो श्रेष्ठ संकल्प के वाइब्रेशंस उस भोजन में डालकर, इवन पानी पीने से पहले, आप सारा दिन मेजोरिटी पानी तो हॉस्पिटल में ही पी रहे होंगे, इवन अगर आप अपने घर से लेकर गए हैं, लेकिन वो पानी तो सारा दिन हॉस्पिटल के वाइब्रेशंस में ही है ना, तो उसमें वो दर्द और डर की वाइब्रेशंस आ जाती है, तो ऐसे ही नहीं पानी पी लेना चाहिए। 5 सेकंड, ज्यादा टाइम नहीं लगता, जैसे आप ऐसे करके हाथ सैनिटाइज करते हैं ना दिन में इतनी बार, कोई अगर गिने कि आप कितनी बार हाथ को सैनिटाइज करते हैं हॉस्पिटल में या हाथ धोते हैं, लेकिन आप कभी भूलते थोड़ी है। ऐसे ही हम लोग कभी भूलते नहीं है कि पानी पीने से पहले, खाना खाने से पहले 5 सेकंड रुककर परमात्मा को याद करके शक्तिशाली संकल्प उस खाने और पानी में देकर फिर ही स्वीकार करते हैं, उसके बिना कभी भी स्वीकार नहीं करते, ताकि हमारा मन सही स्थिति में रहे। सो बिफोर एवरी मील, बिफोर एवरी ग्लास ऑफ वाटर, पॉज फॉर 5 सेकंड्स, से योर प्रेयर and say those high vibration thoughts before eating or drinking. Kyunki jaisa ann, vaisa man, jaisa pani, vaisi vani. Is power ko use karna hai. Isse bhi hamara aura white banta hai. Hamari energy field powerful banti hai. To subah ka samay dhyan rakha. Raat ko dhyan rakha sone se pehle. Har ek do ghante mein beech mein check kar liya mind ko. Koi daag laga hai to mita diya. Wo high vibrational thoughts jo subah li thi, usko sara din mein use kiya. Aur khana khane se pehle, pani, chai, coffee peene se pehle, vegetarian sattvik khana khayenge. Shant aur sthir man se banwayenge. Aur bade shant aur sthir man se khayenge. Phone pe baat nahi karenge khana khane ke samay. सिर्फ कोई बहुत बड़ा क्राइसिस है तो ही, नहीं तो आप उनको बोलेगा बस मैं 10 मिनट में फोन करता हूं. हमें लगता है खाना खा ही रहे हैं तो फोन पे बात कर लेते हैं. नहीं, दिस इज नरिशमेंट टाइम. अगर इस नरिशमेंट टाइम में हमने माइंड एंड बॉडी को नरिश नहीं किया ठीक से, ये सोचा कि 5 मिनट बात कर ही लेते हैं, तो वो नरिशमेंट इनकम्प्लीट हो जाएगी. तो फिर हम डाइट अच्छी ले रहे हैं फिर भी सुख, सुकून और शक्ति जितनी बननी चाहिए वो नहीं बन रही है. क्योंकि विधि, विधि से सिद्धि मिलती है. द मेथड हैज टू बी राइट टू ईट एंड ड्रिंक. तो वो करना बहुत जरूरी है. और सारा दिन श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प. मन की स्थिति हमेशा है. इस समय कुछ संकल्प करना बहुत जरूरी है ताकि हमारी एनर्जी हाई रहे और हम अपने आप को बहुत सुरक्षित और सेफ फील करें. क्योंकि आप हाई रिस्क जोन में जा रहे हैं हर रोज. आपके आसपास बातें भी बहुत सारी चल रही हैं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी बहुत आती है. कुछ महीनों के लिए तो आप न्यूज चैनल्स देखना छोड़ ही दें. क्यों सुनना है? आपकी जिम्मेवारी सिर्फ जो आपके अंदर आ रहा है उसी के ऊपर है कि आपके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपके हॉस्पिटल की, बस उसको हाई एनर्जी दें. बाकी पूरे देश में, दूसरे हॉस्पिटल में, दूसरे देशों में क्या हो रहा है, ये सब कुछ अब भरने का ना टाइम है और एनर्जी नहीं है. एनर्जी नहीं है क्योंकि हर जगह का सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते यहाँ पर असर होता है. और जब यहाँ पर असर होता है तो जो अपनी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर असर हो जाएगा. सो वी ऑल नीड टू जस्ट फोकस ऑन आर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी डोंट नीड टू कंज्यूम व्हाट्स हैपनिंग इन अदर कंट्रीज एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट्स नॉट द टाइम राइट नाउ. क्योंकि इसको, वाइब्रेशन को हाई रखना है. कुछ श्रेष्ठ संकल्प जिनको आप बार बार यूज कर सकते हैं, सुबह, रात को, एंड डेफिनेटली खाना खाने से पहले और पानी, चाय, कॉफी पीने से पहले. 10 संकल्प है. मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ. आई एम अ पावरफुल बींग. मैं शांत आत्मा हूँ. आई एम अ पीसफुल बींग. मैं निर्भय आत्मा हूँ. आई एम अ फियरलेस बींग. फोर्थ, मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है और हमेशा रहेगा. माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी एंड विल ऑलवेज बी. पांचवा, परमात्मा की शक्तियां और दुआओं का कवच मेरे चारों तरफ है. परमात्मा की शक्तियां और दुआओं का कवच मेरे चारों तरफ है. ये मेरा सुरक्षा कवच है. गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स, सर्कल ऑफ डिवाइन लाइट, व्हाइट लाइट अराउंड मी. आई एम प्रोटेक्टेड. परमात्मा की शक्तियों का कवच मेरे परिवार के चारों तरफ है. परमात्मा की शक्तियों का कवच मेरे हॉस्पिटल के चारों तरफ है. हर एक सुरक्षित है. हर एक सुरक्षित है. हर एक के लिए सुबह सुबह एक दुआ क्रिएट करना बहुत बहुत जरूरी है. नहीं तो ये थॉट बार बार माइंड में चल रहे हैं, कहीं कुछ हो जाए, इसको हो जाए, उस हॉस्पिटल में डॉक्टर को हो गया, उधर नर्स को हो गया. दिस इंफॉर्मेशन इज टू मच ऑन द माइंड. वी हैव टू कीप द माइंड वेरी काम एंड सो वी से माय हॉस्पिटल इज प्रोटेक्टेड बाय गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स. Each one is safe. ये बार बार क्रिएट करना है. परमात्मा की शक्तियों का कवच हमारे देश और विश्व के चारों तरफ है. एंड लास्ट संकल्प, वो जो चीज इस सृष्टि पर आई थी वो चली गई है. फिनिश्ड. ये संकल्प बार बार करना है. क्यों हमने कहना है चली गई है? मतलब हम सोल्यूशन बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे. वो चीज किसी के जीवन में असर नहीं करेगी उसके बाद, क्योंकि हमें सोल्यूशन मिल जाएगा. इसके ये नहीं सोचना बार बार एक साल रहेगा, दो साल रहेगा, ये तो हमेशा रहेगा, इतने परसेंटेज लोगों को हो जाएगा. दैट इज नॉट फॉर ऑल ऑफ अस टू थिंक अबाउट. वो चीज जो आई थी वो खत्म, गॉन फॉर एवर, कोई असर नहीं कर रही अब ये किसी के भी जीवन के ऊपर. सो ये 10 संकल्प, पावरफुल बींग, पीसफुल बींग, फियरलेस बींग, परफेक्ट हेल्दी बॉडी, प्रोटेक्टेड बाई गॉड्स एनर्जी, फैमिली प्रोटेक्टेड, हॉस्पिटल प्रोटेक्टेड, इंडिया द कंट्री एंड द वर्ल्ड प्रोटेक्टेड, एंड दैट थिंग विच हैड कम ऑन द प्लैनेट इज गॉन फॉर एवर, नेवर टू कम अगेन. ये बार बार दोहराइए. सुबह ये 10 संकल्प करिए, उसको विजुअलाइज कीजिए. रात को सोने से पहले ये 10 संकल्प कीजिए, उसको विजुअलाइज कीजिए. खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले 5 सेकेंड रुकिए, इन संकल्पों को रिपीट कीजिए. क्योंकि जो संकल्प हम बार बार रिपीट करेंगे वो यहाँ की हमारी सोच बन जाएगी. इट विल बिकम आर नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग. ये हाई वाइब्रेशनल थॉट्स हैं, ये हमारी दूसरी ऑर्डिनरी थॉट्स को रिप्लेस करते हैं. और जैसा संकल्प वैसी सिद्धि, संकल्प से सिद्धि होती है. तो संकल्प श्रेष्ठ करें और सिद्ध करते जाएं. दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट नाउ, टेकिंग केयर ऑफ आवर माइंड्स, इंक्रीजिंग आवर इमोशनल फिटनेस, क्रिएटिंग अ हाई वाइब्रेशनल एनर्जी फील्ड एंड हीलिंग पीपल हु आर वर्किंग विद अस एंड ऑल्सो ऑल ऑफ देम हु आर कमिंग टू आवर हॉस्पिटल. दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट नाउ. आई एम श्योर आप ये सब करना जरूर शुरू करेंगे, आज से ही शुरू करेंगे. और आपके लिए जो ऑनलाइन राजयोग मेडिटेशन कोर्स प्लान किया गया है, जो आपको डिटेल्स अभी दी जाएंगी, तो वो ऑनलाइन कोर्स होगा. आप अपने घर से आराम से बैठकर बस आधा पौना घंटा निकाल कर एक घंटा ये ऑनलाइन कोर्स 1 वीक के लिए कीजिएगा. परमात्मा से कनेक्शन इस समय बहुत जरूरी है. जब कोई भी पावर बाहर सही जवाब न दे पाए, क्योंकि बाहर की जो भी पावर्स हैं उनके पास इस चीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उनको थोड़ा समय लगेगा. चाहे पॉलिटिकल पावर है, चाहे साइंटिफिक पावर है, ये सब शक्तियां हैं और हम रोज अपने जीवन इन सभी शक्तियों के साथ ही चलाते हैं. लेकिन जब ये शक्तियां किसी बात का आंसर नहीं दे पा रहे हैं, पूर्ण रीति से समाधान नहीं दे पा रहे हैं, तो 2 शक्तियों की जरूरत है. गॉड्स पावर, परमात्मा की शक्तियां, इनर पावर, आंतरिक शक्तियां. इन 2 शक्तियों को पकड़ लें और श्रेष्ठ संकल्प करके खुद का भी ध्यान रखें और औरों की भी सेवा करें. तो उसके लिए ये राजयोग मेडिटेशन कोर्स जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच. ओम शांति.
ओम शांति. दोस्तों, आज के समय में अगर हम देखें कि एक शब्द जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं, अलग अलग किताबों में उसे ढूंढ रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, वो शब्द है इम्यूनिटी. दोस्तों, इम्यूनिटी एक बहुत ही यूनिक शब्द है और ये हमारे शरीर की बीमारी को रोकने की शक्ति को प्रदर्शित करता है. अक्सर लोग इसे इस शब्द से ही रिलेट करते हैं. अगर हम इम्यूनिटी के बारे में बात करें, तो जब आज एक बहुत बड़ी बीमारी ने संपूर्ण विश्व पर इकट्ठे प्रहार किया है, तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसका शरीर इस बीमारी से बचा रहे. और कभी भूले भटके गलती से बीमारी हो भी जाती है, तो उसके शरीर के अंदर इतनी शक्ति हो कि वो इस बीमारी का सामना करके इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सके. लेकिन आज हम दोस्तों इस इम्यूनिटी को एक अलग परिप्रेक्ष्य से देखेंगे. जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो अक्सर हमारे सामने शरीर की इम्यूनिटी ही सामने आती है और आवश्यक है, जरूरी है कि हम अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाएं. लेकिन इससे भी ज्यादा आवश्यक है कि इम्यूनिटी का एक और पहलू हमारे सामने, हम उसको समझें. दोस्तों, हम जब भी अपने बारे में बात करते हैं, तो हम ह्यूमन बीइंग्स बोलते हैं, अर्थात एक शरीर और उसके अंदर रहने वाली एक चेतन शक्ति, जिसको हम आत्मा या जिसको हम मन, बुद्धि और संस्कार के रूप से जानते हैं. जब भी कोई बीमारी आती है, तो हमारे शरीर पर तो प्रभाव करती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी आत्मा यानी हमारे मन के ऊपर भी बहुत गहरा प्रभाव करती है. और आज के समय को ही आप देखें, आज जब हम बीमारी की बात करते हैं, तो बीमारी अपने साथ क्या फीलिंग्स लेकर आई है. बीमारी कीटाणु तो लाई है, शरीर को तो अफेक्ट करती है, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे मन पर भी बहुत गहरा असर डालती है। डर, चिंता, भय, कल क्या होगा, अनसर्टेनिटी, ये नेचुरल फीलिंग्स हैं जो किसी भी बीमारी के साथ एसोसिएटेड होती है। और जहां एक बीमारी शायद 100 लोगों में से आधे एक दो लोगों को ही प्रभावित करे, लेकिन इसके साथ जो एसोसिएटेड है डर, चिंता और भय, ये आज 90-95% लोगों को ऑलरेडी प्रभावित और इन्फ्लुएंस कर चुका है। और अगर साइंटिफिक रूप से इसको देखें तो यदि किसी व्यक्ति के मन में भय, चिंता और डर जैसी फीलिंग्स हैं तो उसकी इम्यूनिटी सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है, साइंटिफिकली प्रूवन है। उसके अंदर, शरीर के अंदर जो बीमारी को रोकने की जो शक्ति है, उसका सामना करने की शक्ति है, वो कम हो जाती है। तो इसलिए अगर हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है तो इम्यूनिटी का फोकस ना केवल हमारे शरीर पर होना चाहिए, लेकिन मन की इम्यूनिटी भी हमको बढ़ानी पड़ेगी। और आज इसी के बारे में हम बहुत सुंदर रूप से एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो तीन इंपॉर्टेंट जो बेस है, जो आधार स्तंभ है इम्यूनिटी बढ़ाने के, वो है प्रॉपर डाइट, दूसरा है प्रॉपर एक्सरसाइज और तीसरा है प्रॉपर रेस्ट। बहुत बहुत जरूरी है कि आज हम प्रॉपर भोजन खाएं। आज देखें कि हर व्यक्ति भाग रहा है, कोई काढ़ा पीता है, कोई अच्छा दूध हल्दी का पीता है, कोई अलग अलग दवाइयां ले रहा है, कैप्सूल ले रहा है, कोई अलग अलग प्रकार के लड्डू भी ले रहा है, कोई किताबें पढ़ के किसी से पूछ कर कोई और मेडिसिन ले रहा है। और ध्येय क्या है कि शरीर की इम्यूनिटी को हम लोग बढ़ाएं, शरीर की बीमारी को रोकने की जो शक्ति है उसको हम लोग बढ़ाएं। और फिर भी ये होते हुए फिर भी बहुत लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है। इसी प्रकार लोग एक्सरसाइज भी करते हैं और आराम भी करते हैं, लेकिन दोस्तों जहां शरीर को उचित भोजन देने की आवश्यकता है, उसी प्रकार मन को भी उचित भोजन देना बहुत जरूरी है। शरीर की एक्सरसाइज के साथ साथ मन की एक्सरसाइज, आत्मा की एक्सरसाइज करना भी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और इसी प्रकार दोस्तों, जब हम आराम करते हैं तो शरीर के आराम के साथ साथ मन को भी आराम, मन को भी सुकून देना बहुत आवश्यक है। तो आइए हम इन्हीं तीनों चीजों को, तीनों पहलुओं को अलग अलग रूप से समझते हैं। दोस्तों, भोजन के बारे में यदि मैं आपको कुछ बताऊं तो भोजन स्वस्थ और अच्छा होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन चार या पांच बातें आप जरूर अपने भोजन में ध्यान रखें। पहली जो बात मैं आपको बताना चाहूंगा वो है हमारे भोजन में उचित मात्रा, एक्स्ट्रा नहीं, उचित मात्रा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की होनी चाहिए। नेचुरल फ्रूट्स और नेचुरल वेजिटेबल्स जितना हम खाएं इनको, वो हमारे शरीर को नेचुरल विटामिन्स और हमारे इम्यून सिस्टम को सिग्निफिकेंटली बेटर करता है। तो रोज खाने से पहले, खाने के साथ या बाद में नहीं, खाने से आधे घंटे पहले, एटलीस्ट 15 मिनट पहले आप फल और फूलों का उपयोग जरूर करें, वेजिटेबल्स का उपयोग जरूर करें, सलाद जरूर खाएं, यह हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। एक्स्ट्रा नमक, एक्स्ट्रा अचार, एक्स्ट्रा पापड़, ऐसी कोई भी चीजें यदि हम उपयोग करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो जाती है दोस्तों। इसी प्रकार अगर हम देखें तो ऑयल्स और घी यदि हम खाएं या ना खाएं, ये लोग आप पूछते हैं तो जरूर खाइए, लेकिन एक्स्ट्रा वर्ड जो है उसका हमें ध्यान रखना है। तेल आप कोई भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उन तेलों को आप नित्य उनको रोटेट करें, हर 10 से 15 दिन में आप अपने घर के ऑयल्स को रोटेट करें। इसी प्रकार घी यदि आप खाना चाहते हैं तो आप जरूर लें, आधा चम्मच, एक चम्मच जरूर लें, लेकिन रोज सब चीजों के अंदर घी का अत्यधिक उपयोग करना ये हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत हानिकारक हो जाता है। नेचुरली जो हम लोग घर में कर्ड यानी दही बनाते हैं, छाछ लेते हैं, मठा बनाते हैं, ये सब चीजें हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। इनका जितना मैक्सिमम आप उपयोग करेंगे वो बेनिफिट हमको देगा। दोस्तों, भोजन के अंदर एक एंटिटी होती है जिसको हम ट्रांस फैट्स कहते हैं, यानी तला हुआ भोजन। कई बार हम लोग भोजन को बनाते हैं और बनाकर उसको आधा तल के रख देते हैं। आप मार्केट भी जाते होंगे, कुछ कुछ आपको पैक्ड ऐसा सामान मिलता है जो कि आधा तला हुआ होता है। कभी कभी कुछ लोग बाजार भी चले जाते हैं और सामने देखते हैं कि भाई आधा पका हुआ कुछ समोसा रखा है और वो खाना चाहते हैं, उसी समोसे को तलकर वो खा लेते हैं। दोस्तों, ये अपने भोजन में इन चीजों का उपयोग करना, आधा तल के एक चीज को दोबारा तलना, ये हमारे शरीर के लिए एक पॉइजन का रूप ले लेता है। ये ट्रांस फैट्स रिलीज करता है जो भोजन को टेस्टी तो बनाते हैं लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत हानिकारक। इसीलिए दोस्तों बहुत आवश्यक है कि भोजन को हम संयमता से खाएं। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और उसके बाद हल्का भोजन जो हम आफ्टरनून में लें और बहुत ही हल्का भोजन हम लोग नाइट में लें। तो ये एक ग्रेडेड पिरामिड की तरह हमारी डाइट होनी चाहिए। कुछ तीन या चार बातें जो मैं आपको नेचुरल हैबिट्स के रूप में बताना चाहूंगा वो ये है कि जरूर आप रात का भोजन 9 बजे के बाद ना करें, ये बहुत आवश्यक है, बहुत बहुत जरूरी है कि जितना लेट हम भोजन करेंगे वो हमारे लिए बहुत बहुत हानिकारक होगा। मैदा और ऐसी चीजों का उपयोग करना जिनमें फाइबर्स नहीं है ये हमारे शरीर को बहुत बहुत नुकसान देता है, क्योंकि ये हमारी आंतड़ियों में बहुत दिनों तक फंसा रहता है, 2 से 3 दिन तक फंसा रहता है और ये शुगर को भी सिग्निफिकेंटली बढ़ाता है और पेट को भी खराब करता है। तो कभी कभी आप सब चीजों को ले सकते हैं, लेकिन प्रिडोमिनेंटली यानी मेन रूप से मूल रूप से देखा जाए तो प्लांट बेस्ड डाइट जो है वो बहुत बेनिफिशियल है। मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि साइंस में अत्यधिक स्टडीज आ चुकी है, बहुत पावरफुल स्टडीज आ चुकी है जो हमारे सामने स्पष्ट हमको करती है कि प्लांट बेस्ड डाइट अगर हम लेते हैं राधर देन एनिमल प्रोटीन बेस्ड डाइट वो 40% मॉर्टेलिटी यानी डेथ के चांसेस को डिक्रीज कर देती है। इतनी पावरफुल नेचुरल वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड डाइट हमारे शरीर को बेनिफिट देती है। तो ये भोजन के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम लें वो हमको बहुत बेनिफिट देगा। लेग्यूम्स हैं, नट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, और जो आप लेना चाहें काढ़ा है, ऐसी चीजों का तो उपयोग आप समय अनुसार जरूर करें, लेकिन इन सब चीजों को आप बैलेंस रूप से दें तो आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती रहे। पानी का भी 2 से 2.5 लीटर नित्य उपयोग करना ये बहुत आवश्यक है, कंज्यूम करना ये बहुत आवश्यक है। अगर हार्ट के आप मरीज हैं या कोई ऐसी बीमारी है कि हार्ट की पंपिंग कम है तो पानी की मात्रा को हमको कम उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों ये भोजन की जब हम बात करते हैं तो शरीर को तो हमने अच्छा भोजन खिला दिया, लेकिन आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस आई है जिसको हम लोग न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी कहते हैं, और वो ये कहती है कि आप अच्छा भोजन कर रहे हैं, बहुत पावरफुल भोजन कर रहे हैं, लेकिन उस पावरफुल भोजन को आप अच्छे मन से स्वीकार नहीं करते, आप उसके अंदर जो एनर्जी देते हैं वो पावरफुल नहीं है। तो यदि हमारे मन के संकल्प या मन की शक्ति उस भोजन के प्रति सकारात्मक और पावरफुल नहीं है तो वो भोजन शक्तिहीन हो जाता है, या यूं कहें कि वो भोजन हमारे शरीर को कोई इम्यूनिटी प्रदान नहीं करता। तो आप सोचिए कि एक तरफ तो हम लोग सब चीजें प्रॉपर और अच्छा अपने शरीर को दे रहे हैं और दूसरी तरफ मन से भय, चिंता और डर की वाइब्रेशंस हम भोजन में डाल रहे हैं, तो क्या वो भोजन हमको शक्ति देगा? न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी कहती है कि वो भोजन हमारे लिए शक्तिहीन है। तभी यथार्थ इम्यूनिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी, अर्थात संकल्पों के द्वारा अपने भोजन को और अपने पानी को एनर्जाइज करना, और ये साइंस आज इसको स्पष्ट कर चुकी है। डॉक्टर मसारू इमोटो ने बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने यही देखा कि यदि हम पानी को पीने से पहले केवल कुछ सेकंड का, कुछ पल का हम लोग विराम लेते हैं और मन से ये संकल्प हम उत्पन्न करते हैं कि ये पानी मेरे तन और मन को शक्तिशाली और शांत बनाएगा, जब हम भोजन के लिए ये संकल्प अंदर से उत्पन्न करते हैं, उसको ये वाइब्रेशंस देते हैं, ये पावरफुल संकल्प देते हैं कि ये भोजन जो है मेरे तन और मन दोनों को सुकून और शांति देगा, तो वो भोजन के अंदर शक्ति आती है। जब इन्होंने माइक्रोस्कोप के द्वारा वाटर की ड्रॉपलेट्स को स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि पॉजिटिव इमोशंस जब हम भोजन को देते हैं या पानी को देते हैं तो उसका स्ट्रक्चर, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। इसी प्रकार जब चावल के दानों को 2 जगह रखा गया, एक ही जगह से लेके, और एक को हेट की फीलिंग दी गई और एक को लव की फीलिंग, तो उन्होंने देखा कि जिस भोजन को लव की फीलिंग दी गई उसके अंदर कोई भी फंगस नहीं लगी और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई। यानी दोस्तों आज आवश्यक है कि इम्यूनिटी 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 हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन इम्यूनिटी के लिए सेल्फ फोकस और मन की तरफ ध्यान देना ये बहुत आवश्यक है। तो आज से हम क्या करेंगे, आज से जब भी हम भोजन खाएंगे, पानी पिएंगे, तो जैसे हम लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे में जाते हैं हमको प्रसाद मिलता है, तो प्रसाद खाते हम क्या कहते हैं, होता वो साधारण सा है, कोई स्पेशल नहीं, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि भाई बड़े मन को सुकून मिला। क्यों मिलता है? क्योंकि उसके अंदर वाइब्रेशंस होती हैं। हम लोग चरणामृत कई बार यूज करते हैं, क्या है चरणामृत, पानी ही तो है और कुछ भी नहीं है, लेकिन उस पानी को हम लोग ऐसे ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके अपने मुंह में लेके और अपने सर पर भी रखते हैं ताकि वो हमको एनर्जी दे, क्योंकि वाइब्रेशंस जो है हमारे मन के संकल्प हैं वो हमारे भोजन और पानी को शक्तिशाली बनाते हैं। तो यदि हम यथार्थ इम्यूनिटी अपने शरीर के लिए लाना चाहते हैं तो बहुत आवश्यक है कि उचित और अच्छा भोजन भी हम लोग खाएं, प्रॉपर भोजन भी खाएं, गरिष्ठ नहीं लेकिन शक्तिशाली भोजन खाएं और उसके साथ साथ उसको शक्तिशाली बनाएं अपने संकल्पों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने सकारात्मक विचारों के द्वारा। आप केवल एक दिन अपने घर में इसको करके देखिए, मैं आपको 10 दिन के लिए एक्सरसाइज नहीं बताऊंगा, केवल आज जब आप इस बात को सुन रहे हैं एक दिन के लिए अपने घर में शांति से भोजन बनाइए, शांति से भोजन खाइए और परमात्मा की याद में भोजन बनाइए और परमात्मा की याद में भोजन खाइए। आप देखिए कि भोजन और पानी की वाइब्रेशंस कितनी पावरफुल हो जाती है, वो कितना शक्तिशाली हो जाता है। आप खाएंगे भी ना तो आपको बहुत अच्छी सुकून की अनुभूति होगी और आपको बहुत अच्छी रात को नींद आएगी, आप कहेंगे कि बहुत आनंद हो जाएगा। ये हमारे नेचुरल इम्यूनिटी को बढ़ाने का एक बहुत सुंदर तरीका है दोस्तों। इसी प्रकार जब हम अपने जीवन में एक्सरसाइज की बात करते हैं, हमारे स्वस्थ जीवन का जो दूसरा पावरफुल आधार स्तंभ है वो है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज जो है हर व्यक्ति के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसके बारे में मैं आपको 3 बातें बताना चाहूंगा कि यदि हम लोग अपने जीवन में रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो आप यूं समझिए कि आप अपनी उम्र में रोज 1 घंटा हेल्दी जोड़ रहे हैं, 1 घंटा एक्सरसाइज और 1 घंटा आपकी उम्र बढ़ती चली जा रही है। रोज 30 से 40 मिनट केवल वॉक करना आपका स्वास्थ्य किसी भी प्रकार का हो, आप कुछ भी करते हो, चाहे आप मोटे हो, चाहे आप पतले हो, चाहे आप कम उम्र के हो, चाहे आप बुजुर्ग हो, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अपनी बीमारी का ध्यान रखते हुए चलना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि ब्रेन लव्स द एक्सरसाइज, इट्स लाइक अ जिम। ये बहुत बहुत शक्ति हमारे शरीर को, हमारे मन को नेचुरल एक्सरसाइज देता है। जो बच्चे रोज एक्सरसाइज करते हैं उनकी अटेंशन पावर, उनका फोकस, उनकी परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। आप देखिए पहले हम लोग अपने बचपन में क्या करते थे, ये नेचुरल टेलीविजन और ये वीडियो गेम्स वगैरह तो कुछ भी नहीं होते थे। आजकल मोबाइल पर बच्चे लगे रहते हैं, बड़े भी लगे रहते हैं, लेकिन पूरे समय इसमें हमारी एनर्जी निकल जाती है और हम जो हमारी प्रकृति है, जो सौंदर्य प्रकृति का है, जो नेचर ने हमको इतने सुंदर एनवायरमेंट दिया है, उससे हम वंचित रह जाते हैं, उससे हम दूर रह जाते हैं। हम नेचुरल जिम्स की तरफ भी ना जाकर हम लोग आज आर्टिफिशियल जिम्स की तरफ जाते हैं, घर में जिम बनाते हैं। तो मेरा तो आपसे ये अनुरोध रहेगा कि बाहर निकलिए, नेचर के पास जाइए, प्रोटेक्शन देते हो आज के समय अनुसार नेचुरल प्रोटेक्शन लेते हुए मूव करना बहुत आवश्यक है। दोस्तों जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसका हमारे शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे तो हार्ट अटैक जैसी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां, पेट की आंतड़ियों की बीमारियां, वायरल इलनेसेस, ये सब बीमारियां सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावरफुल हो जाती है। यदि हम देखें तो जैसे ही हम मूव करते हैं तो हमारा हार्ट सिग्निफिकेंटली ब्लड पंप करता है, हर ऑर्गन की तरफ ब्लड सिग्निफिकेंटली ज्यादा जाता है, ब्रेन की तरफ भी ज्यादा जाता है, तो ब्रेन के जो पॉजिटिव न्यूरॉन्स हैं, जो ग्रे मैटर है वो बढ़ जाता है। और जैसे ही ग्रे मैटर हमारा ब्रेन का बढ़ता है, हमारी सोचने और समझने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, डिसीजन पावर जो है हमारी, जजमेंटल पावर जो है वो पावरफुल हो जाती है, हमारी लर्निंग पावरफुल हो जाती है। और ये भी कहा गया है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो गाबा हार्मोन जो है वो हमारे लिए एक कामिंग हार्मोन का काम करता है, हमको शांत रखता है, उस हार्मोन की प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। आज साइंस ये कहती है कि जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं उम्र में तो हमारे न्यूरॉन्स की डेथ होती जाती है, यानी ब्रेन की जो नर्व सेल्स है वो डाई आउट होते जाते हैं। तो जब हम मूव करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर जो है BDNF, ये भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है और न्यूरॉन्स की प्रोडक्शन हमारे ब्रेन में बढ़ जाती है। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी जो मैं देख रहा था वो ये बताती है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमको कैसी फीलिंग आती है, हमको अच्छा लगता है, हमको अपने आप से तनाव मुक्त हम फील करते हैं। क्यों? क्योंकि एंडोर्फिन्स और गाबापेंटिन ऐसे जो हॉर्मोन्स हैं, ये हॉर्मोन्स बढ़ने के कारण, डोपामाइन बढ़ने के कारण, हमारे जो ब्रेन के हैप्पी सेंटर्स हैं, जो खुश रखने वाले सेंटर्स हैं, वो हाइपर एक्साइट हो जाते हैं, जो बढ़ जाते हैं। तो हर प्रकार का बेनिफिट जो है एक्सरसाइज से हमारे ब्रेन को नेचुरली मिल रहा है, हर अंग को
नेचुरली मिलता है। तो बहुत आवश्यक है कि रोज आप मूव करिए। यदि किसी कारण आप बाहर नहीं निकल सकते तो घर में मूव करिए। घूमना हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बहुत आवश्यक है। ये हमको बीमारियों से रहित बनाता है। आज अगर हम आपको बताएं तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको हार्ट अटैक की बीमारी के साथ साथ हाइपरटेंशन उसकी भी कंट्रोल रोकथाम के अंदर सिग्निफिकेंटली बेनिफिट मिलता है। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो हम मैं स्टडी देख रहा था उसमें यह बताया गया कि इस कोरोना काल में जहां एक वायरस ने संपूर्ण लोगों पर बहुत ही गहरे रूप से प्रहार किया है, तो कुछ लोग आप देख रहे हैं कि जो 90 इयर्स के हैं, 100 इयर्स के हैं, 80 इयर्स के हैं, वो भी इस बीमारी से उभरकर बहुत सहज रूप से बाहर आ रहे हैं। और जब उनको स्टडी किया गया तो वो दिखाते हैं कि उनका लाइफस्टाइल जो है वो एक्टिव लाइफस्टाइल था, पैसिव लाइफस्टाइल नहीं। वो लोग नित्य एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, और उसको करने के कारण उनके शरीर और मन की इम्यूनिटी बहुत बहुत पावरफुल है। यानी वो उस इन्फेक्शन को बहुत सहज रूप से डील कर सकते हैं। तो आज शरीर के लिए एक्सरसाइज बहुत बहुत आवश्यक है। रोज मूव करिए 30 से 40 मिनट, हफ्ते में 5 से 6 दिन। एक हफ्ते में यदि आप एक्युमुलेट करते हैं एक्सरसाइज को 150 मिनट से 160 मिनट, यह आपके लिए सफिशियंट है। लेकिन नियम बनाना, नियमित रखना, ये बहुत जरूरी है। रोज एक्सरसाइज करना ये बहुत हमारे शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। दोस्तों, जैसे आज हम लोग अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं एक्सरसाइज के द्वारा, इसी तरह आज हम कुछ अपने मन के लिए भी एक्सरसाइज करें। आप देखो, हमारा मन रोज संकल्प करता रहता है, एक के बाद एक थॉट्स करता रहता है। लेकिन आज हम देखें कि एक मानव जो है अपने ही द्वारा निर्मित एक जाल में फंस चुका है। आप एक मोबाइल फोन को देखें, एक टेलीविजन को देखें, कंप्यूटर को देखें, सवेरे से उठकर शाम तक हम लोगों को यह अनुभव होता है कि जैसे आज हम लोग चेंज हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा। हमारा जीवन जो है कंप्लीटली टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है। और आज ये बताया गया है कि एक मानव यदि एक दिन में उसका स्क्रीन टाइम देखा जाए तो 5 से 6 से 8 घंटे तक चला जाता है, जो कि एवरेज 1 से 2 घंटा मैक्सिमम होना चाहिए। और ये हमारे ब्रेन पर, हमारे रिलेशंस पर, हमारे प्रोफेशनल परफॉर्मेंस पर, हमारे एंग्जाइटी लेवल पर, साइकोलॉजिकल स्टेटस पर ये मोबाइल और टेक्नोलॉजी बहुत बहुत गहरा प्रभाव डाल रही है। आज हम लोग डर्क को कंज्यूम करते हैं, लगातार नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आप चैनल्स को खोले, व्हाट्सएप को देखे, फेसबुक, ट्विटर, जो भी आप सोशल मीडिया देखे, हर कोई मैसेजिंग में बिजी है सवेरे से लेकर शाम तक। और 90-95% जो हमारे मैसेजेस हैं वो यूजलेस, वेस्ट और नेगेटिव मैसेज होते हैं। इस एनर्जी को हम लोग अपने मन में एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद इसी को हम लोग बाकी उस फॉरवर्ड बटन को दबा के हम लोग दूसरों को भी ये ट्रांसफर कर देते हैं। तो दोस्तों, आज यदि हम अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए एक एक्सरसाइज और करें कि रोज 1440 मिनट हमको मिलते हैं और उसमें से केवल 160 मिनट रोज अपने लिए निकालें और उन मिनट्स को हम लोग लेबल करें ई फ्री मिनट्स। रात को सोते हुए 1 घंटा, जब हम सोने से पहले 1 घंटा हम लोग मोबाइल, टेलीविजन और किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया का उपयोग ना करें, उसको ऑफ कर दें और कुछ अच्छा पढ़ें, कुछ अच्छा लिखें, कुछ अच्छा सुनें। जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे, रात को सोने जाएंगे, तो हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कनेक्टेड होगा, हमको नींद बहुत पावरफुल आएगी। इसी प्रकार जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो व्हाट्सएप और फेसबुक गुड मॉर्निंग ना करें, स्वयं से बात करें, परमात्मा से बात करें, मेडिटेशन का अभ्यास करें, कुछ अच्छा पढ़ें, कुछ अच्छा म्यूजिक सुने, कुछ अच्छी बातों को लिखें, इस तरह अपनी दिनचर्या को आरंभ करें। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने मन को शक्तिशाली बनाते हैं, जैसे अपने मन को हम लोग फ्यूल देते हैं। और इसी प्रकार दोस्तों, जब हम पूरे दिन कार्य करते हैं और शाम को घर पर आते हैं, अपने परिवार के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, तो जब भी हम बातें करें तो एक घर में अनेक घर ना बनाए, अपने मोबाइल को शट ऑफ करके उनसे आंखों में आंखें डालकर प्यार से बातें करें, उनकी बातों को सुने, उनके बच्चों की बातों को, हस्बैंड वाइफ की एक दूसरे की बातों को, माँ बाप की बातों को हम लोग समझें। ये हमारे संबंधों को सुंदर बनाता है, ये हमारे संबंधों को शक्तिशाली बनाता है। यदि हम ऐसा करते हैं तो ये 160 मिनट हमारे मन को और हमारे शरीर की इम्यूनिटी को पावरफुल तरीके से बढ़ा देते हैं। पूरे दिन उसी मोबाइल के कंट्रोल में रहने से हम अपने मन का संयम और शरीर का बैलेंस संपूर्ण रूप से खो बैठते हैं। कहते हैं, इसको हम लोग डिजिटल डिटॉक्स कहते हैं, कभी कभी अनप्लग होना कह देते हैं, कहते हैं ना हम लोग कई बार कि भाई मुझे छोड़ दो, अब मैं कुछ नहीं चाहता, मैं थोड़ा शांति से रहना चाहता हूं। तो बहुत आवश्यक है इस शांति को सहज रूप से इस डिजिटल टेक्नोलॉजीज को ऑफ करके अपने आप से भी बात करें। आपको अच्छा लगेगा कि भाई हमें भी अपने लिए समय मिलता है दोस्तों। इसी प्रकार तीसरा जो हमारे जीवन का आधार स्तंभ माना गया है वो है नींद यानी आराम। हमारे शरीर के लिए आराम और स्लीप बहुत आवश्यक है। मूलतः देखा जाए तो 6 से 8 घंटे की स्लीप हमारे शरीर को चाहिए होती है, और जो व्यक्ति यथार्थ रूप से नींद को लेता है तो हमारे ब्रेन के हर पार्ट को, चाहे उसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहें, चाहे उसको फ्रंटल कॉर्टेक्स कहें, चाहे पैराइटल लोब कहें, चाहे टेम्पोरल लोब कहें, चाहे ऑक्सीपिटल लोब कहें, हर लोब की एक अपनी पावर है। सोचने की पावर, समझने की पावर, डिसीजन लेने की पावर, इमोशनल कंट्रोल लेने की पावर, इसी तरह जजमेंट्स की पावर, मेमोरी की पावर, हर पावर की, बोलने की जो शक्ति है, उसको करने की जो शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, हर पावर के ऊपर हमारी नींद का बहुत बहुत गहरा असर लगता है। तो इसलिए आपकी नींद हाई क्वालिटी नींद होनी चाहिए। रात को सोए तो नाइट ऑफ, कोई कॉफी, कोई अगेन डिजिटल, जैसे मैंने आपको बताया था, टेक्नोलॉजी को हम ऑफ करें 1 से 2 घंटा, और शांति से हम लोग परमात्मा की याद में सोए, अच्छे संकल्पों से सोए, पूरे दिन का खाता एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह क्लोज करके सोए। तो इस प्रकार की जब हम नींद लेते हैं वो क्वालिटी नींद हमको आती है तो हमारा शरीर और हमारा मन रिजुवेनेट करता है। लेकिन मेरे मन में हमेशा एक बात आती थी कि जैसे हम लोग अपने शरीर को नींद देते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा मन दुखी है, हमारा मन चिंतित है, तो चाहे आप शरीर को 10 घंटा के बिस्तर पर लेटा दें तो क्या आपको नींद आएगी? आएगी या नहीं आएगी? नेचुरली आप कहेंगे भाई मैं तो करवटे ही बदलता, या हम उठेंगे तो हम कहेंगे आज हमको आनंद नहीं आया, नींद में वो मजा नहीं आया। और क्यों होता है? क्योंकि नींद की आवश्यकता शरीर से ज्यादा मन को होती है। यूं हम कहें कि आराम की आवश्यकता शरीर से ज्यादा मन को होती है। दोस्तों आज के समय में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इस बात को और इसके पीछे जो भावना है उसको समझना बहुत आवश्यक है। जहां आज हम लोग अपने घर में क्वारंटाइन है, अपने घर में लॉकडाउन के अंदर है दोस्तों, इसी को अगर हम यथार्थ रूप से समझें तो बहुत जरूरी है कि घर में तो हम लॉकडाउन है लेकिन क्या हमारा मन भी तो लॉक नहीं है? क्या मन को हम लोग क्वारंटाइन में हम डालने की कोशिश करते हैं? मन को क्वारंटाइन में डालना, मन को आराम देना, इमोशनल रेस्ट देना, स्पिरिचुअल रेस्ट देना, इसी को मेडिटेशन कहा जाता है। दोस्तों आज से 10 से 20 साल पहले जो मोबाइल फोन हम लोग उपयोग करते थे तो मोबाइल फोन केवल बात करने के काम आता था और वो 4 से 5 दिन उसकी बैटरी चलती थी। लेकिन जब हम मोबाइल फोन को हमने स्मार्टफोन में परिवर्तित कर दिया है तो मोबाइल फोन फटाफट डिस्चार्ज हो जाता है और रोज हमको ना केवल 4-5 बारी चार्ज करना पड़ता है, कई बारी पावर बैंक की भी जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार आज हम लोग भी स्मार्ट ह्यूमन बीइंग्स हैं। पहले हमारी जिंदगी में सुख चैन और शांति होती थी, आराम से बैठते थे, खेतों में बैठते थे, एंजॉय करते थे, लेकिन आज के लोगों को इस बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है। हमको अपनी भागती दौड़ती जिंदगी में इस चीज का समय ही नहीं मिलता कि हम अपने आप से स्वयं से भी बात करें। और आज अपने आप से हम पूछें कि क्या हम अपने मन को भी सुकून और मन को भी हम कुछ पल आराम दे पाते हैं? वो मन को आराम दे, वो मन को सुकून देना, मन को चार्ज करना, मन को अच्छे संकल्प जनरेट करना सिखाना, अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाना, यही प्रक्रिया जो है इसको मेडिटेशन कहा जाता है। ये एक लैटिन वर्ड मेडिटेशियो यानी जो हीलिंग है, टू कॉन्टेम्पलेट, टू थिंक, ये एक बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है। और किसके बारे में सोचेंगे? केवल शरीर के बारे में नहीं, लेकिन अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने संस्कार में। हमारा एक एक संकल्प हमारे भविष्य का निर्माण करता है। अगर हम अपने संकल्पों को, अपनी आत्मा के द्वारा जो उत्पन्न हो रहे संकल्प हैं, उनको हम शक्तिशाली बनाते हैं, उनको हम शांति से परिपूर्ण करते हैं, उनको हम प्यार से भरते हैं, उनके अंदर हम लोग खुशी डालते हैं, शक्ति डालते हैं, ज्ञान डालते हैं, पवित्रता डालते हैं, तो ऐसा जो जीवन है, ऐसा जो मन है, वो आनंद की अनुभूति करता है, वो सुख की अनुभूति करता है। आज हमने अपने जीवन में खुशी को हटाकर क्रोध भर लिया है, प्यार को हटाकर हमने अपने जीवन में इरिटेशन को भर लिया है, लोगों के प्रति घृणा, ईर्ष्या, लोगों के प्रति नेगेटिव भावनाएं, लोगों के प्रति एक्सपेक्टेशंस रखना, उसे लड़ना, उनकी बातों को ना समझना, बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग की फीलिंग कराना, लोग मेरी बात नहीं समझते, मैं उनकी बात नहीं समझता, और ऐसी फीलिंग आने के कारण आज हमारा मन, हमारी आत्मा कमजोर हो चुकी है। दोस्तों, राजयोग मेडिटेशन एक बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है, एक ऐसी सुंदर एक्सरसाइज है जो हमारे मन को, हमारी आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। और आप सोचें कि जैसे आपके पास एक बहुत बड़ी मस्जिद गाड़ी है, लेकिन उस मस्जिद गाड़ी की बैटरी खराब है तो क्या वो चलेगी? वो नहीं चल पाएगी। इसी प्रकार दोस्तों, ये जो हमारी सुंदर गाड़ी है, इस गाड़ी को चलाने वाला जो प्रोसेसर है, जो बैटरी है, वो हमारी आत्मा है। इस तरीके से आप इस रूप को समझें। और जब वो बैटरी, वो प्रोसेसर, वो पावरफुल हो जाता है, उसकी क्लीनिंग हम लोग कर देते हैं, उसको शक्तिशाली संकल्पों से हम लोग भर लेते हैं, उसको प्यार के संकल्पों से भर लेते हैं, स्वयं के लिए भी और हर व्यक्ति, हर आत्मा के लिए भी, अपने संबंधों के अंदर भी, परिवार के लिए, अपने एनवायरमेंट के लिए, अपने देश के लिए, तो वो जो शक्ति है वो परिवर्तन का एक ज्वाला रूप ले लेती है। और यही परिवर्तन हमारे लिए इम्यूनिटी का कार्य करता है, यही परिवर्तन हमारे शरीर और हमारे मन को इम्यून बना देता है, किसी भी बीमारी से रोकने में हम कामयाब होते हैं, एक औरा की तरह हमारे अंदर कार्य करता है। दोस्तों, आइए कुछ पल हम लोग इस राज्य का मेडिटेशन का अनुभव करें। मैं आपको कुछ संकल्प दूंगा और उन संकल्पों को आप अपने मन के अंदर एक इमेज के रूप में निर्मित करें, अपने आप को देखें और देखते देखते आप अनुभव करेंगे कि आपका मन एक शक्तिशाली प्रोसेसर के रूप में कार्य कर रहा है। शांति से हम लोग बैठे, अपने शरीर के एक एक अंग को हर श्वास के साथ धीरा छोड़े जाए, अपना सारा ध्यान अपनी आत्मा, अपने मन के ऊपर केंद्रित करें। मैं एक शक्तिशाली, शांत, पवित्र, प्रेम से परिपूर्ण, आनंद से परिपूर्ण, ज्ञान से ओतप्रोत एक आत्मा, एक दिव्य ज्योति, एक गाड़ी के अंदर रहने वाली एक शक्तिशाली बैटरी, मेरे जीवन का संपूर्ण कंट्रोल मेरे अंदर है। अनुभव करें, परमपिता परमात्मा से प्रेम की किरणें, खुशियों की शक्तियां, प्यार का झरना, पवित्रता की चमकती हुई लाइट, ज्ञान का प्रकाश मेरी आत्मा को आनंद में स्थिति में ले जा रहा है। देखिए, मेरा एक एक संकल्प जो मेरी इस मन रूपी फैक्ट्री से निकल रहा है, शक्तिशाली संकल्प है, वो प्यार से परिपूर्ण है, वो शांति से परिपूर्ण है, ये शक्ति मेरे शरीर के एक एक अंग को जाकर शक्तिशाली अनुभव करें। एक पावरफुल ऑरा, शक्तियों का ऑरा, एक प्रोटेक्शन के रूप में, एक पावरफुल काज के रूप में मुझे हर बीमारी से परिस्थिति से लड़ने की शक्ति देता है, उसको सामना करने की शक्ति दे रहा है। मेरा एक एक संकल्प विश्व की हर आत्मा को जो दुख भय अशांति चिंता इन भावनाओं से परेशान है, तड़प रही है, मेरा संकल्प इन सब आत्माओं को शांति प्रदान कर रहा है। देखिए अपने संकल्प, जैसे काली में शुरू आता है इसी प्रकार मेरी शक्तिशाली संकल्प मेरे शरीर और मन की इम्यूनिटी को बढ़ाते चले जा रहे हैं। अनुभव करें परम पिता परमात्मा के सानिध्य में, उनके प्यार में कोई कोई न्याय उनकी सर्व शक्तियों का एक स्वरूप बन चुकी। इसी स्थिति में रहते हुए आज मैं अपना हर कार्य, हर संकल्प, हर संभव जीवन की हर परिस्थिति को सहज रूप से मुस्कुराते हुए खुशी के साथ शांति के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगी।
चल एक मिनट साइलेंस में बैठते हैं। आप सभी अपने को आत्मा निश्चय कर दोनों भ्रुवतों के मध्य मैं एक चमकता हुआ सितारा जिसे सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं मस्तिष्क की 100 अरब कोशिकाओं को और पूरे शरीर में 80,000 अरब कोशिकाओं को पोषित कर रही हैं। ऐसा महसूस करें मैं आत्मा अपने शरीर की 80,000 अरब कोशिकाओं को ज्ञान पवित्रता शांति सत्य प्रेम अतीन्द्रिय सुख आनंद और आठों शक्तियों के साथ एक एक सेल को पोषित कर रही हूं, नरिश कर रही हूं। मैं आत्मा परम धाम निवासी अति सूक्ष्म परम चैतन्य परम ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा शिव की संतान हूं। चाहे मुझ आत्मा को चार्ज कर रही हैं और मुझ आत्मा से ये सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं संकल्प भावना वृत्ति और स्मृति के आधार पर मेरे मस्तिष्क की 100 अरब कोशिकाओं को और शरीर की 80,000 अरब कोशिकाओं को पोषित कर रहे हैं। और मेरी एक एक कोशिका प्रफुल्लित होती जा रही है। महसूस करें ये रियलाइज करें ओम शांति। माय डियर कोलीग्स माय स्वीट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आज का विषय है राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल फॉर हैप्पी माइंड एंड हेल्दी हार्ट। हम सभी समझते हैं, जैसे कि हम लोग सभी मेडिकल कोलीग्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, हम जानते हैं क्या सारे विश्व में सभी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। हालांकि स्टेट ऑफ आर्ट मॉडर्न हेल्थ केयर के बावजूद आज बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, स्पेशली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, गैर संक्रामक रोग जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर्स, सीओपीडी, माइग्रेन, एस्थमा, डिप्रेशन, आप सभी जानते हैं किस तरह से आज हम प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। तो इन सब का क्या इलाज हो सकता है? ये जो राजयोग मेडिटेटिव लाइफस्टाइल है, हम जानते हैं कि सभी जो बीमारियां हैं उनका मुख्य कारण है स्ट्रेस, तनाव। ये सब साइकोसोमेटिक डिजीजेस हैं। साइकी मीन्स माइंड, सोमा मीन्स बॉडी, अर्थात पहले हमारे मन में आती हैं और फिर शरीर में आती हैं। तो ये जो हमारा जो साइकी है, हमारा मन है, ये जब तक हैप्पी नहीं होगा तब तक हमारा हार्ट हेल्दी नहीं हो सकता है, तब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता है। तो राजयोग का अर्थ क्या है? क्योंकि मुख्य बात है हमारा मन, जो मन में जो हमारे विचार, भावनाएं, वृत्ति और स्मृति, जिसे हम टीम भी कह देते हैं, मन के चार एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम इंग्लिश में टीम कह देते हैं। अगर हम पहला थॉट अक्षर लेते हैं, थॉट्स, पहला थॉट्स अर्थात संकल्प, इमोशंस दूसरा अर्थात भावनाएं, और तीसरा एटीट्यूड अर्थात वृत्ति, और चौथा मेमोरीज अर्थात स्मृति। तो मेरी जो सातों एनर्जी, मुझे आत्मा की सातों एनर्जी हैं, वो टीम के माध्यम से ही शरीर में जा सकती हैं। अगर मेरी टीम नेगेटिव हो जाए, मेरा मन दुखी हो जाए, मन अनहैप्पी हो जाए, तो ये एनर्जी मेरे शरीर में एंटर नहीं कर सकती। आत्मा में भले एनर्जी हो किंतु शरीर में एंटर नहीं कर सकती। और ये सातों एनर्जी शरीर की हर कोशिका के लिए आवश्यक है। मस्तिष्क की 100 अरब कोशिकाएं हैं, उनको सबके लिए आवश्यक है सातों एनर्जी। और इसी तरह से आंखों के लिए, नाक के लिए, कान के लिए, मुख के लिए, त्वचा के लिए, पूरी सारे एक एक सेल को आत्मा नरिश करती है। किंतु हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारी जो इच्छाएं हैं, जो आज आप सुन रहे हैं कि आज टाइप ए बिहेवियर, हम सभी प्रेशर में रहते हैं, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी स्टडीज पब्लिश हुई हैं जिसमें बड़ा क्लियरली ये बताया गया है कि जो टाइप ए बिहेवियर कॉरोनरी प्रोन बिहेवियर है, इसमें हमेशा आदमी प्रेशर में रहता है, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर, कॉम्पिटेटिव एग्रेसिव रहता है, पॉलीफेजिक होता है, एक समय बहुत सारे काम कर लेना चाहता है, ये कॉरोनरी प्रोन बिहेवियर है। ऐसे लोगों को तीन गुना से अधिक हार्ट की बीमारियां होती हैं, हार्ट अटैक्स आते हैं, ये ऐसे कई स्टडीज में प्रूव हुआ है। ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होता है, डायबिटीज भी ज्यादा होती है। तो ये जो टाइप ए बिहेवियर है, एंजाइटी है, हमेशा एक अनसर्टेनिटी की वो रहती है कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। जैसे आजकल के टाइम में हम बहुत एंजाइटी देख रहे हैं लोगों में, है ना। तो ये फियर है, एंजाइटी वालों को भी अधिक, क्योंकि ये सारे जो मानसिक जो प्रेशर्स हैं, साइकोसोशल रिस्क फैक्टर्स हैं, ये सारे कन्फाउंडिंग इफेक्ट डालते हैं हमारी साइकी पर, हमारे मन पर, हमारे शरीर पर, क्योंकि सब मल्टीप्लाई कर जाते हैं अंदर। तो अगर आप टाइप ए नेचर के हैं तो आपकी एंजाइटी भी ज्यादा होगी और आपको 2 गुना अधिक चांस है हार्ट अटैक आने के, या इवन अरिथमियाज होने के, वेंट्रिकुलर अरिथमियाज होने के। इसी तरह से अगर आपके अंदर एंगर है, जब काम आपके हिसाब से नहीं होता तो आप एंग्री महसूस करते हैं, और एंगर जो है उससे सिर्फ एंगर की वजह से 3.5 गुना अधिक चांस होते हैं हार्ट अटैक आने के। ऐसी स्टडीज ने इससे, एंगर इज एन इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज। ऐसी डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन भी एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है। तो डिप्रेशन वालों को ये देखने में, जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन 55% चांसेस हार्ट अटैक के बढ़ जाते हैं। इससे से आइसोलेशन है, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट एंड सोशल लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, ऐसे लोगों को भी 3 गुना आइसोलेशन, दे फील आइसोलेटेड, अपने मन की बातों को, भावनाओं को वेंटिलेट आउट नहीं कर पाते हैं अपने साथियों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, तो ऐसे लोगों को भी अधिक हार्ट अटैक आते हैं। आपने सुना भी होगा, पहले कहा जाता था अगर दिल खोल लिया होता यारों से तो ना खोलना पड़ता औजारों से। तो आज जो रिकरेंट एंजियोप्लास्टीज, बार बार हमें इंटरवेंशन करानी पड़ती है, स्टेंटिंग करानी पड़ती है, भले हम मेडिकेटेड स्टेंट्स लगाते हैं, भले हम बाईपास सर्जरीज करते हैं, बट ये पिलेटिव है, इट्स नॉट द अल्टीमेट ट्रीटमेंट। बट डिजीज जो हमारे बचपन से हमारे अंदर जो 4-5 साल की उम्र से स्पेशली 11 साल की उम्र से हमारे जो प्लाक्स बनने लगते हैं धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब वो एक 70% सिग्निफिकेंट डिजीज है तो हमें सिम्टम्स आने लगते हैं या इवन 30% प्लाक 20% प्लाक 30-40% प्लाक जो अनस्टेबल प्लाक होता है जिसमें ज्यादा मात्रा में लिपिड होता है वो क्रैक हो जाता है और क्रैक होकर वहां थ्रम्बस बनता है और हार्ट अटैक वो ट्रिगर्स हार्ट अटैक। ऐसे बहुत सारी स्टडीज आई हैं कि जब आप डेडलाइंस रखते हैं अचानक बिरेवमेंट होती है एंगर गुस्से का एक एपिसोड आता है हॉस्टिलिटी होती है हॉस्टाइल बिहेवियर रिवेंजफुल बिहेवियर हॉस्टाइल बिहेवियर इज रिवेंजफुल बिहेवियर एक लगातार पॉइजनस इफेक्ट होता है कैस्केड इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पर उसका इफेक्ट चलता ही रहता है कंटिन्यूस जब तक उसको माफ नहीं कर देते हैं। सिनिकल बिहेवियर होता है हम दूसरों में अवगुणी देखते रहते हैं पत्नी पति में देखती रहती है पति पत्नी में देखता रहता है माँ बाप बच्चों में बच्चे माँ बाप में डिफेक्ट्स देखते रहते हैं अवगुण देखते रहते हैं। तो ये जो आज नेचर जो हमारी बन गई है तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिससे हमें हार्ट की प्रॉब्लम होती है। हमारे इवेंट्स बढ़ जाते हैं और हमें रिकरेंट कॉरोनरी इवेंट्स होते रहते हैं और हमें प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज तेजी से होता रहता है। इसी खाली ये इसके लिए कारण नहीं है ये ब्लड प्रेशर डायबिटीज को भी बढ़ाते हैं हमारी जीआरडी भी बढ़ाते हैं एस्थमा भी बढ़ाते हैं स्किन डिजीज को भी बढ़ाते हैं है ना। तो ये सारी बीमारियां जितनी भी एनसीडीज हैं ये सब फैक्टर्स वहां पार्ट प्ले करते हैं। तो ये सब हमारे मन में चलता है हमारे विचार पहले इस तरह के विचार चलते हैं फिर उसके बाद भावनाएं बन जाती हैं इंटेंस थॉट्स बिकम इमोशंस और जब उसी इमोशंस में हम ट्रेवल करते रहते हैं उससे वाइब्रेशन निकलते हैं और उसी के वाइब्रेशन हमारे आसपास घूमते रहते हैं और उससे जब उसी थॉट्स में हम लगाते उसी भावनाओं में रहते हैं तो हमारी एटीट्यूड चेंज हो जाती है वृत्ति बन जाती है सर्कल बन जाता है उसी सर्कल में घूमते रहते हैं और फिर हमारे उससे हमारी विजन ही हमें दुनिया ही वैसी दिखाई देने लगती है जैसे हमारे अंदर होता है जो विचार जिस तरह के विचार हो रहे होते हैं फिर उसके अनुसार हमारे विजन बन जाते हैं और विजन से फिर हमारा एटमॉस्फेयर हमारा वायुमंडल हमारे घर का एटमॉस्फेयर हमारे ऑफिस का एटमॉस्फेयर हमारे चैंबर का एटमॉस्फेयर क्लिनिक का एटमॉस्फेयर वो तो पेशेंट को आते ही वो फील होता है जो मेरा एटीट्यूड होता है जब इसे कहते हैं पेशेंट डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। तो अगर स्पिरिचुअल लेवल पे हो कि मैं भी आत्मा हूं ये भी आत्मा है ये मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं ये भी बीइंग ये मैं भी बीइंग विद दिस बॉडी हूं और ये भी एक बीइंग विद दिस बॉडी जिसमें एक एलिमेंट है वो मेरे पास उसकी इलाज के लिए आया है हेल्प के लिए आया है। तो ये भावना से जम करते हैं तो इसकी वजह से हमारी जब वृत्ति ऐसी बन गई वृत्ति से दृष्टि दृष्टि से वायुमंडल बनता है इसे आभा मंडल भी कह देते हैं और फिर इस वायुमंडल में जब हम कार्य करते हैं तो हमारी क्या बनती है हमारे इंप्रेशंस बनते हैं। जैसे हमारी एटीट्यूड होता है फिर हमारे वैसे जैसे लोग हमसे मिलते हैं लोग हमसे मिलते जुलते हैं सिचुएशंस होते हैं उसके अनुसार हमारे इंप्रेशंस बनते हैं और वही फिर अनुभव बन जाते हैं और वो फिर अनुभव अगर कई लोग उसमें रीइन्फोर्स करते हैं तो हमारे बिलीफ सिस्टम्स मान्यताएं बन जाती हैं आस्थाएं बन जाती हैं और जब इसको बार बार करते हैं तो हमारे क्या बन जाते हैं हमारी हैबिट्स बन जाती हैं संस्कार बन जाते हैं। तो इस तरह से हमारे अंदर परिवर्तन होता रहता है। तो बेसिक कारण क्या है हमारा मन है इसलिए कहते हैं ना एक हमारा जब हम बात करते हैं शरीर की बात करते हैं तो एक शरीर हमारा है ये स्थूल शरीर जो 5 तत्वों का बना हुआ है 8 अंगों का बना हुआ है एक शरीर हमारा और भी है जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं ये सूक्ष्म शरीर हमारे मन का बना हुआ है उसमें अंदर इंटेलेक्ट है हमारी चेतना है और हमारा चित्त है अंदर और उसके बाहर हमारा सूक्ष्म लाइट का बनी हुई बॉडी है उसमें हमारी हैबिट्स। तो अगर हम कहें हमारी इंटेलेक्ट जो है हमारी बुद्धि है चेतना जो है हमारा इंजन है उस सूक्ष्म शरीर का और ये सूक्ष्म शरीर मन से टीम से बना हुआ है और ये जो हमारे संस्कार है एक तरह की उसके ऊपर ड्रेस है। तो इस तरह से हमारी ये सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। तो राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल की बात जब मैं करता हूं तो राजयोगा का मतलब क्या है राजयोगा का अर्थ है कि राजयोगा माना वो योग जिससे आत्मा राजा बन जाती है किसकी बुद्धि की अर्थात चेतना में परिवर्तन आता है। जब मैं अपने को आत्मा समझ के परमात्मा पिता से जो पावर हाउस 7 एनर्जी का उससे जुड़ जाता हूं तो मेरे अंदर क्या होता है वो 7 एनर्जी आ जाती है मैं 7 एनर्जी का एम्बॉडीमेंट बन जाता हूं मैं मुझे आत्मा में 7 एनर्जी भर जाती है जिससे मैं बुद्धि को मन को और संस्कार तीनों को मैं उसकी राजा बन जाती हूं मैं आत्मा उसका राजा बन जाती हूं अर्थात अब बुद्धि चेतना मेरे हिसाब से चलती है अब मेरे अंदर बॉडी कॉन्शियस रोल कॉन्शियस नहीं रहता है और मैं मेरी चेतना बदल जाती है और जब चेतना मेरी बदलती है तो मैं अपने को एक ट्विंकलिंग स्टार ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नाउ आई नो हु आई एम ये समझ में आ जाती मैं स्टार हूं यहां बैठ के हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के जंक्शन पे मैं आत्मा बैठी हूं और यहां बैठ के 7 एनर्जी यहां से रिलीज होती है और सारी सेल्स को नरिश कर रही है बॉडी को नरिश कर रही है तो मैं आत्मा हीलर हूं और ये शरीर मुझे मन को और शरीर को हील करना है, मन को टीम, मन की टीम को पॉजिटिव बनाना है और शरीर के हर सेल को नरिश करना है। जब मुझे समझ आ जाती है तो मैं आत्मा बुद्धि अर्थात मेरी चेतना में लगातार ये कॉन्शियसनेस रहने लगती है और मेरी जो है टीम पॉजिटिव हो जाती है और मेरी सारे शरीर में एनर्जी सातों एनर्जी जाने लग जाती है। तो मेरी बुद्धि मन और संस्कार की मैं मालिक, आदतों की मालिक मेरी, यानी कि मुझे आदत है स्मोकिंग करने की, नॉनवेज खाने की, बहुत मीठा खाने की, डायबिटीज है तो मीठा खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर तो भी बहुत नमक खा रहे हैं, नहीं मन मेरी कर्मेंद्रिया मेरी आंख मेरी नाक मेरे कान मेरे मुख ये मेरे कंट्रोल में आ जाते हैं और मेरे पूरे अंग भी मेरे कंट्रोल में आ जाते हैं। तो इसको बोलते राजयोग, राजयोग मेडिटेटिव अर्थात मेडिटेटिव, ये लगातार इस मेडिटेशन का मतलब ही क्या है, योग मेडिटेशन का मतलब क्या है, योग मेडिटेशन का अर्थ है कनेक्शन, योग और मेडिटेशन इज कनेक्शन, कनेक्शन विद द ट्रूथ, सत्य क्या है, मेरा सत्य क्या, ह्यूमन बीइंग, आई एम ए ह्यूमन बीइंग राइट, तो बीइंग ह्यूमन शब्द कहां से आया है, ह्यूमन माना ह्यूमस से आया है, ह्यूमन वर्ड ह्यूमस लैटिन वर्ड, और बीइंग जो है लाइफ फोर्स है, तो जो ह्यूमस शब्द है उसका लिटरल मीनिंग सॉइल है और बीइंग का लिटरल मीनिंग है सोल। तो एक इंसान दो चीज से बना हुआ है, सॉइल एंड सोल। अगर स्पेलिंग्स में देखिए क्या फर्क है, सॉइल में है आई और उसमें है यू। तो अर्थात जब हम सॉइल कॉन्शियस अर्थात हम बॉडी हमारा ये आउटर सेल्फ जो हमारी बॉडी है, बॉडी कॉन्शियस रोल कॉन्शियस, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, जब हम अपने को ये समझ करके चलते हैं तो क्या होता है हमारे अंदर, और मटेरियल कॉन्शियस हो जाते हैं, तो ये आउटर सेल्फ है हमारा, इससे आई आई अंदर है ना, तो आईनेस और माइनस, मैपन और मेरापन आता है, आईनेस से ईगो आती है और मैपन से माइनस से अटैचमेंट आती है और एंजाइटी आती है, और जो मैपन से क्या होता है ईगो और एंगर आता है और उससे अटैचमेंट और एंजाइटी पैदा होती है, अटैचमेंट और एंजाइटी से डिप्रेशन पैदा होता है और ईगो से और एंगर से हमारे अंदर और दूसरी नेगेटिव मेंटल टेंडेंसी, सिनिसिज्म पैदा होता है, हॉस्टिलिटी पैदा होती है और ये फैक्टर्स हमारे अंदर एक्ट करने लगते हैं आउटर सेल्फ कॉन्शियस होने से। इसकी वजह अगर हम सोल कॉन्शियस बन जाते हैं अर्थात हम इनर सेल्फ कॉन्शियस बनते हैं, अर्थात हम जब यू मीन्स यूनिवर्सल, हम वसुदेव कुटुंबकम की फीलिंग आती है और हमारे अंदर हेल्थ की फीलिंग आती है। तो जब हम आउटर सेल्फ कॉन्शियस होते हैं बॉडी रोल मटेरियल, तो ये अनस्टेबल, तीनों ही अनस्टेबल, बॉडी भी अनस्टेबल है, रोल भी अनस्टेबल है और मटेरियल भी अनस्टेबल है, इसकी वजह से इनसिक्योरिटी पैदा होती है। इनसिक्योरिटी से हमारे अंदर फाइव वाइसेस पैदा होते हैं, कहते ना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांचों इनसिक्योरिटीज हैं बेसिकली। हम काम विकार माना देह की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, किसी ने अपनी देह की तरफ दूसरों की देह की तरफ, क्रोध हमें अंदर से हम अपने आप को डेंजर महसूस करते हैं अपनी अपनी आइडेंटिटी को, तो हम गुस्सा करते हैं, हमारे हिसाब से काम में गुस्सा करते हैं। ग्रीड क्या है बेसिकली, डिजायर फॉर मोर फिजिकल थिंग्स, जो चीज हमें लाइक करते हैं उनको ज्यादा इकट्ठा कर लेना चाहते हैं। अटैचमेंट क्या है बेसिकली, मोह क्या है, हम जो चीज हमें जो लोग हमें पसंद है, हमारे बच्चे हैं, हमारे हमारे भाई बहन है, हमारे माता पिता है, हमारे पति पत्नी, उनको हम अपने साथ रखना चाहते हैं, हर समय उनके बारे में सोचते रहते हैं। और ईगो क्या है, ये जो कुछ हमारे पास इकट्ठा हुआ उसका अहंकार हो जाता है, इससे पांच विकारों का जन्म होता है, उससे नेगेटिव मेंटल टेंडेंसीज टाइप ए बिहेवियर, एंजाइटी एंगर एंजाइटी फियर सिनिकल बिहेवियर हॉस्टाइल बिहेवियर सस्पिशियस बिहेवियर एज्यूमिंग बिहेवियर स्किजोइड नेचर बन जाती है, सेंसिटिव इमोशनल हो जाते हैं, उससे डिप्रेशन हो जाता है, इस तरह से हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिव टेंडेंसीज, जेलसी पैदा हो जाती है ना, इस तरह से हमारे अंदर ये चीजें पैदा होती है नेगेटिव टेंडेंसी, जिससे कि हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव ओवर एक्टिव हो जाता है, पैरासिंपैथेटिक रिस्पॉन्स कम हो जाती है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लगते हैं और हमारी एंडोथेलियम डिस्टर्ब होने लगती है, एंडोथेलियम डिसफंक्शन हो जाता है और वो नाइट्रिक ऑक्सीजन निकलनी कम शुरू हो जाती है, बचपन से शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो जैसे जैसे हम बढ़ते हैं बड़े होते हैं तो हमारी आर्टरीज धीरे धीरे ब्लॉक होने लगती है, कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल है ऑक्सीडाइज स्पेशली एलडीएल अंदर तेजी से ट्रेवल करने लगता है, एंडोथेलियम से इंटीमा में जमा होने लगता है, धीरे धीरे हमारी आर्टरीज ब्लॉक होने लगती है और साथ साथ क्योंकि हमारा मूड खराब रहता है, रॉन्ग मूड डिसाइड्स अवर फूड, तो मूड डिसाइड्स अवर फूड, रॉन्ग मूड तो रॉन्ग खाना खाते हैं, फिर फ्राइड जैम जंक फूड फास्ट फूड्स खाते हैं और ऐसे व्यक्ति को जो हमेशा स्ट्रेस में रहता है उसकी उसकी जो है वो अंदर से वो शांत नहीं रहता है तो नींद अच्छी नहीं आती, अल्फा स्लीप में रहते हैं, डीप स्लीप एंजॉय नहीं कर पाते हैं। और ऐसे लोग फिर नींद एक्सरसाइज देर से उठते हैं देर से सोते हैं तो जल्दी नहीं उठते इसलिए एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। और ऐसे लोग एडिक्शंस के बन जाते हैं, स्मोकिंग करेंगे, ड्रिंक लेंगे, ड्रग्स लेंगे, चाय कॉफी ज्यादा पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे, तो इस तरह से उनकी आर्टरीज ब्लॉक होंगे, उनको ब्लड प्रेशर होगा, डायबिटीज हो जाती है। इसकी बजाय इसके अपोजिट अगर आप सोल कॉन्शियस हो जाएं, इनर सेल्फ कॉन्शियस हो जाएं, तो क्या होगा, आप स्टेबल, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी है, स्टेबल फुल प्रूफ सिक्योरिटी महसूस करते हैं, तो आत्मा के सात गुण वहां मैनिफेस्ट करने लगते हैं, ज्ञान सत्य की समझ आने लगती है अंदर कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, हम सब आत्मा एक परमात्मा के संतान, इसको मैं एपीसीडी कह देता हूं, आत्मा परमात्मा कनेक्शन अर्थात मेरे सर्व संबंध परमात्मा के साथ है। आरती में तो हम गाते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। रियल में हमारे उसके साथ संबंध अनुभव करने की बात है। और डी4 ड्रामा सिस्टर रूपी ड्रामा है। इस ड्रामा में हम सब एक्टर्स हैं और अपने इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% अभी तक एक्यूरेट पार्ट बजाया है। और अभी भी हम परमात्मा की डायरेक्शन पर अगर पार्ट बजाएंगे, उस समझ से एपीसीडी की समझ से हम कार्य करेंगे, तो हमारे अंदर क्या होगा, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी और हमारे हम क्या बन जाएंगे, मनुष्य से हम फरिश्ते जैसे एंजेलिक बन जाएंगे। हमारी टीम 100% पॉजिटिव हो जाएंगे, हम एंजल बन जाएंगे, फरिश्ता, एक डॉक्टर हीलर बन जाएगा, प्रॉपर हीलर बन जाएगा। और जब ऐसा बनेंगे तो हमारे अंदर इस तरह की, जब हमारे अंदर एनर्जी आएगी तो इस ज्ञान एपी जितना इस एपीसीडी का अभ्यास करते जाए हमारे अंदर पवित्रता आती जाएगी। ये दूसरी एनर्जी आत्मा की, तीसरी एनर्जी शांति, पास का चिंतन खत्म, भविष्य की चिंता खत्म हो जाएगी, हम वर्तमान में टिकना सीख जाएंगे। प्यार माना अनकंडीशनल डिग्निफाइड रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर एवरी ह्यूमन बींग इन द होम, इन द वर्किंग प्लेस और इन द वर्ल्ड। हर व्यक्ति को हम बिना किसी शर्त के दिल से सम्मान से स्वीकार करेंगे और उनको केयर करेंगे, तो इसको हम प्यार कहते हैं। ये स्पिरिचुअल, ऐसा स्पिरिचुअल लव हार्ट को चाहिए, सेल्फलेस लव चाहिए हार्ट को। और फिर जब हम ऐसी स्थिति में होंगे तो हमारी कंटेंटमेंट हमारे लाइफ में आने लगती है और कंटेंटमेंट से हमारे अंदर खुशी आती है। हम इसे कहते हैं ना सुपर सेंस ऑफ जॉय की फीलिंग, डिजायर्स कम हो जाती हैं। जब डिजायर्स कम हो जाती है तो हम आनंद की स्थिति, अर्थात हम आत्मा अपने आप को डिटैच महसूस करती हैं इससे, बॉडी से और देह और देह की दुनिया से। ये स्थिति एक्सटेसिक स्थिति है, इसमें हम आनंद महसूस करते हैं। और जब आनंद की स्थिति आती है इससे शक्तियां हमारे अंदर आती हैं, हमारा विवेक जागृत, विजडम, थर्ड आई ऑफ विजडम खुल जाती है, जिससे हम सत्य को परख सकते हैं, सत्य राइट और रॉन्ग की परख आ जाती है, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति आ जाती है। हम बड़ी बात को, पहाड़ जैसे समस्या को राई बना सकते हैं और उसको समेट के मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं, परमात्मा से कंबाइंड हो सकते हैं। हम सहन कर सकते हैं, कोई शरीर की तकलीफ है, समस्या परिवार में है, हमारे वर्किंग प्लेस पे समस्या है, उसको हम सहन कर सकते हैं, सहन करके समा सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं और नई आने वाले चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं और फिर भी सबको कॉपरेट कर सकते हैं। तो आठों शक्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं। तो ये जब आठों शक्तियां हमारे अंदर आती हैं, इससे सात एनर्जी और आठों शक्तियां आ जाती हैं, तो जब इनके मिश्रण में हमारे अंदर भर जाती हैं, तो जब हम कर्मों में आते हैं तो हमारे अंदर ट्रूथफुलनेस हमारे चेहरे पर दिखाई देती है, हमारे अंदर पवित्रता दिखाई देती है, निर्भयता दिखाई देती है, हमारे में संतुष्टता दिखाई देती है, हमारे अंदर धैर्यता आ जाती है, हम मीठा बोलना सीख जाते हैं, हम मुस्कुराना सीख जाते हैं। तो इस तरह से हमारे अंदर नम्रता आ जाती है। तो इस तरह से हमारे दैवी गुण, ये हमारे वैल्यूज हमारे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई देने लगती है। तो हम सदा स्ट्रेस फ्री रहने लगते हैं, हमारा मूड सदा अच्छा रहने लगता है। जब मूड अच्छा रहता है तो हम खाना, अब हम वो खाना खाते हैं, पहले हम खाना खाते थे खाने के लिए जीते थे, तो अब हम जीने के लिए खाते हैं, अब हम हेल्दी डाइट खाते हैं, हम ज्यादा फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट जिनमें ज्यादा वो खाते हैं, चपाती सब्जी खाते हैं, वेजिटेरियन फूड खाते हैं, बैलेंस डाइट खाते हैं, अंकुरित खाते हैं, सब्जी रोटी खाएंगे, सलाद ज्यादा मात्रा में खाते हैं। तो इस तरह से हम एक भोजन बहुत प्यार से, अधिक मात्रा में लेमन लेते हैं, टाइम पे खाते हैं, प्रॉपरली च्यू करते हैं खाने को, एंजॉय करके खाते हैं और महात्मा की याद में खाते हैं, और हम समय पर सोते हैं, जल्दी सो जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन करते हैं, 10 बजे सो जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं और वहां सुबह उठ के मेडिटेशन करते हैं। तो टाइम पे सोना हमारे अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल क्लॉक्स होते हैं और हमारे इतनी खुशी रहती है, हमारे पास टाइम रहता है एक्सरसाइज का, सुबह नहा धो के हम 6 बजे तक तैयार भी हो जाते हैं 5:30 तक, और उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें सुबह फ्रेश हवा होती है, फुल ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो हम 1 घंटा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, फिर हमारे क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम मिला ना हमको, और फिर हम 8 बजे तक चुप रहते हैं, जिससे हमारे कॉर्टिसोल हार्मोन का रिलीज हार्मोनियस हो जाता है, तो सारा दिन हमारा पीसफुल लवफुल हैप्पी बीतता है और हमारे अंदर इतनी खुशी रहती है, इतनी आनंद रहता है कि हमें बाहर से खुशी चाहिए नहीं, आनंद ना खाने में चाहिए ना चीजों में चाहिए, और हमें कोई स्मोकिंग करने की, चाय कॉफी पीने की, कोल्ड ड्रिंक पीने की या शराब पीने की या कोई ड्रग्स लेने की, नींद की दवाई लेने की हमें आवश्यकता ही नहीं होती है, वो हम हेल्दी हैप्पी रहते हैं। हमारे एंडोथीलियम क्या करता है, हमारे उसको शांति प्यार खुशी मिलती है, एंडोथीलियम वापस नाइट्रिक ऑक्साइड निकालना शुरू कर देता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल डिग्रेशन शुरू हो जाता है, रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट शुरू होता है और हमारे ब्लॉक्स खुलने शुरू हो जाते हैं। तो हमारा हैप्पी माइंड बना और हेल्दी हार्ट, अर्थात हमारे ब्लॉक्स खुलने शुरू हो, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म होने लगता है। ऐसे हमने देखा बहुत सारे पेशेंट्स में, हमने माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल पब्लिश किया जो कि वर्ल्ड की टॉप 20 स्टडीज में आया, जिसको हम कहते हैं 3-डायमेंशनल हेल्थ केयर लाइफ स्टाइल फॉर हेल्दी हार्ट हैप्पी माइंड हेल्दी बॉडी, ये हमने पब्लिश किया। फिर आबू हेल्दी हार्ट ट्रायल अंडर पब्लिकेशन, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है अभी, उसके बाद डायबिटीज पे हमने स्टडीज की है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे स्टडी की है, होमा भी स्टडी किया है, और हमने पाया है 10,000 से ज्यादा पेशेंट्स ने स्टडी किया है और हमने पाया किस तरह से लोगों के अंदर परिवर्तन आ रहा है, तो लोगों के इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो रहा है, लोगों का उनकी जो इंसुलिन जो थे 80-80 यूनिट इंसुलिन थे, एक हफ्ते में उनकी इंसुलिन छूट जाती है, उनके शुगर इंस्पाइट ऑफ दैट 300-400 शुगर पोस्ट प्रेंडल होती थी, एचबीए1सी का 12-13 होता था, आज उनका एचबीए1सी 6 से कम हो गया, दे आर ऑफ इंसुलिन, दे आर मेनी ऑफ देम आर ऑफ एंटी डायबिटिक्स ऑल्सो। ऐसे ब्लड प्रेशर को 4-5 टैबलेट्स लेने के बाद भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल, आज उनके ब्लड प्रेशर ठीक हो चुका है, आज वो या तो हाफ टैबलेट पे ही कंट्रोल्ड है या इवन हाफ टैबलेट भी छूट चुकी है। 10,000 पेशेंट्स में मैं समझता 1,500 तो पेशेंट हमारे आज ऑफ एंटी हाइपरटेंशन है, 1,000 से ज्यादा पेशेंट ऑफ एंटी डायबिटिक्स हैं, उनकी एचबीए1सी नॉर्मल हो गई है, डिसलिपिडीमिया ठीक हो जाता है, लोगों की एस्थमा ठीक हो गया, लोगों का माइग्रेन ठीक हो गया, लोगों का जीआरडी ठीक हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ठीक हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस, मतलब ये जो प्रोग्राम है राजयोग अमेरिकेटिव लाइफस्टाइल और थ्री डायमेंशनल हेल्थ केयर लाइफस्टाइल फॉर हेल्दी हार्ट हैप्पी माइंड हेल्दी बॉडी, खाली हार्ट के लिए नहीं है, हैप्पी माइंड और पूरी हेल्दी बॉडी, आपके मन और तन में जो भी बीमारियां हैं, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो सब ठीक हो जाता है, क्योंकि ये सब चीज को एड्रेस करता है। तो हमने देखा है पिछले 23 साल हमने होकर रिसर्च करते हुए, हमने डीआरडीओ के कोलैबोरेशन में डॉक्टर कलाम साहब के साथ मिलकर स्टडी की, और हमने जो है इसके साथ मिलकर और 3 इंस्टीट्यूट थे, दिल्ली से जेपी मथ हॉस्पिटल और मुंबई से ग्रांट मेडिकल कॉलेज ऑफ जे हॉस्पिटल और अहमदाबाद में सिविल हॉस्पिटल, बीजे मेडिकल कॉलेज ऑफ सिविल हॉस्पिटल, यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, तीनों कोलैबोरेशन से मिलकर, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसको स्पॉन्सर किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इस स्टडी को हमने आज हम यूज कर रहे हैं, आज भी हम हर साल लगभग 10 के आसपास ग्रुप्स करते हैं, जिसमें 7 दिन के लिए पेशेंट्स को विद स्पाउस बुलाते हैं, उनको एंजियोग्राफिक डॉक्यूमेंटेड हार्ट डिजीज होती है, और उनको हम यहाँ प्रोग्राम दे रहे हैं, और उसी के द्वारा उनकी राजयोग मेडिटेटिव लाइफस्टाइल, अर्थात इसकी जो मुख्य 3 बातें हैं, पहली बात है सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम उनको क्योंकि हेल्दी शब्द बना ही 2 शब्द से, हील प्लस डाई, अर्थात हील डाई सेल्फ, हील योर सेल्फ, सारे प्लेनेट पे एक ही आदमी जो आपको हील कर सकता है वो सिर्फ आप हैं, डॉक्टर आपको गाइड कर सकते हैं, आपके रिश्तेदार माता पिता, आपके पति पत्नी बच्चे आपकी मदद कर सकते हैं, कि तो भगवान और इंसान में क्या फर्क है, इंसान आपकी 1 गुना मदद कर सकता है, किंतु भगवान आप अगर आप उसके श्रीमत डायरेक्शन पर चलते हैं तो भगवान आपको 100 गुना अधिक मदद करता है। तो पहली बात यह है। दूसरी बात है सेल्फ अवेयरनेस, अब मुझे अपने आप को हील करना है तो मुझे पता होना चाहिए हु इज द हीलर, हीलर कौन है, क्योंकि हेल्दी को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वस्थ, तो स्व माना इनर सेल्फ, अंदर वाला मैं, बाहर वाला मैं तो ये सतीश गुप्ता है, ये आपका जो भी नाम है, जो भी आप मेल फीमेल हैं, वो बाहर वाला मैं है, किंतु अंदर वाला मैं क्या है, अंदर वाला मैं अर्थात आत्मा, इनर सेल्फ, और अस्थ माना कॉन्शियस अर्थात स्थित, तो आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित है तो आप स्वस्थ हैं, अर्थात आत्मा हीलर है, किसकी, आत्मा को हील करना है, मन को अर्थात टीम को हील करना है, और बॉडी के 80,000 अरब कोशिकाओं 8 अंगों को हील करना है, खाली हार्ट को हील नहीं करना है, मस्तिष्क की 100 अरब कोशिकाओं को हील करना है, आंखों को हील करना है, नाक को, मुख को, त्वचा को हील करना है, लंग्स को हील करना है, इम्यून सिस्टम को हील करना है, हार्ट को हील करना है, लीवर को हील करना है, हमारी आंतों को हील करना है, हमारे हार्मोनल सिस्टम, पिट्यूटरी है, पीनियल है, थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियाज, एडिनल और गोनेट्स को हील करना है, उसको सारी मसल्स और बोन्स को, ज्वाइंट्स को हील करना है, सभी लिगामेंट्स को हील करना है, दोनों किडनीज को हील करना है, कोलन को हील करना है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को हील करना है, हमारे जेनिटल सिस्टम को हील करना है, तो सारा सिस्टम जो हील करना है उसको, तो मुझे हील करना है, किसको हील करना है, मुझको, और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, अर्थात मैं आत्मा, खाली मैं शरीर नहीं हूं। आज हम मॉडर्न हेल्थ केयर की प्रॉब्लम यही कि हम सिर्फ बॉडी का इलाज कर रहे हैं, जितनी दवाइयां हैं, सर्जरी है, फिजियोथेरेपी है, सब कुछ बॉडी के लिए, डाइट, एक्सरसाइज, जो कुछ बता रहे हैं वही उसको ही बता रहे हैं, नहीं, पर हम इंसान खाली बॉडी नहीं है, बॉडी तो मरने के बाद बनता है, इंसान मल्टी डायमेंशनल बीइंग है, कम से कम 3 डायमेंशनल तो है उसकी, एक आत्मा है, एक मन है, एक शरीर है, तीनों के बारे में हमें जो है जानने की आवश्यकता है। तो परमात्मा जो है सत्य है, क्योंकि एम्पावरमेंट सत्य के द्वारा ही हो सकते हैं, गॉड इज ट्रूथ, एंड वो हमें कैसे टीच करता है, थ्रू इन्फॉर्मेशन एजुकेशन काउंसलिंग। तो परमात्मा हमको पहले इन्फॉर्मेशन देता है, तो ये हमें पहले इसकी ट्रेनिंग लेनी होती है, ये हमें समझना पड़ता है आत्मा क्या है, आत्मा के पास 7 एनर्जी है, आत्मा के 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, और 7 एनर्जी है, जिस 7 एनर्जी से आत्मा मन के माध्यम से, मन क्या है, मन टीम है, और बॉडी के 8 अंग हम सभी जानते हैं, बहुत अच्छे डिटेल में हमको पता है कैसे बॉडी काम करते हैं, एनाटॉमी पता है, फिजियोलॉजी पता है, पैथोलॉजी पता है, बायोकेमिस्ट्री पता है, फार्माकोलॉजी पता है, हमें सारे हमने पार्ट्स ऑफ स्टडीज किए, स्टडी किए हुए हैं, हम डिटेल में जानते हैं हर बात को, तो हमें उसका सारा पता है। तो हमें इस और परमात्मा क्या है, परमात्मा हम सब आत्माओं का पिता है, 7 है चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पावर हाउस है, वो जन्म मरण से परे, वो निराकार है, तो जब हम अपने को एक अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा समझ के परमात्मा पिता को याद करते हैं परम धाम घर में, जहां का वो रहने वाला, हम आत्माएं वहीं की रहने वाली हैं, तो सातों एनर्जी आत्मा में भर जाती है और सातों एनर्जी फिर हमारी टीम, जब हम सत्य में टिकते हैं तो हमारी टीम अपने आप पॉजिटिव हो जाती है और वो एनर्जी हमारे शरीर के अंगों में ट्रेवल करने लगती है। तो इस तरह से जब सातों एनर्जी को हम जब से सातों एनर्जी हर शरीर के हर कोशिका के लिए आवश्यक है, तो एक विशेष है, वो विशेष क्या है, ब्रेन के लिए कौन सी एनर्जी विशेष है, नॉलेज, सत्य की समझ अर्थात एपीसीडी। जितना अधिक अपने को चलते फिरते उठते बैठते आप आत्मा समझेंगे, परमात्मा, मैं परमात्मा के संतान हूं उससे कंबाइंड होकर अपना कार्य करेंगे, और जितना एक एक संबंध की अनुभूति, स्पेशली नौ संबंध की अनुभूति करनी चाहिए पिता से, आत्मा, माता, पिता, टीचर, गुरु, सतगुरु, प्रिसेप्टर, बंधु, बड़ा भाई, सखा, दोस्त, साजन, साजन माना मोस्ट बिलेवेड, वो मेरा सबसे मोस्ट बिलेवेड है, और सर्जन, वो मेरा डॉक्टर है, इंजीनियर है, और मेरा वारिस है अर्थात मेरा बच्चा भी है। तो नौ संबंध की अनुभूति मुख्य करिए, तो उसके द्वारा वो सात एनर्जी उनके द्वारा हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हम सुबह सुबह चार से पांच अगर करें ना, ब्रह्म मुहूर्त के समय उठे, मुंह हाथ धो लें, ब्रश कर लें, उठते ही गुड मॉर्निंग कर लें, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा गुड मॉर्निंग करें, ब्रश करके आप बैठ जाएं और आधा घंटा कंबाइंड हो जाए परमात्मा से और वो एनर्जी को आने दें, और अपनी टीम को आठ बजे तक आप चुप रहें, अपनी टीम को पॉजिटिव, हम परमात्मा के मावके से मुरली कहते हैं, वो 100% पॉजिटिव टीम है। तो सुबह उठते ही अमृत वेला किया आधा घंटा, उसके बाद मुरली का अध्ययन करते हैं और फिर आठ बजे तक उस टीम, उसी मुरली को, उसी टीम को बार बार रिवाइज करते हैं, मनन चिंतन मंथन सिमरण करते रहते हैं। तो हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज आठ बजे तक होता है, तो हमारा कॉर्टिसोल हार्मोनियस रिलीज हो जाता है। और जैसे सातों एनर्जी क्या होती है, जब हमारा कॉर्टिसोल बैलेंस में निकलता है तो सातों एनर्जी हमारी सेल्स में जाने लगती है अच्छे से, है ना, थ्रू टीम, हमारी टीम पॉजिटिव, हमारी जैसे मुझे ज्ञान है तो मुझे ज्ञान मतलब मेरे विचार, मुझे ज्ञान के विचार, ज्ञान की भावना, पवित्रता की भावना, शांति की भावना, उसके द्वारा मेरे शरीर की सेल्स को नरिश करेगा, है ना। जैसे हार्ट को क्या चाहिए, ब्रेन को चाहिए ज्ञान चाहिए, एपीसीडी चाहिए, आंखों को क्या चाहिए, पवित्रता चाहिए, हमारे मस्तिष्क की 100 अरब कोशिकाओं को चाहिए पवित्रता चाहिए, और फिर हमारे जो है लंग्स को क्या शांति चाहिए, हमारे हार्ट को क्या चाहिए प्यार चाहिए, सत्य सत्य प्रेम चाहिए, और हमारे लिवर को क्या चाहिए खुशी चाहिए, आंतों को क्या चाहिए अतिंद्रिय सुख की अनुभूति चाहिए, कैसे कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, और फिर हमारे हार्मोन्स को आनंद चाहिए, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी पीनियल थायराइड पैराथायराइड पैनक्रियाज एड्रिनल और गोनेट्स, इन सातों का हार्मोन्स की अगर बैलेंस चाहिए तो सातों हार्मोन्स का बैलेंस कैसे होगा, जब आप आनंद की स्थिति में अमृत वेले सुबह सुबह चार से पांच टिकते हैं तो उससे हमारा सातों हार्मोन्स का जो हार्मोनियस रिलीज होता है, हमारा जीवन ऑर्केस्ट्रा एक संगीतमय जीवन बन जाता है। तो हमारा कॉर्टिसोल बैलेंस में आठ बजे निकलता है तो हमारा जीवन संगीतमय बनता है, और फिर हमारी मसल्स बोन, इनको आठों शक्तियां चाहिए, हर ज्वाइंट को इनको शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सातों एनर्जी मिलकर टॉक्सिन्स को लीवर किडनी के द्वारा बाहर निकालती है, पसीने की ग्रंथि के द्वारा बाहर निकालती है, कॉलन के द्वारा, आंतों के द्वारा बाहर निकालती है, और सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है। तो इस तरह से हमारी सातों एनर्जी मिलकर टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, और सातों एनर्जी का जब हम उसको फोकस करके यूज करते हैं, हमारी लेजर एनर्जी हीलिंग एनर्जी बन जाती है, तो उस हीलिंग एनर्जी से हम कोई भी अंग को हील कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा राजयोग मेडिटेटिव लाइफस्टाइल से क्या बन जाता है, हैप्पी माइंड, हमारी टीम पॉजिटिव हो जाती है और हमारा हार्ट हेल्दी हो जाता है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, आपने बहुत ध्यान से सुना, आप इस राजयोग मेडिटेशन को सीख लीजिए, तो इसको सीखिए, अनुभव करिए और प्रैक्टिस करिए। अभी तक 10,000 लोगों की जिन्होंने एंजियोग्राफी डॉक्यूमेंटेड सीएडी पेशेंट्स जो थे, कई लोग बाईपास करा के फेल हो चुके थे, कई लोगों की एंजियोप्लास्टी 7-7 बार एंजियोप्लास्टी, 2-2 बार बाईपास हो चुके थे, और वो भी उनके आज ब्लॉक्स खुल गए, आज वो बहुत क्वालिटी, पिछले 20 साल से 22 साल से 21 साल से 15 साल से कोई 10 साल से कोई 8 साल से इसको इसके द्वारा बहुत ही अच्छे जीवन बिता रहा है, उनके ब्लॉग्स खुल चुके हैं, वो बहुत उनको दिलवाले कहते हैं, वो सारे भारत में विदेशों में जाकर के सेवा कर रहे हैं और सारे विश्व में, ये एक दिलाराम परमात्मा का नाम, दिलाराम अर्थात दिल को आराम देने वाला शिव बाबा है दिलाराम, और हम सबको उन्हें दिलवाले, आप सभी डॉक्टर्स भी दिलवाले हैं ना, सभी के पास हार्ट है। तो ये जो बात है, ये जो टॉक थी सभी दिलवालों के लिए थी, तो आप सब कौन है, दिलवाले। चलिए हम एक मिनट फिर साइलेंस में बैठ के अनुभव करते हैं, उस दिलाराम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, वो हमारा पिता है, हमारी माता है, शिक्षक सतगुरु है, उस पावर हाउस से जुड़ जाइए, अपने को एक चमकता हुआ सितारा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आई एम ए शाइनिंग स्टार, सन ऑफ सुप्रीम स्टार, उस स्टार से सातों एनर्जी को अपने अंदर महसूस करिए और पॉजिटिव टीम के माध्यम से होती है शरीर की हर कोशिका में ये सातों एनर्जी का फ्लो महसूस करिए। ओम शांति।
ओम शांति। आई एम डॉक्टर यूएन पाठक फ्रॉम नेपाल मेडिकल कॉलेज। आई एम वर्किंग एज ए प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड टुडे आई फील प्रिविलेज्ड to present this topic in collaboration with the medical unit of Raj Yoga from the Mount Abu, and my part is just give the impact of COVID-19 on the body and the mind of the human being. And with this, I just want to start, and really I want to cover this topics on the following headings, like introduction, what is the present situation in Nepal and abroad, what is the virology of the COVID-19, what is the pathophysiology, and really my the topics, the main important, which I must emphasize impact of COVID-19 on the body, that is the what is the systemic effect impact and what is the impact on the brain mind, that is impact on the mind, that is the mental health. With this I will also cover achievement so far in the treatment and prevention of COVID-19 in medical sciences, and I will also cover how to protect yourself, and this is just like the war against the COVID-19, and also we want to know what are the actions that we can do to win this epidemic, and lastly I will just give the take home message. Although my topics is vast, but I will just concentrate on the body and mind. So let us start with a few basic things, that the coronaviruses are important for the human as well as animal pathogens. Several different strains of the coronaviruses infect the human. Up till now we know the 7 strains, and this 7th strain, that is called the coronavirus, that is the COVID-19. Initially it is called novel coronavirus, later on it is called SARS-CoV-2, but which is identified in 2019. The initial reports of the novel coronavirus that we have found in the November 2019, certainly it has come from the Wuhan, a city of Hubei province of China, and it is just like a spread like a fire leading to the pandemic. In February 2020, first time WHO designated this disease as a coronavirus disease 2019, and they named it COVID-19. Later on, we must know it, this virus was the same as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, that is SARS-CoV-2. And initially we called it 2019 novel coronavirus, now it is called just COVID-19. This is the RNA virus. Really, once we just see, it has started from the bats leading to the penguins and later on comes to the human. What we know that in the human nature, we just eat bats, some parts of the China, and later on, probably that bats has infected some animals as an intermediate host, or directly from the bats it has come to the human being. This is unknown. But certainly it has come from the bat, and certainly it has come from the Wuhan, China, and later on spread all over. So in the beginning, what we know that it started from the seafood market that sold the live animals, that is the genetic transmission. But at present, this is just transmitted by person to person. If we see in the this form, what we found in the crowded, if somebody is infected and once it coughs or a sneeze or a speak, they just give the droplets, and that droplets direct taken by the human being, and that leads to and segregate in the throat, and later on it has come to the lungs part. So this is the one way. Sometimes it is not only it that this is the direct transmission, but sometimes this transmission occurs through the television, from the table, especially the metallic. Sometimes it comes from the some in between the things, and then it infects the human being. That's why we should care about it. We have worldwide round about 2.57 million people are infected, and out of it around about 8 lakhs and 55 people have already died. If we see the area wise, we just see the different countries have different morbidity and mortality. If we see the global wise, what we have found, what is the confirmed cases and what is the death case. What we have found, initially it has started from the December that we see, and later on it has rising up. So infection rate is going up and up. Similarly, the death also has gone up. And this is the global picture, and this picture is similar to even the SARC and even the Indian subcontinent. If we see the situation region wise, we have found the same thing. Then if we see the situation in the different parts, the mortality wise, again the mortality is sometimes some countries show the less, some countries more, but certainly it is up till now it is persisting. If we see the COVID-19 timeline for the Nepal, what we have found in the first case in Nepal came on January 5. This is the first case. And it takes 2 weeks to come to the second case. And then again, if we see the case 2 came on 23rd March. And then afterwards, case 6 came on the 3rd April. But after the June, July and August, if we can see that it has come up like any case, although in comparison to the other parts of the world, we are having the less mortality and infectivity wise also we have less. But certainly it is alarming for our country as we are the poor country. Nepal composed of 77 districts. And if we see the district wise, we have the red line shows higher concentration of the morbidity, that is the infected case, as well as the mortality. Other the hilly parts have less. And if we see the death rate in the among the SARC countries, that what we have found, even in the SARC countries, the death rate are less, just like what we have found in Sri Lanka. The death is very minimum, although the infection recovery rate is very high. So that's why these are the things that we have seen in SARC countries as well. Now comes to the virology. This is the Nidoviruses order, subfamily is coronavirus, and it has 4 genera, alpha, beta, gamma and delta, and in at present in human being, the COVID-19 is due to the alpha and beta, that I will explain later on. And what we have found, what I have talked, there are 7 varieties, and in 7 varieties, in the last, what I have told you, the Middle East respiratory virus. It came in 2002, and severe acute respiratory syndrome coronavirus. So these 2 coronavirus already came in 2002 and 2012, and in 2019 we have the SARS COVID-2. So this is already old disease, but certainly the COVID-19 is the two. If we can see the phylogenetic type, that what is this coronavirus, then we have, I have already explained alpha, beta, delta and gamma. But I don't want to go into the detail because it takes time and my topics will not cover later on. So once we see the SARS coronavirus that I have already started in 2002 and 3, first case in 2002 in Guangdong province of southern China, it affected 26 countries, more than 8,000 cases we have seen, and still it is coming and going worldwide. If you see the cases number and then cumulative effects and the mortality rate, then what we have found that this SARS, even in 2002, the varieties are different, but we have quite a good number of infected case as well as the mortality case. Similarly, MERS COVID epidemic that has come in the Saudi Arabia, and again it has 2,494 laboratory confirmed cases in 2012 and death 858, and it covers 27 countries. And that's why even it has only come to the Mediterranean region, that's why we are not aware of it. But in 2012, it has really created a big problem in that particular region. If we see the viral composition of the coronavirus, V5, these four envelope, and that is under the electron microscope. These are the different genome that has been given, and that's why I want to go to the clinical side. Again, I have told you in SARS-CoV-2, that is the COVID-19 virus, it is beta coronavirus. This is the subgenus of SARS, and also it has the receptor cell entry into the angiotensin converting enzyme 2, ACE2. Now we just come to the how we transmit, what is the pathogenesis? And what is the replication of the coronavirus in our body? Once we have seen that it has started from the bat, again it goes to the intermediate host, it infected the human, and from human to human like this. If we go to cellular level, then what you find, angiotensin converting enzymes 2 receptors, it infects here. And in this way, it just goes to the cells and it just interfere with the release of the enzymes, and they go into this direction and they infect the whole body, as it is the cellular mechanism. If we go a little bit more, just like once this coronavirus enter, then what is going on here, we can see this is the receptor, and this receptor through it goes to the cells. And the main cells are the T cells, and these T cells activate beta cells, glossy phase, and also the NK cells, and also they expand as a T cells, and all these cells leads to the cytokines, and these cytokines act over the different parts of our body. Just like in the blood, it causes coagulation disorders. If we go to the capillaries, they cause the microcirculation. If they go to the system, systemic inflammatory response we see. If you go to the other parts, then it causes the apoptosis, and also it causes the tissue damage. This is the pathogenesis that we have seen. And what is the impact? Impact easily. Just like there is a coagulation disorders, there is a blood defect. It goes to the lungs, there will be pneumonitis. There is a ARDS. It goes to the heart, cardiac failure. It goes to the kidney, proteinuria, chronic kidney disease. If it goes to the brain, it delirium. So that's why these are the mechanisms, and in this way they affect the multiple organ involvement. Now let us see what is going on, how it happens. Once the viral get in, then our body responds with the viral, and this includes stage 1 and stage 2. In the clinical term, what we called early infection and pulmonary phase. Pulmonary phase is little, but third phase is the hyperinflammatory phase. So what is going on? Suppose there is a early phase, then we have mild constitutional symptoms, just like the simple fever, dry cough, diarrhea. In a stage 2 pulmonary phase, then we have shortness of breath, there is a hypoxia. But if it is a stage 3, then we have the ARDS, SARS, SOG. And according to this, we have the different lab tests that we have enumerated. So that's why according to the phase, a stage of this disease, we are doing the different investigation in our medical science. Now, just come to the impact over the body. I have already seen that they can cause different impacts over the different system. But if you go just like the brain, central nervous system, then what we have found, they cause different system, like the patient has headache, the patient has dizziness, the patient has encephalopathy, Guillain-Barré syndrome, agiosia, myalgia, anosmia, and a stroke. If it goes to the renal system, acute kidney disease, in liver, there is a rise of the enzymes, gastrointestinal system, the patient has diarrhea, in the thromboembolism system, once it involves the blood, cardiac, then we have the different diseases, including the cardiogenic shock, different types of arrhythmia. In the endocrine, the patient might have the hyperglycemia, the patient might have the diabetic ketoacidosis. In dermatology, we have find there is a petechy and other urticaria, other types of vesical pathy. And that's why it can involve any system of the body and manifest as a different. Once we just conclude, then the patients will come first as asymptomatic. And what we have found, even it is the initial case, 30 to 40 of the cases in the large cohort study, the patient is asymptomatic, no symptoms. But this is the longitudinal study. The patients are coming directly to the referral center and then we are describing. We don't have our data that like the RT-PCR doing and what is the effect over the part that we don't know. But asymptomatic patients, once it is diagnosed with the PCR, they are, now the WHO even says that they are not infectious like that. But more or less, sometimes 4 to 7 days is required to have the symptoms, even after the diagnosis. So overall picture, how would you say that 81% of the total case is mild, simple fever and headache. 14 cases have a little bit breathlessness or hypoxemia, but 5% cases are critical. They involve the different types of organs like heart, like brain, like kidney, like lungs, and they need the critical care. They need ICU admission. And that's why out of it, once the patient is in the critical case ICU admission, then 23% up till now, 2.3% will be the death rate. And this cohort study has been taken from the China after taking 44,425 cases. So these are the things that we have seen, that up till now the death rate is 2.3. And after the total confirmation, the death rate is 0.21%. Even in Nepal, up till now, the mortality is 0.5. In other countries, sometimes 1%, sometimes 2, sometimes 2.8, like that. Even in India, it is 2.8. So conversely, the fatality rates are likely underestimates of the true cases fatality rates, as many fatal infections are undiagnosed. Therefore, case fatality rate may not be reflected the full burden of the pandemic. Now, the other parts, sometimes the patient is normal and they have infection. They have the different things that I have explained. But once the patient having the chronic diseases, like the chronic liver disease, current smokers, former smokers, chronic kidney disease, immunocompromised, cardiovascular disease, lung diseases, diabetes mellitus, they have different presentation. And out of it, this is the data, what they say, that how many patients are non-hospitalized, how many patients are non-ICU care, and how much patients needs the ICU care. So, with this background, let us come how we diagnose and what are the lab features of the poor outcome, and that I have enumerated all, and lymphocytes, neutrophils, AST, AST, PCE, PT level, CRP level, ferritin level, and these are the, and some evidence of immune dysregulation like immunofluorin, IL-6. So, sometimes once the patient is admitted in the ICU and terminal phase, we must do all these investigation to know the prognostic factors. And, but the few tests that we must do, that is the D-dimers, IL-6, and certainly the other RFT and LFT, that should be the must. And according to the severity, certainly the severity is the worst when the patient is 8th decade or 9th decade. So, this chart will show us, and both, even the report from the China, report from the USA, what they say, as the age advances, mortality is quite high. And in this diagram, it has already shown that once the patient is 0 to 19 years, the hospitalization is less, ICU, no need of ICU, no death. But if the patient is 85 and up, then 75% patient hospitalized. 25% of the patient have the ICU care, and even out of it, 25% die. So, certainly the age is the factor, and so again the fatality rate according to the different Americans study what they have done. And what they have found even in the China, that case fatality rates age group wise the similar in China as well as USA. This is just the clinical manifestation. Patient infected, 4 to 6 days is the average incubation period, then afterwards the patient has 8 to 10 days, and then afterwards the patient starts illness, and sometimes they need isolation, sometimes that is ICU care, and sometimes if you are free, they should be discharged. We have found the 4 classes of again the clinical presentation. One is asymptomatic, another is mild infection, another is moderate infection, another is severe infection, another is critical infection. And these are the criteria by which we can say that we have found such type of cases. Systemic complication we have, then once the patient has infected only the lungs, then we have acute respiratory distress syndrome. If the patient has the involvement of the brain, encephalitis, if it is the heart, that is the myocardial, then renal injury, if it is the intestinal flora disadvantage, liver injury, and all is due to the sepsis, hypoxemia, even the cytokine storm that I will describe later. Then respiratory complication, I have already told that ARDS is the major complication of severe disease. It can manifest shortly after the onset of dyspnea. It may require non-invasive and invasive ventilator. If we see the infection wise, if the person is healthy, the chances of asymptomatic and recovery is quite high. But if the patient is chronic lung disease, they just go into the pulmonary infiltrate, pneumonia, and later on that the patient might have the ICU care, and the death is quite common in the diseased, lung diseased patients. If we can see the cardiac involvement, what we have found, this COVID virus have direct cardiotoxicity. Sometimes the cardiotoxicity is due to the hypoxemia, that is a less oxygen. Sometimes there is a supply demand mismatch. And fourth part is cytokines, and fifth part is the DIC, and these all things lead into the acute coronary syndrome, arrhythmia, myocarditis, venous thromboembolism, and heart failure. Cardiac complication that I have already told, even in the Chinese study, they have found the same causes as I have already mentioned. Now, coming to the blood related, that is the thromboembolic complication, this occur even in the patients younger than 50 years of age. And this leads to the venous thrombosis, arterial limb veins like a stroke, limb ischemia, microvascular thrombosis and bleeding. If we see that how the COVID-19 coagulopathy in the blood, how they act, and these are the different mechanisms that they have found, and they lead to the different parts and giving rise to the thromboembolic phenomenon. If we just take the example of the lungs in the, just like in the vein terminal phase, there will be a just like the distal pulmonary vasculature occlusion and they leads to the different part. But sometimes there is a DVT, then there is a occlusion of the this artery. And same things has been seen in the danger of blood clots in the COVID-19 patients in the different way. Then what are the neurological complications? In neurological complications have direct damage to the receptors, cytokine related injury, secondary hypoxemia and retrograde travel along the nerve fibers. And these leads to the acute cerebrovascular disease, encephalitis, Guillain-Barré syndrome and other problem. If we can just summarize that COVID-19 major reported neurological abilities on the central nervous system, we have these all gamuts of the disease that we have. If in the peripheral nervous system, we have other types of the acute myelitis, GBS and polyneuritis, other. And similarly, in the muscular system, there is atonia and paresis. And we just see some reports from the China that what they have found, that if you can take 100 cases, then neurological manifestation is only found in the 36% of the cases. This is the Chinese study. And what is the neurological manifestation they have got? There is a impaired consciousness, acute cerebrovascular accident, and that's why the COVID-19 also impacts over the central nervous system. This is the cytokine release syndrome, and if the cytokine is released, then they just manifest in a different parts. And again, this has been divided under the three headings, a stage 1, a stage 2, a stage 3. A stage 1 is the viral, and other part is the cytokine response. And this picture will just show that how the coronavirus acts over the different cells and they lead to the cytokine, and these cytokines, what are the clinical manifestation they are doing. And the other parts, sometimes this body also have the secondary infection. So primary infection is the COVID and they lead to the secondary infection. And what they have found, in again this is the Chinese study, 3.5% is the co-infection, 43% is secondary infection and 71% is the needs the antibiotics. And the recovery time they have seen that sometimes the 14 days in the asymptomatic, sometimes the it persists up to the 60 days. And most common persistent symptoms is the fatigue, dyspnea, joint pain and chest pain. Persistent severe illness, weeks to liver, pneumonia associated with the underlying immunosuppression has been reported. If we see the mortality rate and the morbidity rate, they are just shown in this graph. I have this covered already, and what have you found? Okay, 45% will need ongoing medical care, 4% will require the inpatient rehabilitation, and 1% will permanently require the acute care even after the recovery of the COVID-19. And lastly, the impact over the mental health, we have different types of the mental problem or multiple psychiatric problem. Just like we can see the healthcare workers, they have anxiety, depression, insomnia and traumatic distress. And how they are presented, it is the risk factors. Even in the healthcare, they have more problems than this. Then patients with the COVID-19, the patient already insomnia, impaired attention, anxiety, memory, other things. And then general population also have the same problem, anxiety, depression, distress and post-traumatic syndrome. And if you say that anxiety, about the 70% of the young people reported feeling anxious. And if you find in the American series, they have found already 41, 43 according to the time frame. And sometimes the patient might need out of one, they need doctors, they just have the binge drinking. Out of five, they need the sedatives. Out of seven, they need illicit drugs. And that's why even sometimes the early lockdown leads to the 37% of the psychological distress, 45% of the adults need adverse effects of mental health, and up to 7% felt this period was the most stressful in their career. This is the Zurich study they have sold. Again, the American have some guidelines and what they say that if you have the anxiety and depression, what are the different manifestations they are telling us? And how to tackle? These are the certain things that the relaxation, reading, BG, exercise, meditation, and certainly this Shiv Baba way of meditation and thinking or character building certainly will help us to tackle this problem. If we see the WHO guideline, they have given in the same way that we should do, that we should be VG, we should have a relaxation, all these things. And lastly, sometimes even the patient has suicide. In our Nepal, if we see, one of the reports say, no, there is no suicide. But now the case has been seen that more than 1,647 cases have the suicide during this COVID period. And same thing came from the Kathmandu, and in 2-3 months time, 415 people have already shown the suicide, and this is the police report, not the any medical research. So what we say in I don't want to cover this specific therapy because this is not under this one, but certainly we have the this one. Even the vaccine is coming, and prevention is the best that we know. Social distancing, wash your hands with the washing and face mask, and this is the at present the best thing to do to prevent this COVID-19. And these are the different stages the people are saying. But even then, we are doing everything. Some people are winning, some people are not. So you just see the mortality rate somewhere is going down, somewhere is increasing. Similarly, in different country, different types of mortality and mortality has been seen. If you see the individual country, we find all these. If you see our own country, Nepal, then you just see initially it is just like 1, 2, 3, 4 cases. But in July and August, it has just come up and it is now about 240-250 cases just now. So it is very difficult for us to cope with it. So how to win it? Win to act quickly, isolate yourself, isolate the people, educate them, and a massive amount of the testing, face masks, and continue practical social distancing, in my opinion, that will be the best way. So take home message, protect yourself, protect other, break the chain of COVID-19 transmission. How? Don't host party, don't go to the dinner, stay home, safe home, and that will be the ideal thing that we can do. Thank you very much. Shiv Baba bless us.
Namaskar, I am Dr. Vasudev Upadhyay, Ayurved Tatha Vaikalpik Chikitsa Vibhag, Swasthya Tatha Janasankhya Mantralaya, ma mahanirdeshak ko padma karyarat chu. यो कोरोना को महामारी को बेला में यो वेबिनार में मलाई पनि एउटा मेरो छोटो प्रस्तुति गर्न दिनु भएकोमा म आयोजक प्रति म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु. मैले आयुर्वेद र त्यसको COVID-19 को परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा भएको अनुभव र व्यवस्था के गरियो भन्ने विषयवस्तुलाई समेटेर केही प्रस्तुतिकरण गर्न गइरहेको छु. मेरो विषयको प्रस्तुतिकरण दुई चरणमा बाँडिएको हुनेछ. त्यसको पनि मैले संक्षिप्त रूपमा मैले जानकारी गराउन चाहन्छु. त्यसमा एक नम्बरमा आयुर्वेद भनेको के हो, आयुर्वेदको विषयको केही छोटकरीमा मैले यसको प्रस्तुति गर्नेछु. र दोस्रो चरणमा COVID-19 को परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा विभागले के एक्टिभिटी गर्यो र यसको रोल के हुन्छ भन्ने विषयमा केही प्रस्तुति गर्ने प्रयास गर्नेछु। म क्षमा माग्न चाहन्छु कि म नेपाली भाषामा बोलिरहेको छु, किनकि हामी केही श्रोतागणहरू हिन्दीमा पनि हुन सक्नु, हिन्दी बुझ्ने पनि हुन सक्नुहुनेछ, तर अलिकति नेपालीमा बोल्दाखेरि कम्फर्टेबल हुने भएकोले मैले नेपालीमा बोल्ने प्रयास गरेको छु। आयुर्वेद शब्द यो भारतवर्षमा अथवा नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, इन्डिया, सब कन्टिनेन्टमा यो अलिकति परिचित नै शब्द हो, तर तापनि जनमानसमा जडीबुटी मात्रै भनेर जुन आयुर्वेदलाई बुझाउने प्रयास गरिएको छ अथवा बुझिन्छ त्यसलाई पनि केही चिर्न पर्ने आवश्यकता हुन्छ। जस्तै आयुर्वेद शब्द आफैमा आयु र वेद दुईवटा शब्द मिलेर बनेको हुन्छ, त्यसको अर्थ साइन्स अफ लाइफ, भन्नुको अर्थ स्वस्थ जीवन जिउनको लागि के विषयवस्तुहरूको वर्णन गर्न सकिन्छ त्यो सबै आयुर्वेदभित्र परेको हुन्छ। तर तापनि हामीले चाहिँ जुन जडीबुटीलाई मात्रै प्राथमिकता दिने प्रयास गर्छौँ अथवा प्राथमिकता दिन्छौँ त्यो अपुग हुन्छ, तर जडीबुटी भनेको यसको चाहिँ एउटा अभिन्न अङ्ग हो भन्नेमा हामीले भन्न पनि सक्छौँ। अर्को कुरा, आयुर्वेद यस्तो विशाल क्षेत्र छ, त्यसले धेरै चिजलाई ओगट्ने प्रयास गरेको छ। त्यसको स्वास्थ्यको परिभाषामा स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम छ भन्ने कुरा उद्देश्य बोकेर आयुर्वेदको विकास भएको हो। भन्नुको अर्थ स्वस्थ व्यक्तिको स्वास्थ्य रक्षा गर्नको लागि हामीले नियमित दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या लगायतका जुन जीवनशैलीहरू अपनाउँछौँ त्यो स्वास्थ्यकर भयो भने हाम्रो शरीर स्वस्थ रहन्छ र भविष्यमा रोग लाग्न नदिने बाटोबाट हामीले चाहिँ अगाडि बढेको आयुर्वेद क्षेत्र हो। आयुर्वेदले अर्को पाटोमा कसरी बोल्छ भने यदि कुनै पनि कारणले मान्छे मनुष्य बिमार भयो, रोग लागिहाल्यो भने त्यसको उपचार जडीबुटीको माध्यमबाट हुन्छ अथवा स्वस्थ जीवनशैली मार्फत हुन्छ, के व्यवस्थापन गरेर उपचारात्मक पाटो पनि बोल्ने प्रयास गरिएको छ। त्यस कारणले आयुर्वेद दुईवटा अब्जेक्टिभ बोकेर हिँडेको छ मैले अघि भने जस्तै। त्यस्तै स्वास्थ्यको परिभाषा यति 2000 वर्ष पहिला सुश्रुत संहितामा यति स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि समदोष समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इन्द्रिय मन स्वास्थ्य इत्यादि विधीयते। भन्नुपर्छ जबसम्म व्यक्तिको फिजिकल मात्रै होइन कि आत्मा, मन र इन्द्रिय जबसम्म स्वस्थ हुन्छ, प्रसन्न हुन्छ, त्यसपछि मात्रै यसलाई चाहिँ स्वस्थ व्यक्तिको परिभाषाभित्र यसलाई हामीले राख्न सक्छौँ। अन्यथा आयुर्वेदले कहिल्यै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक फिट, फिजिकल्ली फिट भएकोलाई स्वस्थ को अन्तर्गत परिभाषा गरिएको छैन। त्यस कारणले के भन्न सकिन्छ भने हाम्रो जीवनमा, हाम्रो दिनचर्यामा स्वास्थ्यकर औषधिहरू, स्वास्थ्यकर आहार, स्वास्थ्यकर विहार र त्यस्तै मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धनको लागि जुन नियमित रूपमा योग अभ्यास, ध्यान, धारणा, प्राणायाम इत्यादिको कुरालाई पनि जुन वर्णन गरिएको छ त्यो सबै विषयवस्तुहरूलाई आयुर्वेदभित्र अङ्गीकृत गर्न सकिन्छ र आयुर्वेदको विषयभित्र समेट्न सकिन्छ। अब के एउटा भ्रम भन्ने गरेको छ भने आयुर्वेद औषधिले ढिलो काम गर्छ, आयुर्वेद औषधिले जरैबाट हटाउँछ, आयुर्वेद औषधिको साइड इफेक्ट हुँदैन भन्ने जुन एउटा जनमानसमा भ्रमहरू फैलिरहेको छ त्यो पनि अलिकति चिर्न पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। कुनै पनि औषधिको जथाभावी अनावश्यक रूपमा सेवन गर्यो भने साइड इफेक्ट अथवा त्यसको पार्श्व प्रभाव हुन सक्छ, त्यस कारणले सम्बन्धित विज्ञहरूको राय सल्लाह लिएर नै यसको चाहिँ सेवन गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर यो अलिकति आयुर्वेदको क्षेत्रमा अलिकति नकारात्मक, हाम्रो नेपालमा इभन भारतमा पनि एउटा नकारात्मक के भएको छ भने यसको साइड इफेक्ट हुँदैन भनेर जथाभावी यसको खरिद गरेर किनबेच गरेर खाने गर्ने गरिएको छ। त्यस कारणले स्वस्थ रहनको लागि आयुर्वेदमा जुन मेन दुईवटा अब्जेक्टिभमध्ये एउटा अब्जेक्टिभ के छ भने स्वस्थ रहनको लागि स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्य जीवनशैलीको पाटो जे छ आयुर्वेदका चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भावप्रकाश, वाग्भट, माधव निदान इत्यादि असंख्य ग्रन्थहरू जुन छन् प्राचीन कालदेखि हजारौँ वर्षदेखि प्रचलित आइरहेका छन्, त्यसको मूल उद्देश्य, त्यसको ब्युटी, त्यसको विशेषता भनेको स्वस्थ जीवनशैलीको हो। स्वस्थ जीवनशैली हामीले बिर्सिएर हामीले चाहिँ औषधितिर अथवा जडीबुटीलाहरूलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेको हुनाले अहिलेको यो भयावह अवस्था आइसकेको छ। अहिले यो कोभिड 19 आउनुभन्दा अगाडि पनि यो नसर्ने रोग एनसिडिज जसलाई भन्ने गरिन्थ्यो विश्व नै यसकोबाट त्रसित थियो अथवा यसको चुनौतीमा चुनौती खेपिरहेको थियो कि यो नसर्ने रोगहरू जस्तै डायबिटिज, क्यान्सर, हाइपरटेन्सन इत्यादि जुन डिजिजहरू छन् त्यसको त्यसले गर्दाखेरि मृत्यु हुनेको संख्या युरोपियन कन्ट्रीमा झन्डै 80% थियो भने नेपाल जस्तो देशमा पनि झन्डै 60-65% मृत्यु यो नसर्ने रोगबाट भइरहेको थियो। त्यो नसर्ने रोगको उत्पन्न हुनुको कारण के भन्दाखेरि हाम्रो यो स्वस्थकर जीवनशैली नअपनाउनु हो। अबको यो भिडभाडवाला यो फास्ट लाइफमा हामीले चाहिँ यो सबै कुरा स्वस्थ जीवनशैली हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामा हाम्रा ग्रन्थहरूमा भनेको कुरालाई बिर्सिरहेका छौँ। डब्ल्युएचओको स्वास्थ्यको डेफिनेसनमा पनि पछि आएर मानसिक र सामाजिक रूपमा स्वस्थ भयो भने मात्रै त्यो व्यक्ति स्वस्थ हो, फिजिकल फिट अथवा फिजिकल रूपमा स्वस्थ भएर पनि मात्रै हुँदैन। त्यस कारणले आयुर्वेदमा 3 पिलर्स अफ लाइफ जीवनका 3 दण्ड भनेर भनेको छ, शरीर, आत्मा र मन, यति 3 पिलरमा यो जोगिएको छ। आयुर्वेदले मनलाई कहिल्यै पनि अछुतो अलग राख्ने प्रयास गरेको छैन किनकि दुःखको अनुभव हुनु नै रोग हो। रोगको परिभाषा भित्र पीडा र दुःख दुईटा अलग विषय हो। पेन भनेको पीडा भयो, पेन भनेको हामीले फिजिकल पीडा मात्रै बुझ्छौँ भने जबकि आयुर्वेदले मानसिक रूपमा जुन पीडाको कुरा दुःखको कुरा गरेको छ त्यसलाई पनि अलिकति आधार मानेर आयुर्वेदले मन र शरीर दुवैलाई जोडेर उपचारतिर अथवा चाहिँ स्वस्थ रहनको लागि प्रसन्न आत्मा, इन्द्रिय र मनको कुरा राखेको छ। त्यस कारणले हामी प्रत्येक अब यो फास्ट लाइफमा प्रसन्न आत्मा र मनलाई राख्नु पनि एकदम जरुरी देखिन्छ। अहिले आयुर्वेदको ग्रन्थहरूको कुरा गर्ने हो भने आयुर्वेदमा झन्डै रोगको कारणमा निज र आगन्तुक भनेर दुई किसिमका रोगको कुरा गरिएको छ। त्यो दुई किसिमको रोगमा निज भनेको पर्सनल आफ्नो भित्र शरीरका दोष धातु मलको विकृतिले गर्दाखेरि छ भने आगन्तुक रोग छ जुन बाहिरबाट जस्तै अभिघात भयो अथवा अहिलेको समयमा भाइरस र ब्याक्टेरियाले जुन इन्फेक्सन हुन्छ तिनीहरूले पनि हाम्रो शरीरलाई रोग गराउन सक्छ। यो रोगको गराउनुको अर्थ फेरि मनलाई पनि यसले चाहिँ जब दुःख दिन्छ त्यसपछि मनुष्य रोगी हुन्छ। त्यस कारणले सकभर शारीरिक र मानसिक रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ निराकरण गर्ने अथवा शमन गर्नको लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ जस्तो आयुर्वेदको भाषाले बोलेको छ। त्यस कारणले आयुर्वेदको पहिलो पाटोमा मैले के भन्न मात्रै खोजेको हो भने आयुर्वेद भन्नाले जडीबुटी मात्रै होइन, यो आयुर्वेदका ग्रन्थहरूमा 70-80% भार जीवनशैलीको कुरा, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, आत्मा, मन, सदाचार, सद्वृत्त इत्यादिको कुरा गरिएको छ। अब आएर नैतिक शिक्षामा हामीलाई अबको जमानामा हामी नैतिक शिक्षा, आदर, सम्मान बेसी भौतिकवादीतिर बढी राखिरहेका छौँ तर आयुर्वेदले सद्वृत्तको कुरा गरेको छ, सदाचारको कुरा गरेको छ। त्यस कारणले यो शारीरिक र मानसिक दुवै रूपमा हामी स्वस्थ भइयो भने हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यस कारणले मैले यो सुरुमा भूमिका के बाँध्न खोजेको भने आयुर्वेदमा स्वस्थ जीवनशैलीको लागि भार दिएको छ। त्यो स्वस्थ जीवनशैली नसर्ने रोग र हाल आएर जुन भाइरल इन्फेक्सन, कोरोना भाइरसको इन्फेक्सन भएको छ त्यो दुवै पाटालाई यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ भनेर मैले आयुर्वेदको केही भूमिका अगाडि बाँध्ने प्रयास गरेँ। अब क्रमशः जाँदाखेरि अघि मैले भने जस्तै नसर्ने रोगमा त स्वस्थकर जीवनशैली अपनायो भने यो नसर्ने रोगहरूको भयावह अवस्था हामीले रोक्न सक्छौँ भनेर हामीले लागिरहेको अवस्थामा सँगसँगै अब आएर यो जुन कोरोना भाइरस नौलो किसिमको भाइरस विश्वमा देखा पर्यो यसले गर्दाखेरि विभिन्न देशहरू भनौँ विश्व नै यसबाट चाहिँ आक्रान्त भएको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। यसमा नेपाल, भारत लगायत हामी हाम्रो मुलुकहरू, एसियन मुलुकहरू पनि अछुतो रहेको अवस्था छैन। यसले यो कोरोना भाइरसले विश्वको महाशक्ति रूपमा चिनिने देशहरूलाई त यसले चाहिँ असर गरेको छ भने हामी नेपाल जस्तो भर्खरै उदाउँदो अवस्थामा हामीले चाहिँ नयाँ भ्याक्सिनहरू आइसकेको छैन, यो चाहिँ कुनै पनि किसिमको औषधि बनिसकेको अवस्था छैन, त्यस कारणले अब के गर्ने? अब लकडाउन मात्र यसको विकल्प हो होइन, लकडाउन कहिलेसम्म भएको छ, यो भाइरस त देखिन सक्छ। त्यस कारणले नेपाल सरकारले र भनौँ विश्वले नै एउटा जुन निर्देशिका जारी गरेको छ त्यसलाई चाहिँ पालना गर्नुपर्ने आवश्यक छ। तर अहिलेको अवस्थामा कोरोना भाइरसको एउटा हामी व्यक्तिहरू प्रत्येक नागरिकहरूप्रति एउटा मानसिक रूपमा यस्तो भय बसिसकेको छ जसले गर्दाखेरि मानिस त्रसित भइरहेका छौँ र यो भाइरसको डरले भन्दा भ्रमले अथवा मनको डरले मान्छेलाई बढी आक्रान्त गरिरहेको अवस्था छ। नेपालमा पनि सुसाइड केसहरू, डिप्रेसनका केसहरू, एङ्जाइटीका केसहरू बढिरहेको अवस्था छ। किन? कि मान्छे यसको प्रति अलिकति सचेत छैनन् कि त्रसित अवस्थामा आइसकेको छ। त्यस कारणले मैले के भन्न चाहन्छु भने अबको समयमा त्रसित होइन सचेत हुनुपर्ने आवश्यक छ। सचेत इन द सेन्स अबको यो समय जबसम्म यसको लागि भ्याक्सिन अचूक रूपमा भ्याक्सिन अथवा अचूक रूपमा औषधि बन्दैन तबसम्म विश्वले नै के भन्छ भने यसबाट सचेत बसौँ। भन्नुको अर्थ हामीलाई भाइरस सकभर इन्फेक्सन एकबाट अर्कामा नसर्नको लागि के विकल्पहरू छन् त्यसको लागि निर्देशिकाहरू नेपालमा पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरिसकेको छ। जस्तै यो मास्कको कुरा, मास्क लगाउने भन्ने कुरा छ, सेनिटाइजेसनको कुरा गरेको छ, त्यस्तै सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा गरिरहेको छ। तर सोसियल डिस्टेन्सिङको कुराले एउटा कुरा के पनि अलिकति नकारात्मक असर देखाउन खोज्यो भने सोसियल डिस्टेन्सिङको भन्दा फिजिकल डिस्टेन्सिङ भन्ने शब्द बढी उपयुक्त मैले मान्छु। किनभने सामाजिक रूपमा उसलाई बहिष्कार गर्न खोज्न खोजेको हामीले होइन, हामीले यो एकबाट अर्कामा दुई मिटरको दूरीको जुन कुरा गरिएको छ त्यसको पालना गरेर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले जोगिनुपर्छ भन्ने कुरा विश्वले नै बोलेको छ। यसलाई आयुर्वेदको चिकित्सा पद्धतिले पनि यसलाई नकार्दैन, तर सँगसँगै पब्लिक हेल्थले के पनि भन्छ भने जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइ के छ भने सँगसँगै स्वास्थ्यकर खानपिन गर्नुपर्छ, जीवनशैली आइहाल्यो, हामीलाई चाहिने विभिन्न प्रोटिनहरूको अत्याधिक मात्रामा सेवन गर्नुपर्छ, सँगसँगै झुलिलो चिजहरूको बढी मात्रामा सेवन गर्नुपर्छ। यो भन्नुको अर्थ हाम्रो शरीरलाई यति मजबुत बनाउनुपर्छ कि जसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा यदि भाइरस प्रवेश भइसक्यो भने अगाडिको निर्देशिकाको अथवा सचेतनाको पालना गर्दा गर्दै पनि भाइरसको इन्फेक्सन भइसकेपछि भने पनि हाम्रो शरीरका भित्रका अङ्ग अवयवहरूलाई कमसे कम नोक्सान गरोस् जसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई भेन्टिलेटरमा अथवा हामीलाई भेन्टिलेटर अथवा चाहिँ आइसियूमा जान नपर्ने अवस्था आओस् भन्नेको लागि शरीरलाई मजबुत बनाउनको लागि यो स्वास्थ्यकर जीवनशैली खानपिनको कुराको पनि जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले कुरा गरेका छन्। स्वास्थ्यकर खानपिनमा हामी सबैलाई जानकारी छ, हाम्रो सभ्यता हाम्रो खानपिन स्वास्थ्यकर अन्तर्गत पर्दछ, किनकि हामीले जङ्क फुड त्यति हाम्रो सभ्यतामा जङ्क फुडको कुरा गरेको छैन, यो पछिको क्रममा आएर हामीले चाहिँ खाजामा जङ्क फुड प्याकेटको जङ्क फुडहरूले खाने गर्ने गरेका छौँ। त्यस कारणले हामीले सर्वप्रथम आयुर्वेदको तथा वैकल्पिक चिकित्सा मार्फत हामीले कोरोना कोभिड-19 प्रिभेन्सनको लागि अथवा यसको म्यानेजमेन्टको लागि के गरियो नेपालमा भन्दाखेरि सर्वप्रथम त हामीले यही विषयवस्तुलाई टेकेर सर्वसाधारणलाई नेपाल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मार्फत हामीले सर्वसाधारणलाई सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको लागि जानकारी गराइयो। त्यसमा सोसियल डिस्टेन्सिङ अघि भनेका कुरा निर्देशिका बमोजिमको मास्क, सोसियल डिस्टेन्सिङ लगायतका कुरा, सेनिटाइजेसनको कुरा सँगसँगै हामीले के पनि भन्ने गरियो भने केही खानपिनको सँगसँगै डिकक्सनहरू पनि खान सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ एउटा केही काढाहरू आयुर्वेदका ग्रन्थहरूमा पहिल्यैदेखि उल्लेख गरिएका जसले गर्दाखेरि शरीरमा विभिन्न रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सक्ने डिकक्सनहरूलाई हामीले सेवन गर्न सक्छौँ भनेर हामीले एउटा जानकारी सचेतनामूलक गराइयो। सँगसँगै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मार्फत आयुर्वेद विभागले एउटा गाइडलाइन प्रोटोकल जारी गर्यो यसको रोकथामको लागि देशभरिका आयुर्वेदका स्वास्थ्य संस्थाहरू मार्फत र सम्भव भयो भने आधुनिक स्वास्थ्य संस्थाहरू मार्फत पनि यो प्रोटोकल अथवा यो गाइडलाइनको आधारमा हामीले चाहिँ तत्कालीन अवस्था आजभन्दा 5 महिना अगाडिकै कुरा गर्दैछु मैले, त्यो बेलामा नेपालमा यस्तो कोरोनाको भयावह अवस्था आइसकेको थिएन। त्यस कारणले तत्कालीन अवस्थामा जुन बाहिरबाट कर्मचारी व्यक्तिहरू नेपालमा आउँथे अथवा नेपालका व्यक्तिहरू पनि जुन क्वारेन्टाइनमा बस्ने थियो उहाँहरूलाई आयुर्वेदका स्वास्थ्य संस्थाहरू मार्फत सचेतनाको सँगसँगै योग र प्राणायाम गराइयो र यो गाइडलाइनमा उल्लेख गरेका हाम्रो भान्सामा पाउने जडीबुटीहरू हाम्रो करेसा बारीमा पाउने जडीबुटीहरू जसको उल्लेख आयुर्वेदका ग्रन्थहरूमा प्राचीन ग्रन्थहरूमा लेखिएको थियो र रुगा खोकी लगायत जुन रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा प्रयोग हुने जुन औषधिहरू थियो र केही वर्ष अगाडिका विभिन्न भाइरसहरूमा एक्सपेरिमेन्ट्स गर्दाखेरि एन्टिभाइरल प्रपर्टीहरू पनि देखिएको थियो तिनीहरूको नियमित रूपमा सेवन गराउनको लागि हामीले प्रयास गरियो र झन्डै आयुर्वेद तथा आयुर्वेदका स्वास्थ्य संस्थाहरू मार्फत देशभरिमा झन्डै 25,000 जति नागरिकहरूमा क्वारेन्टाइनमा बसेका यो आइसोलेसन अथवा पोजिटिभ केसको कुरा मैले गरेन तर क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ प्राणायाम बिहानमा एउटा सिड्युल बनाएर बिहानमा प्राणायाम र योग प्राणायाम यो मामलामा मैले भन्न खोजेको प्राणायाम र ध्यानको यस्तो महत्त्व रहेछ कि मान्छे प्रफुल्ल भयो भने त्यो कोरोना भाइरसको इफेक्ट छिटो रिकभर हुनु पनि अहिले अनुसन्धानले देखा पारेको छ त्यस कारणले हामीले त्यो सिड्युल बमोजिम प्राणायाम र योगहरू बिहानमा गराउने र सँगसँगै हाम्रो करेसा बारीमा पाउने र हाम्रो यहाँ देशमा पाउने गुर्जो बेसार अश्वगन्धा लगायतका जुन जडीबुटीहरू थिए यष्टिमधु यिनीहरूको डिकोक्सन अथवा काढा बनाएर प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई घर घरमा खानको लागि पनि हामीले प्रोत्साहित गरियो र सँगसँगै भान्सामा पाउने दालचिनी सुठो मरिच पिप्ला बेसार र तुलसीका पात यिनीहरूलाई पकाएर हामीले चाहिँ बिहानमा प्रत्येक नागरिकले बिहानमा यसको सेवन गर्यो भने यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ शरीरभित्र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सक्छौँ भन्ने हामीले सूचना प्रवाह गरियो र प्रत्येकलाई खानको लागि यो सेवन गर्नको लागि हामीले प्रोत्साहित पनि गरियो र हाम्रो स्वास्थ्य संस्थामा आउने व्यक्तिहरूलाई त यो खानै पर्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यहाँबाट निशुल्क रूपमा वितरण पनि गरियो अब यो मानेमा पनि छ कि यो टाइम टेस्ट कतिपय कुरामा एभिडेन्स छैन भन्ने पनि कुरा आउन खोजे तर यो टाइम टेस्टेड हो प्रत्येक हामी नेपाल भारत श्रीलङ्का लगायत यो इन्डियन सब कन्टिनेन्टका व्यक्तिहरूले हामीले रुगा खोकी लाग्दा बित्तिकै तुरुन्तै हामीले औषधि नखाएर हामीले यिनी गाउँघरमा पाइने यिनी जडीबुटीहरूबाट काढा खाने पनि गरिरहेका छौँ र यसका विभिन्न औषधिहरूको अनुसन्धान पनि भइसकेको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ यसरी नियमित रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सन्देश प्रवाह गरेर हामीले चाहिँ आयुर्वेदका स्वास्थ्य संस्थाहरू मार्फत यसलाई सेवा प्रदान गरियो सुरुमा पछि गएर जसरी यसरी क्रमशः यसको प्रभाव अथवा कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गयो र यो लकडाउन खुकुलो भइसकेपछि हामी सोसियल फिजिकल डिस्टेन्सिङको यो अलिकति महत्त्व नबुझेर मास्कहरू नलगाएर अलिकति अहिलेको अवस्था 30,000-35,000 जति हाम्रो कोभिड इन्फेक्टेड पेसेन्ट्सहरू भइसकेको अवस्थामा कतिपय ठाउँमा आयुर्वेदका स्वास्थ्य संस्थामा पनि कोभिड पोजिटिभ पेसेन्ट्सहरू कोरोना पोजिटिभ पेसेन्ट्सहरूलाई आइसोलेटेड गरेर राखियो त्यसमा हाम्रो किर्तिपुर स्थित आयुर्वेद अस्पताल रिसर्च सेन्टर जुन छ त्यसमा भएकालाई हामीले केही यहाँ अघि हामीले भनेका जस्तै आयुर्वेदका औषधि सँगसँगै प्राणायाम र योगको माध्यमबाट केही प्रारम्भिक चरणको हामीले इन्फर्मल्ली नै हामीले यसको यसो डेटा केलाउँदाखेरि 90-95% कोरोना पोजिटिभ आएर भर्ना भएका व्यक्तिहरूको केही लक्षण पनि देखा परेका सिम्प्टोमेटिक पनि भएका व्यक्तिहरूको विदिन 7-9 days हामीले त्यसलाई नेगेटिभ भएर हामीले चाहिँ डिस्चार्ज गरेर पठाइसकेको अवस्था भएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ आशातीत परिणाममा हामीले देख्यौँ त्यो देखिसकेपछि हामीले स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद मार्फत एभिडेन्स जेनेरेट गरौँ एभिडेन्स इन द सेन्स हामीले यो शास्त्रमा प्रयोग भइरहेका चिजहरूलाई अलिकति अनुसन्धानको वैज्ञानिक बाटोबाट पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर एनएचआरसी मार्फत हामी यसलाई चाहिँ अनुसन्धानकोमा पनि लागिरहेका छौँ यसमा यस्टी डिकोक्सन भनेर एउटा डिकोक्सन हामीले तयार गरेका छौँ त्यसको क्लिनिकल ट्रायलको रूपमा हामीले 28 दिनसम्म त्यसलाई खुवाउने माइल्ड र मोडरेट अवस्थामा भएका पेसेन्ट्सहरूलाई खुवाउने भनेर हामीले एउटा प्रपोजल पेस गरेका छौँ त्यो इथिकल एप्रुभल पनि भइसकेको छ एनएचआरसी मार्फत यसको हामीले चाहिँ विभिन्न सेन्टरहरू मार्फत हामीले यसको ट्रायल गर्छौँ त्यसको 2-3 मुख्य उद्देश्य राखिएको छ त्यसमा एक त कति छिटो रिकभर भएर नेगेटिभ हुन्छ एउटा कुरा हामीले त्यो हेर्छौँ सँगसँगै माइल्ड अथवा मोडरेट सिम्टमहरू देखिएको केस छ भने तिनीहरूलाई सिभियर अवस्थामा जान दिनबाट रोक्न सक्नको लागि पनि यसले मद्दत गर्यो भने हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धिमूलक हुनेछ भन्ने कुरा, यो दुईवटा कुरा हामीले हेर्छौँ। र त्यसपछि त्यो डिस्चार्ज भइसकेर बिरामी घर गइसकेपछि पनि 28 दिनसम्म निरन्तर यो औषधिको सेवन गराएर हामीले यसलाई यसको शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अथवा एन्टिबडीहरू कसरी डेभलप भयो के भयो भन्ने कुराको पाटोबाट पनि हामीले यसलाई हेर्ने प्रयास गर्ने गर्छौँ र यसको आधारमा हामीले अगाडि अनुसन्धानको लागि पनि अगाडि बढ्ने प्रयासमा छौँ। त्यस कारणले यो हाम्रा आयुर्वेदका स्वास्थ्य संस्थाहरू मार्फत त्यहाँ दुई किसिमले एउटा सर्भिस हुँदो रहेछ। मैले यस्तो अनुभव गर्दाखेरि हामीले जहाँ आयुर्वेदका स्वास्थ्य संस्थामा पोजिटिभ पेसेन्ट्सहरू अथवा पोजिटिभ व्यक्तिहरू आउँदाखेरि हामीले उहाँहरूलाई आयुर्वेदको औषधि र सँगसँगै खानपिनको कुरा, त्यहाँ खानपिनको डाइट बना चार्ट बनाएर हामीले खानपिनको कुरा गराइयो। त्यसपछि त्यसमा विभिन्न बिहान र बेलुकी योग र प्राणायामको माध्यमबाट गराइयो। प्राणायामले यति फाइदा गर्दो रहेछ कि अक्सिजनलाई म्याक्सिमम इन्हेल गराउनको लागि मद्दत गर्दो रहेछ र हाम्रो लङ्सको क्यापेसिटी बढाउँदो रहेछ। त्यो साइन्टिफिकली त्यो पनि प्रुभ भइसकेको रहन। त्यस कारणले मन मानसिक रूपमा पनि कोरोना पोजिटिभ भइसकेपछि पनि मानसिक रूपमा उसलाई यदि सबल बनाउन सकियो भने हामीले धेरै रोगलाई जित्न सक्दा रहन्छौँ भन्ने रहेछौँ भन्ने कुरा पनि यसले प्रमाणित गर्छ। त्यस्तै हाम्रो आयुर्वेदका स्वास्थ्य संस्था सँगसँगै नेपालको रजहर स्थित प्राकृतिक चिकित्सालयमा पनि हामीले योबाट प्राकृतिक चिकित्सा लगायत यो प्राणायाम ध्यान र आयुर्वेद औषधिहरू सँगसँगै हामीले ट्रायल गर्दाखेरि त्यहाँ पनि एकदम आशातीत परिणाम र त्यहाँका जो डिस्चार्ज भएर जाने व्यक्तिहरूको हामीले रिभ्यू लिँदाखेरि उहाँहरूको प्रतिक्रिया लिँदाखेरि यति सन्तुष्ट मानियो कि उहाँहरूको भनाइअनुसार हामीसँगै भएको चिजहरूलाई हामीले अन्त खोज्न गइरहेका छौँ। यस्तो भयावह अवस्थामा हामीले मोडर्न टेक्नोलोजीको सँगसँगै मोडर्न औषधिको सँगसँगै पनि हामीले आयुर्वेदका योगका ध्यानका विभिन्न पाटोहरूबाट उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गरियो भने हामीले यो भयावह या पेन्डेमिक रूपमा देखा परेको कोरोना भाइरसलाई जित्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागको महानिर्देशकको नाताले मैले के पनि भन्न चाहन्छु भने यो डरले होइन, यसलाई सचेत र सबल हुँदै हामीले चाहिँ मनलाई बलियो बनाउन सक्यो भने यसलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पा देखाउँछ। यस्तै ब्रह्मर्षि योग केन्द्रहरू मार्फतबाट पनि साधना केन्द्रहरू मार्फतको पनि यसमा रोल हुनसक्छ किनकि उहाँहरूको राजयोग जुन छ राजयोगको बाटोबाट पनि यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ मानसिक बलको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण पाटो देखाउँछ किनकि जबसम्म मन सन्तुष्ट हुँदैन मन स्वस्थ हुँदैन तबसम्म रोग चाहिँ सन्तुष्ट अथवा चाहिँ ठिक भएको मान्नु मिल्दैन भन्ने हाम्रो पाटो भएको हुनाले हामीले शारीरिक र मानसिक दुवै पक्षबाट हामीले उपचार गर्ने प्रयास गरेका छौँ र यसको आशातीत परिणाम नेपालमा देखा परेको छ। भारतमा पनि आयुष मन्त्रालयले यही क्याटेगोरी अनुसार यही विषयवस्तुलाई समेटेर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। हामी उहाँहरूसँग पनि सम्पर्कमा छौँ र उहाँहरूको आयुर्वेद भनेको नेपालको अलग र भारतको अलग कतै हुँदैन। त्यस कारणले आयुर्वेद र योगको माध्यमबाट हामीले यसलाई जित्न सक्छौँ भन्ने आशा राखेका छौँ र नेपालमा पनि हामी यही बाटोबाट अगाडि बढ्ने प्रयास गरेका छौँ। सबैलाई स्वस्थ रहन दीर्घायु रहन हाम्रो परमात्माले आशीर्वाद प्रदान गरून् भन्दै म अहिले मेरो छोटो प्रस्तुति मैले यहीँ टुङ्गाउने प्रयास गर्छु। यदि यो विषयमा कसैलाई जिज्ञासा छ नेपालमा के कसरी भयो भन्ने कुरा जिज्ञासा छ भने प्रश्नोत्तरको जुन सेसन छ त्यसमा म त्यसमा यसको अलिकति क्लेरिफाई गर्ने अथवा यसलाई चाहिँ के दिन सकेँ भने म आफूलाई धन्य सम्झनेछु र मलाई मेरो कुरा यहाँ राख्न दिनुभयो त्यस कारण आयोजकप्रति पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।